ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ರೀರಾಧೆ. ಸೊ ಗಿರಿಜಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಜೀ ಔರ್ ಶಕುಂತಲಾ ದೇವಿ ಕಾ ಮೈ ಬಹುತ್ ಆಭಾರಿ ಹೂ, ಬಹುತ್ ಕೃತಜ್ಞ ಹೂ. ಯೇ ಜೊ ಮಾಲಾ ಹೈ ನಾ ಜೊ ಇನ್ಹೋನೆ ಪಹನಾಯಿ ಹೈ, ಯೇ ರಾಧಾ ರಾಣಿ ಸವೇರೆ ಶೃಂಗಾರ ಮೇ ಪಹನ್ತಿ ಔರ್ ರಾತ್ ಭರ್ ಪಹನ್ತಿ, ರಾತ್ ತಕ್ ಪಹನ್ ಕೆ ರಖ್ತಿ ಬರ್ಸಾನೆ ಮೇ. ಔರ್ ಇಸ್ಮೇ ಅಭಿ ಜೊ ಲಗಾ ಹೈ ವೋ ಶೀತಕಾಲೀನ ಅಲಂಕಾರ ಹೈ. ಜಬ್ ಬಸಂತ ಪಂಚಮಿ ಆಗಿ ತೊ ಉಸ್ಕೆ ಬಾದ್ ಮೇ ಇಸ್ಮೇ ಗುಲಾಬ್ ಕಾ ಫೂಲ್ ಲಗೇಗಾ, ಕ್ಯೂಂಕಿ ಜಬಿ ಅಭಿ ಕಲ್ ಏಕ್ ಸುಂದರ್ ತಿಥಿ ಥಿ ಜೊ ಮೈ ಬತಾನಾ ಭೂಲ್ ಗಯಾ ಆಪ್ಕೋ. ಕಲ್ ಕಿ ತಿಥಿ ಕಾ ನಾಮ ಥಾ ಓಡನ್ ಷಷ್ಠಿ, ಯಾನಿ ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಮಹಿನೆ ಕಿ ಶುದ್ಧ ಪಕ್ಷ ಕಿ ಷಷ್ಠಿ, ಷಟ್ವಿ ತಿಥಿ. ಉಸ್ ದಿನ ಸಬ್ ಜಗ ಠಾಕುರ್ ಜೀ ಕೋ ಗರಮ್ ಕಪಡೆ ಪಹನ್ನಾ ಶುರು ಕರ್ ದೇತೆ ಹೈ, ಠಂಡ್ ಕಿ ಶುರುವಾತ್ ಹೋತಿ ಹೈ. ಜಬ್ ಠಂಡ್ ಕಿ ಶುರುವಾತ್ ಹೋತಿ ಹೈ ತೋ ಬ್ರಜ್ ಮೇ ಫೂಲೋ ಕಾ ಶೃಂಗಾರ ನಹೀ ಹೋತಾ ಹೈ, ಕ್ಯೂಂಕಿ ಫೂಲ್ ಠಂಡೆ ಹೋತೆ ನಾ, ಬಹುತ್ ಠಂಡ್ ಲಗ್ತಿ ಹೈ. ಆಪ್ ಭೀ ಅಗರ್ ಠಂಡ್ ಮೇ ಗುಲಾಬ್ ಕಿ ಮಾಲಾ ಪಹನೆಗೆ ನಾ ತೋ ಆಪ್ಕೋ ಠಂಡ್ ಲಗೇಗಿ. ತೋ ಠಾಕುರ್ ಜೀ ಕೋ ಶೃಂಗಾರ ನಹೀ ಫೂಲೋ ಕಾ ಹೋತಾ ಹೈ, ಮೋತಿಯೋ ಕಿ ಮಾಲಾ ಔರ್ ಬಹುತ್ ಪ್ರಕಾರ ಕಿ ರತ್ನ ವಗೈರಾ ವಗೈರಾ ಪಹನ್ತೆ ಹೈ. ತೋ ಉಸ್ಮೇ ಜೋ ಯೇ ಮೇನ್ ಮಾಲಾ ಹೋತಿ ಹೈ ವೋ ಗುಲಾಬ್ ಕೆ ಜಗಹ ಪರ್ ಯೇ ಜೋ ಅಲಂಕಾರ ಹೈ ಉಸ್ಕೆ ಬಾರಾ ಬನ್ತಿ ಹೈ. ಇಸ್ಕೆ ಪೀಛೆ ಅಭಿ ತೋ ಸಫೇದ್ ಹೈ, ಲೇಕಿನ್ ಇಸ್ಕೆ ಪೀಛೆ ಹರೇ ರಂಗ್ ಕೆ ಪತ್ತೋ ಕಾ ಶೃಂಗಾರ ಹೋತಾ ಹೈ. ತೋ ಬಾಕಿ ಸಬ್ ಮಾಲಾ ಜೊ ಆಪ್ ದೇತೆ ಹೈ ಚಡಾನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ತೋ ವೋ ಉದರ್ ಚೌಕಟ್ ಪೇ ಹಿ ಚಡಾತೆ ಹೈ ಔರ್ ಆಪ್ಕೋ ವಾಪಸ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೆ ರೂಪ ಮೇ ದೇತೆ ಹೈ. ಯೇ ಜೊ ಹೈ ರಾಧಾ ರಾಣಿ ದಿನ ಭರ್ ಪಹನ್ತಿ ಹೈ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇಸ್ಲಿಯೆ ವಿಶೇಷ ಕೃಪಾ ಹೈ ಆಪ್ ಲೋಗೋ ಕಿ, ಬಹುತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಹೈ. ಜೈಸೆ ಧಾಮ ವಾಸಿ ಜೊ ಹೈ ಉನ್ಕೋ ಹೃದಯ ಮೇ ರಾಧಾ ಔರ್ ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ ಬಸೆ ಹೈ ಔರ್ ವೋ ಸಬ್ ಪರ್ ಕೃಪಾ ಕರ್ತೆ ಹೈ. ಬರ್ಸಾನೆ ಭೀ ಭೇಜ ಕಥಾ ಕರ್ತಾ ಹೂ ತೋ ಮೈಯಾ ಆಕೆ ಕುಛ ನಾ ಕುಛ ಪಹನಾ ದೇತಿ. ರಾಧೆ ರಾಧೆ, ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀ ರಾಧೆ ಶ್ಯಾಮ್, ಜಯ ಹೋ. ಬಹುತ್ ಬಹುತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಆಪ್ಕಾ, ಬಹುತ್ ಧನ್ಯವಾದ. ಆಶಾ ಹೈ ಕಿ ಆಪ್ ಸಬ್ಕೆ ಸಂತುಷ್ಟಿ ಪೂರ್ಣ ತಕ್ ಆಜ್ ಕಿ ಕಥಾ ಮೇ ಕರ್ ಪಾಉ. ಥೋಡಿ ದೇರ್ ಇಸ್ಕೆ ಲಿ ಹುಯಿ ಕ್ಯೂಂಕಿ ಕುಛ ವಿಶೇಷ ಮೇರೇ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಮೇ ಮುಜೆ ಪಡ್ನಾ ಥಾ, ವೋ ಬಿನಾ ಪಡೆ ಆಪ್ ಆಯೇ ತೋ ಆಪ್ಕೋ ಉತ್ನಾ ಲಾಭ ನಹೀ ಹೋತಾ, ಇಸ್ಲಿಯೇ ಮೈನೆ ಥೋಡಿ ದೇರ್ ಕರ್ದಿ ಕ್ಷಮಾ ಚಾಹತಾ ಹೂ. ತೋ ಹಮ್ ಅಭಿ ರಾಮಾಯಣ ಕಿ ಕಥಾ ಆಗೇ ಬಡಾತೆ ಹೈ. ಜಿಸ್ ದಿನ ಹಮ್ನೆ ಉಸ್ ದಿನ ರಾಮಾಯಣ ಕಿ ಕಥಾ ಕೀ ಥಿ ತೋ ವೋ ಕಹಾಂ ತಕ್ ಆಕೆ ರುಕಿ ಥಿ, ಕಿಸ್ಕೋ ಯಾದ್ ಹೈ ಕ್ಯಾ ಬೋಲೋ. ರಾಮ್ ಸೀತಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಉರ್ಮಿಲಾ ಭರತ್ ಮಾಂಡವಿ ಶತ್ರುಘ್ನ ಶ್ರುತಕೀರ್ತಿ ಕಾ ವಿವಾಹ ಹುವಾ ಹೈ ನಾ. ತೋ ಯಹಾಂ ತಕ್ ಹಮಾರಿ ಕಥಾ ಹುಯಿ ಥಿ. ಫಿರ್ ಹಮ್ನೆ ಆಪ್ಕೋ ಗೌತಮ್ ಮುನಿ ಕಿ ಕಥಾ ಭೀ ಬತಾಯಿ ಥಿ. ಗೌತಮ್ ಆಶ್ರಮ ಮೇ ಕೈಸೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮುನಿ ಪ್ರಭು ರಾಮಚಂದ್ರ ಕೋ ಲೇ ಜಾ ರಹೇ ಹೈ, ರಸ್ತಾ ಮೇ ವೋ ಗೌತಮ್ ಮುನಿ ಕೆ ಆಶ್ರಮ ಮೇ ಜಾತೆ ಹೈ ಔರ್ ವೋ ಅಹಿಲ್ಯಾ ಕಾ ಉದ್ಧಾರ ಹೋತಾ ಹೈ, ವೋ ಕಥಾ ಮೈನೆ ಆಪ್ಕೋ ಬತಾಯಿ. ಅಭಿ ಐಸಾ ಹುವಾ ಕಿ ಪ್ರಭು ರಾಮಚಂದ್ರ ವಿವಾಹ ಕರ್ಕೆ ಆಯೇ, ವೋ ತೋ ಯುವರಾಜ್ ಥೆ. ಔರ್ ವಿವಾಹ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಆನೆ ಕೆ ಬಾದ್ ಮೇ ಬಹುತ್ ಸಮಯ ಬೀತಾ. ಯುವರಾಜ್ ಕೆ ರೂಪ ಮೇ, ಯುವರಾಜ್ ಪತ್ನಿ ಕೆ ರೂಪ ಮೇ ಸೀತಾ ದೇವಿ ರಹಿ. ಔರ್ ಐಸಾ ಲಿಖಾ ಹೈ ರಾಮಾಯಣ ಮೇ ಕಿ ಸೀತಾ ದೇವಿ ಅಪ್ನೆ ತೀನ್ ಸಾಸು ಮಾ ಔರ್ ಬಹುತ್ ಸಾರೇ ಲೋಕ ಥೆ ವಹಾಂ ಪರ್ ಸನ್ಮಾನನೀಯ, ಉನ್ಕಿ ಸೇವಾ ಮೇ ಬಡಿ ವ್ಯಸ್ತ ರಹತಿ ಥಿ ಔರ್ ಪ್ರಭು ಭೀ ಅಪ್ನೆ ಕಾರ್ಯ ಮೇ ವ್ಯಸ್ತ ರಹತೆ ಥೆ. ತೋ ಸೀತಾ ಔರ್ ರಾಮ ಕಾ ಜೋ ಸಮಯ ಥಾ ಏಕ್ ದೂಸರೆ ಕಾ ವೋ ಬಹುತ್ ಕಮ್ ಥಾ. ಇಸ್ಲಿಯೇ ಕಹತೆ ಹೈ ಕಿ ಬಾರ್ ಬಾರ್ ಲಿಖಾ ಹೈ ರಾಮಾಯಣ ಮೇ ಜಿತ್ನಾ ಏಕಾಂತ ಉನ್ಕೋ ಚಿತ್ರಕೂಟ ಮೇ ಮಿಲಾ वो कहीं नहीं मिला। तो फिर सब लोग अपना अपना मोबाइल बंद कर दीजिए। तो युधाजीत कैकेय के भाई का नाम है और कैकेय देश में उनका निवास था जहाँ से कैकेयी आई थी। तो मामा जी का मन करता है कि अरे दोनों हमारे भांजों की शादी हुई, बहू लेकर आए मिथिला से, तो उन्हें बुलाना चाहिए घर पे, थोड़ा सा आदरातिथ्य होगा उनका प्रेम से। तो कैकेयी को संदेश भेजा तो कैकेयी ने भरत और शत्रुघ्न को दोनों को भेज दिया ननिहाल। तो उस समय पता नहीं अचानक मुझे वो घटना याद नहीं अभी आ रही है, लेकिन वो ऐसा कुछ हुआ कि दशरथ महाराज को लगा कि अभी तुरंत ही राम को राजा बनाना चाहिए, और वो भी वृद्ध हो रहे थे और वैसे भी विवाह हो चुका था और राम परिपक्व हो चुके थे। उनका व्यवहार इतना श्रेष्ठ था कि न केवल परिवार में सब लोग उनको योग्य मानते थे, लेकिन पूरी अयोध्या की जनता जो थी वो उनके लिए ये प्रतीक्षा कर रही थी कब राजा बनेंगे। यहाँ तक कि प्रसंग आया था कि एक प्रसंग में उन्होंने दशरथ राजा को भी कम मार्क दिए, अब राम राजा भी नहीं बने, तो दशरथ राजा को क्रोध नहीं आया। उनको लगा कि यही समय है कि मेरे पुत्र राम को राजा बनाया जाए, राज्याभिषेक किया जाए। तो उन्होंने वशिष्ठ मुनि को बुलाया और कहा कि आप मुहूर्त निकालिए। तो वशिष्ठ मुनि ने कहा कि कल ही मुहूर्त है कल ही मुहूर्त है, जैसे कृष्ण भगवान गैया बछड़े चराते चराते बहुत परेशान हो गए थे और उनको बड़ी गायों का चराने के लिए अनुमति चाहिए थी, बार बार जिद करते थे। तो एक दिन यशोदा माई ने शांडिल्य मुनि को बोला कि आप ना अभी मुहूर्त निकालिए, लाला बहुत परेशान है, उनको भी हमको भी इच्छा है कि वो बड़ी गाय की जिम्मेदारी ले लें। तो शांडिल्य मुनि आए और बोले कल का ही मुहूर्त है सप्तमी के दिन कार्तिक सुदी सप्तमी के दिन चर्चा हुई और अष्टमी का ही मुहूर्त निकला, तो एक दिन में सब तैयारी करनी पड़ी। उसी प्रकार से दशरथ राजा ने वशिष्ठ मुनि को बोला और दूसरे दिन का मुहूर्त निकला। तो एक लगता है कि ये षड्यंत्र है ऐसा लगता है, क्योंकि देखो आप पहले दो पुत्रों को ननिहाल भेजते हो पत्नी के साथ और फिर वशिष्ठ मुनि को बुलाते हो, फिर मुहूर्त की बात करते हो और वो कहते हैं कल ही मुहूर्त है, अभी क्या करें, वो तो इतने जल्दी लौट के नहीं आ सकते। तो पहले तो घुड़सवारी करके जाते थे ना, तो कई दिन लगते थे पहुंचने के लिए। तो इतने झटपट में सब शादी कर दी, विवाह क्या कहते हैं उसको, राज्याभिषेक कर दिया ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं था। और दशरथ राजा इतने व्याकुल थे, उन्होंने कहा कि मेरा कुछ होने के पहले ये योग्य व्यक्ति राज्य पद पर विराजमान होना चाहिए। और सब तैयारी हुई और युवराज के रूप से उनको तो पहले छत्र था, उनके पीछे सेवक चामर डुलाने वाले सब आते जाते रहते थे, उनका सम्मान तो पहले से ही था, लेकिन राजा होने वाले हैं ये भी इतनी जल्दी जल्दी बात हुई कि उसको ऐसे ठीक तरह से पूरी अयोध्या में दौंडी पिटा के वगैरह वगैरह नहीं हो पाया। लेकिन जो अंतर्गत परिवार था उनका, मंत्रियों का और इसका, उनको पता चला। यहाँ तक कि कैकेयी को भी पता नहीं चला था, रानियों को पता नहीं था, राम को संदेश भेज दिया गया था, सीता को पता था, लेकिन कैकेयी को पता नहीं था। तो राज्य में खबर फैल गई धीरे धीरे, आप जानते हैं ना अच्छी खबर तो सब जगह फैल जाती है। कैकेयी वैसे भी कहते हैं कि कैकेयी का प्रभु राम पर विशेष स्नेह था, वात्सल्य, और वो सबको माता माता करके पुकारते थे और कैकेयी का विशेष प्रेम था उसके ऊपर। ऐसा नहीं कि कौशल्या का भी बहुत प्रेम था, उनका ही पुत्र है, लेकिन अब उनका पुत्र ना होने पर भी कैकेयी का विशेष प्रेम था और प्रभु राम भी उन पर बहुत प्रेम किया करते थे। तो अभी क्या हो रहा है, पूरी अयोध्या नगरी जो है ना वो भी सज धज रही है कि भी कल राम जी का राज्याभिषेक है, और पूरी जगह पर सब जगह पर दीपक जलाए जा रहे हैं, घर में वो पताका लगाए जा रहे हैं, सब जगह शुभ श्लोक वाचन किया जा रहा है, सुगंधित द्रव्यों का छिड़काव किया जा रहा है। पुराने ज़माने में जब भी कुछ अच्छा मौसम होता था या कोई उत्सव हुआ करता था तो हाथी पर बैठकर शक्कर बांटा करते थे मीठा, और हाथी पर बैठकर वो सुगंधित द्रव्यों का फव्वारा करते थे ज़मीन पर, और पूरी भूमि जो है पूरा शहर जो महकता था। हाँ, अभी तो कलयुग में आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ पर बदबू आती है, कहीं भी जाओ, कलयुग का विशेष गुण है वो, इसलिए सब लोग स्प्रे मारते हैं ताकि वो दूर की गंदगी अपनी गंदगी मिक्स होकर कष्ट न हो। लेकिन पुराने ज़माने में पूरे शहरों को महकाते थे। तो ये सब तैयारियाँ जोरदार हो रही है, और उतने में जो मंत्रा जो है वो कैकेयी की सेविका है, मैंने आपको उसके बारे में कथा बताई थी कि प्रभु रामचंद्र ने खेल खेल में एक बार उसके पीठ पे जो था ना हम्प, क्या कहते हैं उसको, कुबड़ा जो था उसके ऊपर कुछ गोबर फेंका था, और तब से वो राम पर बहुत नाराज रहा करती थी। तो वो मंत्रा छत पे गई और छत पे से क्या देख रही है, पूरी नगरी सज रही है, सब लोग आनंद मना रहे हैं, मानो कोई बड़ा उत्सव होने वाला है। और उसमें से उनको एक विशेष बात दिखाई पड़ी कि कौशल्या जन सामान्य के बीच में बैठकर सबको दान दे रही है, और जैसे मानो लुटा रही है अपना तिजोरी भंडार। तो फिर उसने पता किया क्या हो रहा है, तो उनको पता चला कि कल रामचंद्र का राज्याभिषेक होने वाला है। तो वो बहुत क्रोधित हुई, बहुत तिलमिला उठी, जो पूरा विश्व पूरा ब्रह्मांड पूरा नगर अयोध्या हर अयोध्या वासी आनंद में था, बहुत दिनों की प्रतीक्षा में होने वाला जो उत्सव है अभी वो संपन्न होने वाला था, सब लोग बड़े आनंद में थे, लेकिन ये अकेली व्यक्ति जो है वो क्रोधित थी। अभी उसके पहले एक रामायण है, इसका नाम है अध्यात्म रामायण, जिसमें शिव जी पार्वती को रामायण बता रहे हैं, उसका वर्णन अध्यात्म रामायण के रूप में उपलब्ध है। उसमें ऐसा वर्णन आता है कि जैसे ही राज्याभिषेक तय हुआ कि कल होने वाला है, तो एकांत में गुप्त रूप में नारद मुनि प्रभु राम को मिलने आए, और उन्होंने प्रभु राम को देखा कि वो क्या कहते हैं पवित्र स्नान उनका किया जा रहा है, मंत्रोच्चारण किया जा रहा है, उनको बहुत सारी विधि हो रहे हैं, उनको अग्निहोत्र में है, वो उपवास में है, और बहुत सारे सुंदर सुंदर व्रत किए जा रहे हैं ताकि वो कल राज्याभिषेक के लिए योग्य हो जाएं। उस बीच में एकांत में नारद मुनि आके मिलते हैं, उनको कहते हैं आपका अवतार पृथ्वी के उद्धार के लिए हुआ है, और रावण का आतंक इतना बढ़ गया था कि पृथ्वी माता परेशान होकर गौ माता का रूप धारण करके रोते बिलखते हुए ब्रह्मा जी के पास गई थी, ब्रह्मा जी सारे देवताओं को लेकर आपके पास आए थे, विष्णु के पास आपके पास आए थे, और आपने उनको वरदान दिया था कि मैं आऊँगा और रावण का वध करूँगा, अभी आप ऐसे ही विवाह करेंगे और राजा बनेंगे, अयोध्या में रहेंगे, तो लंका तक कब पहुंचेंगे, इसलिए मैं आपको ये स्मृति दिलाने आया हूं कि आपका अवतार यहां से जाकर लंका में जाकर रावण का वध करने के लिए हुआ है, उसको भूलना नहीं। तो प्रभु रामचंद्र उनको ये वादा करते हैं कि मैं कल ही वन में जाऊंगा कल ही मैं वन में जाऊंगा और जिस कारण मैंने अवतार लिया है वो उद्देश्य मैं पूर्ण करूंगा। और फिर नारद मुनि अंतर्धान हो गए, फिर इनकी तैयारियां शुरू हुई, सब कुछ बहुत जोरदार शुरू हुआ, और फिर मंथरा जो है वो अभी इसके बीच में और एक मीटिंग हुई देवताओं की, कैसा है ना प्रभु नीचे आकर अपना लीला करते रहते हैं और देवता सदैव प्रभु के पीछे रहते हैं, और देवताओं के लिए प्रभु अलग अलग हित कार्य करते रहते हैं। तो मैंने आपको वर्णन बताया था ना कि वो पुत्र कामेष्टि यज्ञ में सब देवता रो रहे थे, ब्रह्मा जी आए, फिर विष्णु जी आए, उन्होंने देखा कि मैं भी अवतार लूंगा वगैरह, तो देवताओं का हित करने के लिए वो आते हैं, और फिर आकर लीला भी करते हैं, अपने माता पुत्र माता पिता सबको बुलाते हैं, अलग अलग अवतारों में अलग अलग रूप धारण करके उनके माता पिता, वही माता पिता आते हैं, है ना, पृष्णिगर्भ और सुतपा, पृष्णी और सुतपा के गर्भ रूप में, पृष्णिगर्भ के रूप में आए, फिर अदिति और कश्यप के रूप में आए, और फिर प्रभु उपेंद्र वामन के रूप में आए, फिर उसके बाद कृष्ण के रूप में आए, वो तो बाद की बात है सब ये, लेकिन कौशल्या और दशरथ के रूप में आए तो प्रभु राम का जन्म लिया उन्होंने, ऐसे बहुत सारे जन्म लिए उन्होंने अनेकों बार। तो देवताओं की मीटिंग हुई, कह रहे प्रभु तो अभी विवाह करके आए, अभी बहुत साल रहे, 12 वर्ष रहे विवाह करने के बाद, अभी राज्याभिषेक होगा, अभी राजा बनेंगे, राज करेंगे, तो हमारा कल्याण कब होगा? हम तो अभी तक नौकरी बने हुए हैं, अभी तो पानी भर रहे हैं, झाड़ू मार रहे हैं, पोछा कर रहे हैं रावण के दरबार में। तो उन्होंने सरस्वती को बुलाया, ब्रह्मा जी ने शारदा देवी को, और कहा कि जाओ और अयोध्या में किसी का मन भ्रष्ट करो, प्रभु राम के विरुद्ध उसकी मनोधारणा बनाओ। तो उन्होंने ऊपर से ही देखा कि अयोध्या में ऐसी कौन सी व्यक्ति है जिनका मन हम भ्रष्ट कर सकते हैं, तो पूरी अयोध्या में एक भी व्यक्ति नहीं मिली उनको जो ऐसे भ्रष्ट करने जैसा प्रयास को सफलता देगी। फिर एक ही व्यक्ति मिली, वो थी मंथरा, क्योंकि किसी के मन में प्रभु के प्रति द्वेष नहीं था पूरे अयोध्या में। ये एक बहुत नोट करने जैसी बात है। हाँ, आजकल के समय में सारी जनता राजा के विरुद्ध रहती है, सदैव आंदोलन करती रहती है, असंतुष्ट रहती है, क्रोधित रहती है, तोड़फोड़ करती रहती है। उस समय केवल आदर सम्मान नहीं करते थे लेकिन प्रेम किया करते थे राजा पर, पिता की तरह। दशरथ के ऊपर भी उनका इतना ही प्रेम था और प्रेम से पूरी प्रजा उनको अपने आप के लिए प्रस्तुत करती थी। एक ही मंत्रा मिली और वो भी एक ही घटना थी जिसके वजह से वो जीवन भर क्रोधित रही उसके प्रति। तो सरस्वती ने उसकी मति भ्रष्ट की, फिर उसके मन में वो द्वेष उत्पन्न हुआ। फिर वह सीधे उसी छत से, कैकेयी के महल के छत से उसके कक्ष में गई। उधर कैकेयी श्रृंगार कर रही थी उस समय आईने में देखकर, तो उसने कहा मूर्ख औरत। अब उनका इतना रिश्ता था सेविका और मालकिन का, स्वामिनी का, कि वो इतना साहस कर सकती थी, क्योंकि वो जब से कैकेयी बालिका थी कैकेयी देश में तब से उसकी सेवा में थी। और विवाह हुआ तो दहेज में दासियां आती है ना, तो उसके साथ वो भी आई थी अयोध्या, तो वो तो गोद में खिलाई हुई लड़की थी उसकी, तो उसको अधिकार था। वो कहते मूर्ख औरत, तुम्हारे विध्वंस का कार्यक्रम बना जा रहा है, योजना बनाई जा रही है, तुम यहाँ पर श्रृंगार कर रही हो, कैसी मूर्ख औरत हो, चल तो क्या बके जा रही हो, कुछ ठीक से तो कहो, अरे तुम्हें कुछ पता भी है कि तुम्हारे भरत का सर्वनाश होने का समय आया है? अरे भरत का सर्वनाश क्यों होने लगा, तो शादी करके बहुत आनंद में ननियाल गया हुआ है, कुछ देर बाद लौट के आएगा, सब कुछ अच्छा है। अरे तुम मूर्ख औरत हो, तुम नहीं जानती हो कि रामचंद्र का कल अभिषेक होने वाला है, राज्याभिषेक, वो अयोध्या का अनभिषिक्त राजा बनेंगे। तो इससे झट से वो उठी अपने आसन से, इतना आनंद हुआ उसको, अरे मेरे राम का अभिषेक होगा, कितनी अच्छी बात है। ये लोग एक गाला माला निकाल के, गले के मोतियों की महंगी माला निकाल के उसको दे दी। मंत्रा ने उसको उठाकर फेंक दी, नहीं चाहिए मुझे माला, ये मैं यहां विध्वंस की बात कर रही हूं, तुम मुझे उपहार देने जा रही हो, नहीं चाहिए मुझे उपहार। तो कहते मंत्रा लगता है तुम्हारा बुद्धि भ्रष्ट हो गई तुम्हारी, प्रभु यानी प्रभु तो नहीं कह रही वो, मेरे प्रिय राम का राज्याभिषेक हो रहा है, इससे बड़ी आनंद की खबर क्या हो सकती है जो तुमने मुझे सुनाई है, और तुम मुझे उसे क्या कहते हैं उसको दुर्वार्ता कह रही हो, बुरी खबर सुना रही हो। बोलो क्यों नहीं सुनाऊंगी, बोलो क्या ऐसे क्या हुआ? अरे कैकेयी तुम नहीं जानती, मैंने छत से देखा कि कौशल्या देवी बैठकर लोगों को उपहार दे रही है, भेंट दे रही है, दक्षिणा दे रही है, दान दे रही है। अब तक तो दशरथ राजा की सबसे प्रिय पत्नी तुम थी और तुम्हारा नंबर पहला था पत्नी के रूप में, पटरानी के रूप में, एक तरह से डिक्लेयर तो नहीं किया था, ज्येष्ठ पत्नी तो कौशल्या थी, फिर भी सौंदर्य की वजह से और अच्छे व्यवहार की वजह से कैकेयी दशरथ को बहुत ज़्यादा प्रिय थी। कैकेयी का उनका संबंध बहुत विशिष्ट संबंध था, तो वैसे भी वो 3 रानियों में सबसे अधिक अधिकार अपने आप ही स्वतः ही पाती थी। तो कहते हैं कि प्रभु रामचंद्र का अभिषेक हो रहा है, आनंद की बात है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आज तक नंबर 1 में थी, अभी कौशल्या नंबर 1 पे आएगी, जिसका पुत्र राजा बनेगा वो राजमाता बनेगी, राजमाता नंबर 1, पूरे राज्य के तिजोरी पर उसका अधिकार होगा। अब तक तुम्हें पूछकर यहां वहां के दान दिए जाते थे, अभी तुमको उनको पूछना पड़ेगा। तो बोला कोई बात नहीं, अगर मेरे पुत्र प्रिय पुत्र राम और राजा बनने वाले हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, कौशल्या के मन में कोई भेदभाव नहीं है। बोला ऐसा नहीं है, ये आपके पति जो हैं आपको एक जगह पर प्रेम दिखाते हैं और दूसरी जगह पर तुम्हारा प्रिय करने के बदले में दूसरी पत्नी का प्रिय करने का विचार करते हैं। तुम अपने पति को जानते नहीं हो, देखो कितना विष भर रही है अपने मन में, कई कई के मन में। तुम्हारे पति तुम पर प्रेम का नाटक करते हैं, तुम्हारे कक्ष में अधिक समय बिताने का नाटक करते हैं, लेकिन अंदर से ऋषि मुनियों को गुरुदेव को मिलकर कौशल्या के पुत्र को राजा बनाने की योजना बनाते हैं। ये साफ साफ षड्यंत्र है कि वो पटरानी नंबर वन बनेगी, उसका पुत्र राजा बनेगा, फिर तुम्हारा पुत्र जो है वो राजा का दास बनेगा। लक्ष्मण दास को नहीं बनेगा, क्योंकि लक्ष्मण और राम तो जन्म से एक ही है, तो राम को जो सम्मान मिलेगा, जो स्थिति मिलेगी, वही स्थिति लक्ष्मण को मिलेगी, क्योंकि लक्ष्मण और राम एक प्राण दो देह हैं। तो लक्ष्मण की माता भी उसी प्रकार से स्नेह में रहेगी, केवल तुम्हारा पुत्र जो है वो दास बनेगा, क्योंकि तुम नंबर टू की पत्नी बन जाओगी। अभी उसके कुछ कुछ समझ में आने लगा। कोरोना के समय पर मैंने एक कथा बताई थी, इसलिए बताई थी कि जब कुसंगति होती है तो कुसंगति की शुरुआत में ही उसको त्याग देना चाहिए। कुसंगति में अगर आप सोचेंगे ठीक कोई बात नहीं मैं इतना प्रभावित नहीं होऊंगा उससे, और बैठे रहेंगे तो कुसंगति बुरा परिणाम तो करती ही है, इसलिए बुरे संगति में झट से त्याग करना चाहिए। तो जैसे पहले से निंदा शुरू कर दे तो वहीं पर उसने संवाद बंद करना चाहिए था, वो निकल जाना चाहिए था वहां पे। आचार्य बताते जब कोई कुसंगति वाला कोई निंदाजनक प्रसंग होता है तो तीन काम आप कर सकते हो, ध्यान से सुनना। कोई आपको अगर निंदाजनक वाक्य कोई करने वाला व्यक्ति आता है और निंदा शुरू करता है किसी की, या कोई अपराध करता है, या कोई ऐसे आतंकवादी कार्य करता है, तो तीन काम आप कर सकते हो। एक तो उसकी जबान काट दो, जो अधिकतर हम अभी कलयुग में नहीं कर सकते, कायदा ऐसा है कि ऐसा नहीं कर सकते हम। अगर जबान काटने में असमर्थ हो तो आप वहां से निकल जाओ। और तीसरा लिखा है कि वध कर दो उसका, तो वध करना जबान काटना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। तो और अगर ये भी तीन प्रकार की बातें, यानी या तो उसको परास्त करो और उसको जो बात कह रहा है उसको आप परास्त कर दो अपने तर्क से, ताकि वो अपना मुंह बंद करेगा, आगे बोल नहीं पाएगा। नंबर वन, वो नहीं कर पाएगा तो उसकी जबान काट दो। कभी कभी हम असहाय होते हैं ना, किसी को मुंह उसका रोक नहीं सकते हो, तो वध कर दो या जबान काट दो। और दोनों नहीं कर सकते हो, असहाय हो तो चले जाओ वहां से, उस स्थान को छोड़ के चले जाओ, लेकिन वो सुनना जो है उसको बंद करो, उसको कंटिन्यू मत रखो। तो कैकेयी को उसी समय अपने अधिकार में उसको शांत करना चाहिए था आदेश देकर, लेकिन वो बार बार पूछती रही, अरे तुम ऐसा क्यों कह रही हो, अरे तुम ऐसा क्यों कह रही हो, मुझे आश्चर्य हो रहा है, बताओ ऐसा क्यों कह रही हो, और हर बार उसको टोकती थी वो। लेकिन एक समय ऐसा आया कि कौशल्या पटरानी नंबर वन बनेगी, तो उसके वो दिमाग में छेद बना, जगह बनी उसको घुसने के लिए, और वहीं से पूरी उसकी कुसंगति उसके बुद्धि में घुसी। और वो आईने के सामने बैठी थी, देखो सीन कैसा है, वो आईना है उसके सामने वो बैठी है, और पीछे से ये बातें हो रही है, और श्रृंगार ही कर रही है, और श्रृंगार करते करते उसको टोक रही है, और पीछे से वो बोल रही है, माला फेंक रही है, जो भी कुछ है पीछे से हो रहा है। जैसे ही उसने ये कहा ना, वो टर्न हो गई, आईना छोड़ के उसकी तरफ मुंह किया, अच्छा आगे बताओ, आगे बताओ। इसका मतलब मंत्रा को भी पता चला कि मेरी बात अभी जम रही है उसके दिमाग में, स्थान बना रही है। फिर उसने बनाया कि इस तरह से तुम्हारा पुत्र जो है जीवन भर दास बना रहेगा। तब उसको लगा कि हाँ ये बात तो सही है, उसका मन पूरी तरह दूषित हो गया। उसने कहा मुझे पहली बार लगा कि तुम्हारा जो ये कुबड़ा है ना पीछे का, उसके अंदर बहुत सारा बुद्धि बना हुआ है, ये पहली बार मुझे अनुभूति हो रही है कि तुम्हारे संग में इतनी बड़ी सलाह जो है पहली बार तुमने मुझे दी है बार, और उसके आपके जीवन भर का जो अनुभव है बुद्धि के रूप में और अनुभूति के रूप में आपके कुबड़ा में छुपा हुआ है। और कहती है कि मैं तुम्हारा सत्कार करूंगी, मैं तो रात तुम्हारे कुबड़े पर बहुत सारे रत्नों के अलंकार लगाऊंगी, उसको श्रृंगार करके सुशोभित करूंगी, निश्चित रहो आप। अब बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तुमने मुझे बताया था एक बार कि दशरथ महाराज एक युद्ध में गए थे, राक्षसों के साथ देवताओं के पक्ष में युद्ध कर रहे थे, और उस युद्ध करते 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 उनके जो पहिया था ना, चक्र रथ का पहिया था एक चार में से, उसकी आरी निकल गई। तो उस समय कैकेयी इतनी क्षत्राणी शूरवीर कन्या थी, वो युद्ध करती नहीं थी लेकिन इतनी शूर थी, वो क्षत्रियों का खून था उसके अंदर। तो उसने क्या किया, जो आरी गिर गई थी ना उसमें अपनी उंगली डाली उसने, और वो उंगली पकड़कर वो रथ को चलवा कर उसको तंबू तक लेके आई। जब जख्मी अवस्था में दशरथ महाराज जख्मी भी थे, थोड़े थोड़े परास्त भी हो रहे थे, और रथ का पहिया भी छूट रहा था अपनी जगह से, तो उसको जगह पर रखने के लिए इतने हिम्मत से और धैर्य से उसने अपनी उंगली जो है ना उसके बीच में रखी थी। उसकी उंगली बहुत छिल गई थी उससे, लेकिन इतना धैर्य सहनशीलता और शक्ति थी उसके अंदर कि वो हटी नहीं वहाँ से जब तक तंबू में नहीं पहुँची। तो उस समय जब उंगली निकाल के दिखाई अपने पति को, तो पति बहुत प्रसन्न हो गए और पति बहुत द्रवित हो गए। उन्होंने कहा, इतना साहस, इतना प्रेम, इतना त्याग मेरे लिए, बोलो वरदान मांगो, मैं आपको दो वरदान देने को तैयार हूँ। तो कैके इतनी सुस्वभावी थी, इतनी अच्छे स्वभाव की थी, उन्होंने कहा कि कई मुझे कोई वरदान की जरूरत नहीं है, मैं आपकी पत्नी हूँ, मेरा कर्तव्य निभा रही हूँ, मुझे जो अंतर्गत प्रेरणा हुई उससे मैंने ये कार्य किया है। नहीं नहीं नहीं, मुझे आपको वरदान देना ही है। तो वो कहते ठीक है, उसको रख लो अपने पास, कभी योग्य समय आएगा तो पूछ लूँगी। ये नहीं कि मैं समय ढूंढूंगी और आपसे पूछूंगी, ऐसा नहीं, वो जस्ट कैजुअल डिस्कशन हो गया उनका। अभी ये कथा आचार्य लिखते हैं हमारे कि रानी को सेविका को बताने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन ये हमारे लिए शिक्षा है कि सारी बातें सबसे नहीं करनी चाहिए, अयोग्य व्यक्ति से कभी भी नहीं करनी चाहिए, जो जिसके योग्य नहीं है उसके सामने कभी भी नहीं करनी चाहिए। कुछ बातें तो पति के साथ भी नहीं करनी चाहिए, पत्नी के साथ भी नहीं करनी चाहिए, जैसे राज दरबार की बातें, ऑफिस की बातें हैं, कुछ ऐसे सीक्रेट होते हैं, कुछ ऐसे गुह्य बातें होती हैं, कितना भी प्रेम होगा तो भी एक हमारी मर्यादा है कि हम उससे सबसे नहीं शेयर करते हैं। तो आचार्य लिखते हैं कि ये बात अगर ज़्यादा समीपता होने के कारण अगर वो नहीं बताई होती तो इतना सारा बुरा प्रसंग का जो श्रृंखला है पूरी वो नहीं होती, लेकिन ये कई कई ने बताई थी उसको। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, ऐसे बातों बातों में कोई रहस्य भरी बातें सबको बता देते हैं, ऐसे ही कि मुझे पता है तो आपको पता बताने के लिए मुझे वेग आ रहा है अंदर। तो कहते भी इसका संबंध क्या है, मैं आपको स्मृति दिला रही हूँ, वो दो वरदान अभी मांग लो। फिर पूछ रही क्या वरदान मांगू, तो मंत्रा कहती है ध्यान से सुनो मैं क्या कह रही हूँ, वो वरदान मांगने का समय अभी आ गया है। तुम्हारे जीवन की मान सम्मान की आदर पूर्णता की स्थिति को अगर बचाए रखना है तो ये सही समय है, ताकि आपकी जो आत्मसम्मान है वो टिका रहे, आपका पुत्र का कल्याण हो। तो अभी आप पूरा प्लान बनाती हो, ऐसे नहीं कि जाके अपने वर मांगो और ये वर मांगो। वो कहती सबसे पहले तो आप अपने महल से कोप भवन में जाओ। पुराने ज़माने में राजाओं के पास कोप भवन हुआ करता था, कोप भवन, वहाँ पर जाके पत्नियाँ अपना कोप जो है वो प्रकट करती थी, उसका भी एक स्टाइल था, पूरा एक प्रक्रिया होती थी। वो कहते हैं कि आपके अच्छे वस्त्र जो पहने श्रृंगार किया हुआ है सब उसको उतार दो, और ऐसे उतार दो कि सारे ज़मीन पर फेंक दो, ऐसे अपने गले की मालाएँ, इधर की फूलों की माला, मन मुंडे मोतियों की माला, मुकुट वुकुट सब फैला दो पूरे कमरे में, वस्त्र भी ऐसे फैला दो, फिर काले रंग के वस्त्र पहनो, बालों का श्रृंगार किया उसको बालों को छोड़ दो और उसको बिखरा दो ऐसे, और ज़मीन पर लेट जाओ इस तरह से कि बाल भी बिखरे हुए हैं, तुम भी बिखरी हुई हो, ऐसी लेट कर सिसकियाँ भरते हुए रोते रहो, और फिर दशरथ महाराज को बुलाओ भेजो, कि दशरथ महाराज आएंगे और आपको पुकारते रहेंगे, आप दिखेंगे नहीं तो लोग कहेंगे ज़मीन पर है वो, ऊपर नहीं है, मतलब ऊपर के लेवल पर नहीं है, आप ज़मीन की ओर देखो आपको दिखेंगे वो, फिर वो आश्चर्यचकित होंगे और वो आकर आपको बोलेंगे प्रिय क्या हो गया आपको, प्रिय क्या हो गया आपको, फिर आप बहुत देर तक जवाब मत देना उनको, पूरा वो है ना वो राइटर प्रोड्यूसर डायरेक्टर सारा स्क्रिप्ट लिख रही है, वो पूरा पटकथा लिख रही है। हाँ कोई बात नहीं, हाँ ठीक है, तो अच्छा है, अंधेरा होने पर ध्यान अच्छा लगता है। हाँ नहीं तो ये उजाले में यहाँ वहाँ देखते हैं हम लोग, लेकिन अंधेरे में हमको केवल सुनना है, बस कुछ नहीं करना है। तो होता यह है कि वो कहते हैं कि जब वो बहुत गिड़गिड़ाएंगे, प्रिय बता दो क्या तुम्हारा प्रिय करूं, क्या तुमको क्रोध दे रहा है, कौन सी ऐसी बात है, किसको दंड दूं, किसको आत्मदंड दे दूं, या मैं आपके प्राण त्याग करूं, या किसका वध कर दूं, आपको किसी को नहीं मरना चाहिए तो मैं उसको जीवन दान दे दूं, या आपको जिसको कष्ट देना है उसको मैं आत्मदंड दे दूं, ऐसे बहुत सारे बातें बताते, तभी आप कुछ नहीं कहना। फिर जब बहुत गिड़गिड़ाएंगे तब आप खड़े हो जाना और अपने पति को याद दिलाना, आपको याद है उस युद्ध के प्रसंग में आपने मुझे दो वरदान मांगे थे, देने के लिए कहा था, आज मैं ये वरदान मांगना चाहती हूँ। वो कहता है कि कितनी खुशी की बात है कि मेरे पुत्र, प्रिय पुत्र राम का राज्याभिषेक है और उस समय तुम ये वरदान मांग रही हो, कितनी खुशी की बात है, इससे अच्छा मौसम, इससे अच्छा सुवर्ण क्षण जो है जीवन में कभी नहीं आ सकता है कि जब मैं मेरा वादा भी पूरा कर सकता हूँ। वैसे भी घर के अच्छे प्रसंग में हम क्या करते हैं, सभी लोगों को उपहार देते हैं, है ना, सबको बुला बुला के कपड़े लत्ते दागिने औरत ये अलंकार सब दे देते हैं। तो बहुत अच्छा किया आपने मुझे अपने में स्मरण दिलाया, क्या चाहते हो बताओ। तो कहते हैं कि मैं जो मांगूंगी वो आप दोगे, ये सब मंत्रा बता रही है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि वो क्या होने वाला है। तो सब वस्त्र से निकाल के काले वस्त्र पहनकर लेट जाती है, बाल बिखरा कर, और फिर पति को बुलाओ भेजती है। पति आते हैं भाग भाग के, हे मेरे प्रिय कैकेयी, मेरे प्रिय कैकेयी कहाँ पर हो, ऐसे ऊपर देख रहे हैं। दासियाँ कहती हैं वो नीचे हैं, तो नीचे देखते हैं तो एकदम जाके उसके पास आके गिर जाते हैं। तो क्या हुआ प्रिय, क्या हुआ, इतना नाराज क्यों, बहुत देर तक बात नहीं करती है। फिर धीरे से उठ जाती है, याद दिलाती है, फिर वो कहती है बहुत अच्छी बात है, फिर पूरा स्मरण दिलाती है कि ऐसा प्रसंग था, आज मैं वो दो वर आपको मांगने जा रही हूँ। अब स्थिति कैसी है, आंखों में नहीं दिख रही है, ऐसे दूसरी दिशा में खड़े होकर बोल रही है। वो कहते हैं देह बोली, बॉडी लैंग्वेज कहते हैं उसको, जिस प्रकार से आप किस बात को करते हो ना, उस बात के उसका परिणाम होता है। 30% परिणाम जो है वो आपके वाचा से होता है, 70% परिणाम आपके शरीर किस तरह से आप रख रहे हो उसका परिणाम, उसकी तरह से मैसेज जाता है, संदेश जाता है, किस प्रकार से वो बात बोल रहे हो। तो ऐसे ढंग से बोल रही है, मेरी मांग आप पूरी करोगे, मुझे वरदान दोगे। वो कहते हैं मैं प्राण भी दे सकता हूँ आपके लिए। वो कहते हैं मुझे प्राण नहीं चाहिए, मुझे वादा चाहिए कि जो मांगूंगी वो दोगे। प्राण तो आप दे ही सकते हो, प्राण देना बहुत आसान हो जाता है। तो कहते हैं वो तो और आतुर हो जाते हैं कि मैं आपको वादा करता हूँ, मैं रघुकुल वंशी हूँ, मेरे वंश में कोई किसी ने आज ने अपना दिया हुआ वादा नहीं निभाया, ऐसा नहीं हुआ है। हमारे कुल की ये रीति है, हम प्राण देते हैं लेकिन अपना वचन निभाते हैं। राजन आप निश्चित रूप से मुझे वरदान दोगे, इस प्रकार से ना एक संदेह निर्माण कर रही है दशरथ के प्रति उसके मन में, कि रानी को संदेह है, तो बार बार वो दोहरा रहा है, मैं आपको वचन देता हूं, मैं प्राण त्याग दूंगा मेरे, अगर मैं आपके दिया हुआ वच वरदान में नहीं पालूंगा, नहीं दूंगा, तो मैं वादा करता हूं मैं प्राण त्याग दूंगा मेरे। तो फिर वो और एक कड़क पोजीशन ले लेती है और फिर वो दो बम डाल देती है, जिस प्रकार से वर्णन दिया है कि एक प्रकार से वो था ना वज्राघात कहते हैं, आज हम लोग कहते हैं एटम बम, लेकिन उस समय वज्राघात का वर्णन क्या करते थे, वज्राघात यानी वो होते ही या तो लोग मर जाते हैं या तो लोग बेहोश हो जाते हैं। जैसे गोपियाँ जा रही थी ना, वो नंदगांव से अक्रूर जी उनको ले जा रहे थे कृष्ण बलराम जी को, तो गोपियाँ उनका पीछा कर रही थी, तो इतनी सारी करोड़ों गोपियाँ रथ का पीछा कर रही है, कोई रास्ते में खड़े, कोई बीच में है, कोई साइड में, जाने नहीं देंगे ऐसा कह रहे। तो भगवान ने क्या किया, कोई गांव है और बिजवारी, उसका सही नाम है वज्रवारी, वज्रवार किया भगवान ने, वज्राघात किया उस भूमि पर, इतना भयंकर वज्राघात किया, उसकी ध्वनि और उसकी भयंकरता से सारी गोपियाँ बेहोश हो गई। फिर कृष्ण बलराम ने अक्रूर जी को कहा रथ को हवा की गति से भगा दो यहाँ से, यही मौका है, तो हमको निकलना यहाँ से नामुमकिन है। तो वज्राघात का बार बार वर्णन आता है शास्त्र में, वो इतना भयंकर है कि 14 भुवन भी उसमें वो गड़गड़ाहट से कांप जाते हैं, क्या हो रहा है। तो वैसे ये दो वरदान मांगे, कि इतनी सारी तैयारी हो गई है राज्याभिषेक की, वो सारी तैयारी राम के बदले में भरत के लिए उपयोग किया जाए, भरत को राजा बनाया जाए। उस समय अयोध्या का राजा बनने का अर्थ होता है विश्व का राजा बनना। आज जैसा नहीं, एक कंट्री, छोटी सी कंट्री, छोटा सा देश, अयोध्या पूरे विश्व की राजधानी थी और अयोध्या का राजा विश्व का राजा था, चक्रवर्ती कहते। चक्र यानी पृथ्वी चक्र जो है, चक्रवर्ती सम्राट। तो चक्रवर्ती सम्राट मेरा पुत्र भरत बनेगा। राजा ने कहा बहुत अच्छी बात है, अगर आपके मन में ये इच्छा है तो राम के जगह पे भरत को राजा बना देंगे। नहीं, मेरा दूसरा वरदान बाकी है। राम 14 वर्ष के लिए वलकल पहनकर कंदमूल खाते हुए वन में जाएगा और मेरा पुत्र राजा बनेगा। तो ये सुनकर जो है वज्राघात होकर वो जमीन पर बेहोश हो गए। कुछ देर बाद संभले, फिर उनको कहा, उन्होंने कहा कि आप राम को वनवास क्यों भेज रही हो? राम भरत पर इतना प्रेम करते हैं, इनके बीच में इतना सख्य है, इतना भ्रातृ प्रेम है, तो राम को वनवास भेजने की कोई जरूरत नहीं है। राम बड़े आनंद से ये स्वीकार करेगा कि मेरा भाई जो महान संत जैसा है वो राजा बनेगा, तो मेरे लिए खुशी की बात होगी, ऐसा राम कहेगा। तो राम को वनवास भेजने की जरूरत नहीं है। तो कहती है कि राम को यह बात असह्य होगी और राम फिर भरत की लोकप्रियता के विषय में बार बार विघ्न डालेंगे। मंत्रा ने समझाया था ये कि राम इतने लोकप्रिय हैं कि अगर भरत राजा बनेगा और राम भी अयोध्या में होंगे तो पूरी जनता डिवाइड हो जाएगी, लोकमत जो है वो विभाजित हो जाएगा, और अधिकतर लोकमत जो है राम के और दशरथ के षड्यंत्र के कारण राम के पक्ष में जाएगा, और तुम्हारा पुत्र राजा होने पर भी दुर्बल राजा बनेगा, क्योंकि राजा के लिए जनाधार बहुत आवश्यक होता है, लोकप्रियता भी आवश्यकता होती है, लोगों का भी जो श्रद्धा निष्ठा जो है वो राजा के प्रति होना जरूरी है। राजा का एक प्रकार का बल है, वो आज भी वही बल है, जनाधार। तो जनाधार जब यहां से वहां विचलित हो जाएगा तो राजा भरत बनेगा तो लाभ क्या होगा? तो राम का वहां होना बहुत गलत बात है, आपको राम को बाहर भेजना ही पड़ेगा, तब जाकर भरत अपना लोकप्रियता बनाएगा, अपना साम्राज्य बनाएगा, लोगों के हृदय में अपना घर बनाएगा, लोगों को अपना बनाएगा। और 14 ही वर्ष क्यों? उस शास्त्र में लिखा है कि 14 वर्ष में लोगों की स्मृतियां क्षीण हो जाती है। ये त्रेतायुग की बात है। यही बात द्वापर में 13 वर्ष की आती है और कलयुग में 12 वर्ष की आती है, इसलिए पांडवों को 13 वर्ष का वनवास दिया गया। यही था कि पांडवों के प्रति जनता इतनी आसक्त थी कि उनकी जो आसक्ति की स्मृतियां हैं वो 13 वर्ष काल में सब क्षीण हो जाएंगी, फिर जनता भूल जाएगी कि ये कभी थे यहाँ पर, दृष्टि से ओझल हो जाएंगे तो सब भूल जाएंगे, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। और वो समय कलयुग में 12 वर्ष का है, एक स्मृति का गणित होता है युग के अनुसार, इसलिए ये 14 नंबर आया, 14 साल का वनवास, ताकि वो दूर रहेगा, उसका प्रभाव दूर रहेगा, फिर दशरथ अपना राज्य अच्छी तरह बनाएगा, फिर बाद में राम लौट के भी आएगा तो फिर वो लोकप्रियता, भरत की लोकप्रियता के सामने फिर प्रतियोगिता नहीं कर पाएगा, उसके स्पर्धा नहीं कर पाएगा, ऐसा दुष्ट विचार था ये सब। तो दशरथ महाराज बेहोश हो गए, बार बार बेहोश हो गए, बार बार बिलखने लगे, रोने लगे, बालक की तरह जमीन पर गिरे हुए उठ नहीं पा रहे हैं। तो कहीं इतना शुद्ध मन था उसका, इतनी पतिव्रता थी, इतने पुत्रों पर प्रेम करती सबके ऊपर थी, लेकिन इतना उसका हद तक मन दूषित हो गया था कि वो कह रही है, रघुवंश के राजा, बड़े बड़े बखान कर रहे थे कि मैं रघुवंश का वंशज हूँ और हमारे वंश में कोई झूठ नहीं बोलता है, हमारे वंश में सब लोग वचन पालन करते हैं, बस इतनी देर में तुम्हारे वचन पालन करने का निश्चय खत्म हो गया, कैसे राजा हो तुम, कह दो, ये नहीं मालूम कर पाऊंगा, पूरे रघुवंश के राज्य वंशावली पे आपका कलंक लग जाएगा, अगर आपकी वही इच्छा है तो करो, मैं तो रानी हूं, आप राजा हो, आपका उत्तरदायित्व है, अपने पूर्वजों का जो मान सम्मान है रघुकुल का वो बनाए रखने का। अभी क्या है ना, अभी और उसको सुई लगा रही है, वो केले काट रही है उसके अंदर, वो पहले से ही ये बात सुनकर वो टूट रहे हैं, पूरे बिखर रहे हैं उसके ऊपर, और उसको केले डाल के नोक रही है वो, फिर वो उठ ही नहीं पा रहे, बार बार बेहोश हो रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि हे दुष्ट स्त्री, मैं तुझे पत्नी के रूप में त्याग करना चाहता हूं, आज से तुम मेरी कोई नहीं हो। ले मुझे आप रखो या ना रखो, आप मेरे वादा वरदान को दोगे कि नहीं दोगे उतना बताओ। इतनी तक उसकी प्रतिमा जो है, उसका मान, उसका जो आत्मसम्मान है वो गिर चुका था। फिर वो कहती है, दासियों के कहती है कि इनके द्वारा ये हिम्मत नहीं होगी राम को बुलाने की और राम को कहने की, जाओ राम को संदेश भेजो कि मैं बुला रही हूँ। नहीं, पापा बुला रहे हैं, पिताजी बुला रहे हैं। तो राम को संदेश भेजा गया, तब राम किसी पूजा में से निकल रहे थे पवित्र होकर, तो सीधे कह कह के महल में गए। तो पूछ रहे हैं, मैया बाबा कहाँ पर हो आप? तो वहाँ के सेवक बोल रहे, यहाँ पर नहीं है वो, तो मुझे तो आमंत्रण दिया बुलाने के लिए, मुझे बुलावा आ गया। नहीं, वो कोप भवन में है। बोले कोप भवन में क्यों है? ये तो राज्याभिषेक का समय, आनंद का समय है, और मेरी दूसरी माँ जो है वो कोप भवन में क्यों गई है? बड़ा आश्चर्य हुआ उनको। अभी आप देखिए, उनको युवराज्याभिषेक हो चुका है, अब राज्याभिषेक होने जा रहा है, तो लक्ष्मण पीछे छत्र लेके जा रहा है, ब्राह्मण आगे पीछे स्वस्ति वचन कहते हुए जा रहे हैं, और फूलों के वर्षा हो रहे हैं आगे पीछे। जैसे अभी प्रधानमंत्री आए तो उसके पीछे कितने लोग होते हैं ना, आगे पीछे गाड़ियाँ, सब सैनिक, सिक्योरिटी गार्ड सब होते हैं ना, वैसे उनका सम्मान था। अब वो तो त्रेता युग का सम्मान है, वो तो इससे कई गुना अधिक था। उस सम्मान के साथ वो जा रहे हैं, कई कई के महल में गए, वहाँ से गए दशरथ कोप भवन में, और वहाँ पर देखा तो बोले, पिताजी कहाँ पर है आप? बोले, पिताजी नीचे हैं, क्योंकि सब लोग ऊपर देखते हैं ना, कभी नीचे कोई देखेगा पिताजी को? तो वो खड़ी है काले वस्त्र पहनकर, सब बिखरे हुए अलंकार दिख रहे, और पिताजी जो है ना ऐसे गलित कात्र होकर, मानो कोई शरीर में शक्ति ही नहीं है, ऐसे नदियाँ बहा रहे अश्रुओं की और फूट फूट कर रो रहे हैं। तो भाग के गए पिताजी का, पिताजी पिताजी क्या हुआ? वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे, क्योंकि राम को देखकर और उनको रोना आया, पहले से टूटे हुए थे, राम को देखकर जिसके प्रति अभी अपराध होने जा रहा है मेरी तरफ से, वो देखकर और रोना आया उनको, और कुछ कह नहीं पाए वो। फिर कह कह कहते हैं क्रूरता के साथ, उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सत्य आपको बताएं, इसलिए जो उनको उन कहने की साहस नहीं हो रहा है वो मैं आपको बताती हूँ। मेरे दो उनके वर उनके ऊपर थे जो उनको देने थे, जो मैंने उनसे मांग लिए हैं, और उन्होंने उनको हाँ भी कर दी है। पहला वरदान ये है कि मेरा पुत्र भरत अयोध्या का राजा बनेगा। तो प्रभु राम बहुत खुश हो गए, कितनी खुशी की बात है। और आप वलकल पेड़ की खाल पहनकर वन में जाओगे, 14 वर्ष तक वन में रहोगे। अभी ये बात सुनकर दशरथ जी टूट कर गिर गए, है ना, रो रहे हैं बहुत, बिलक बिलक छाती पीट के रो रहे हैं। प्रभु रामचंद्र ने क्या कहा? बस माँ, इतनी सी बात, इतनी सी बात, तो आप केवल संदेश भेजती मुझे, आपने इतना सब प्रयास किया मुझे बुलाने का, यहाँ पर आके प्रत्यक्ष आदेश देने का, आपका केवल संदेश भी काफी था, मैं वहीं से चला जाता। इतना कहकर केवल अपने पिताजी को थोड़ी बहुत सांत्वना दी, और तुरंत जो थे ना, जो भी कुछ पहना हुआ था कल का राजा बनने के लिए, वहीं उतार दिया, और तुरंत अपने महल के बाहर चले गए वो। और लक्ष्मण भागे पीछे छत्र लेकर, लक्ष्मण छत्र चलाना नहीं आपको, एक ही क्षण में सब कुछ त्याग दिया उन्होंने। अभी तो कल जाना है, तो आज तो छत्र पहन सकते हैं नहीं, अभी से अगर मेरी माता पिता की इच्छा नहीं है राजा बनने की, तो अभी से मैं ये त्याग दे रहा हूँ। ये प्रभु राम का चरित्र है। बस ये सुनते ही बिल निर्विकार चेहरे से उन्होंने कहा, बस इतनी सी बात थी, और आपने इतना सारा कोप भवन, काला वस्त्र और ये सब रोना धोना, इतना सब पूरा सब किया, उसकी आवश्यकता नहीं थी, आप केवल मुझे कहती कि आप जाओ, मैं चला जाता हूँ। तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, पूरा मेरे लिए छोटे भैया के लिए आशीर्वाद है, शुभेच्छा है उसके लिए, शुभकामनाएं हैं कि वो अच्छा राजा बनने के लिए योग्य व्यक्ति है, मुझे पूरा विश्वास है इस बात पर। इतना मन का बड़प्पन किसी व्यक्ति में नहीं हो सकता, इसलिए प्रभु रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम है, हर मर्यादा के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है वो। वहाँ से गए और सबसे पहले अपनी माता के कक्ष में गए, माता को पता नहीं था, अरे आओ पुत्र आओ, और मेरा जुग जुग आपको आशीर्वाद है, आप कल राजा बनने वाले हो। माता, मैं वन में जा रहा हूँ। क्यों? वो भी टूट पड़ी, तो सब वृत्तांत सुनाया, तो कौशल्या भी बेहोश होकर गिर गई। माता को सांत्वना दिया, समझाया, थोड़ा बहुत धीरज दिया, फिर वो सीता के कक्ष में गए। सीता भी रानी बनने के लिए सब उनका श्रृंगार किया जा रहा था, उनको मंत्रोच्चारण किया जा रहा था, पूजाएं की जा रही थी, यज्ञ किया जा रहा था। तो सीता को ये खबर सुनाई, सीता भी टूट पड़ी। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं भी आपके संग चलूंगी। तो प्रभु उनको कहते हैं कि आप मेरे संग नहीं जाएंगी, आप मेरे पीछे मेरी रोती बिलखती हुई जो माता है उनको संभालेंगी, उनकी देखभाल करेंगी। मैं चला जाऊंगा तो मेरे माता पिता अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे, तो इसलिए आपको वहाँ होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो अपने जीवन को बनाए रखें जब तक मैं लौट के नहीं आऊँ। तो सीता देवी कहती हैं कि आप अपने, अभी उन्होंने पूरा वृत्तांत सुनाया कि क्या हुआ, जिस प्रकार से ये उनके पिता की बात थी ना, पिता का वचन था जो उन्होंने अपने पत्नी को दिया, जो पुत्र के विषय में था, इसलिए पुत्र को अपने पिता का वचन पालन करने के लिए कुछ करना है और वो करने के लिए वो जा रहे हैं। तो सीता देवी कहती है कि जब मेरा विवाह आपसे हुआ था मिथिला में, तब मेरे पिताजी ने मुझे कहा था कि सुख में और दुख में कभी भी इनका साथ नहीं छोड़ना है आपको, और आपको भी आकर कहा था कि मेरी पुत्री सुख में और दुख में समान रूप से आपके साथ में रहेगी, कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेगी किसी भी संकट में। तो आप अपने पिता की बात को जताने के लिए इतने दृढ़ निश्चयी हो तो आप मुझे कैसे कह सकते हो कि मेरे पिता की बात मैं न मानूं, जो मेरे विषय में है, जो मुझे करना है उनकी बात के अनुसार। तो आप अगर अपने पिता की बात को पालन करने के लिए इतने सुदृढ़ हो तो मैं भी अपने पिता के वचन को पालन करने के लिए, पिता के आत्मसम्मान को बचाने के लिए सुदृढ़ हूँ, दृढ़ निश्चयी हूँ। तो फिर वो कहते हैं, अरे वन में पता है आपको कि वन में हिंस जानवर होते हैं, उनमें राक्षस होते हैं जो मनुष्य को कच्चा खा जाते हैं, वहाँ पर पत्थर पे चलना पड़ता है, कांटों पे चलना पड़ता है, आपके चरण इतने सुकोमल हैं। मुझे एक सुंदर कहानी याद आ रही है सीता देवी के सुकोमलता के विषय में। इनका जब विवाह हुआ था ना, तो उसमें आपको तभी मैंने बताया नहीं प्रसंग ही, लेकिन जब वो बारात आई वहाँ से, कहाँ से, मिथिला से अयोध्या जब आई, तब सीता के कोमलता के विषय में बहुत चर्चे अयोध्या तक पहुँच गए थे, खास करके सासू माँ के कानों में, कौसल्या, कैकेयी, सुमित्रा, ये सब लोग जान चुके थे कि हमारी होने वाली बहू जो है, जो हो गई है बहू, वो इतनी सुकोमल है, अति अति सुकोमल है, तो कभी पैर जमीन पर रखे नहीं है, हमेशा मखमल पे और हमेशा फूलों की पंखुड़ियों पे चला करती है। तो हमारे राज्य में ऐसी सारी प्लानिंग की थी उन्होंने कि यहाँ तक रथ से आएगी, फिर रथ से जहाँ उतरेगी वो सबसे निकट होना चाहिए, उनके महल के पास होना चाहिए, कम से कम अंतर उनको चलने को लगना चाहिए, और जहाँ उतरने का समय आएगा वहाँ पर ऐसे कहते हैं कि 6 इंच तक फूलों की पंखुड़ियाँ नहीं, पू केसर होते ना, कमलों के पू केसर, वो इकट्ठा इतने किए थे कि 6 इंच तक पूरी भूमि जो है वहाँ से लेकर महल तक, कि पैर रखेंगे तो पैसा अंदर जाएगा, सुगंध भी रहेगी, कोमलता भी रहेगी, उसके बाद सीढ़ी आएगी, उधर भी सब बिछा के रखा था, और थोड़ा सा ही अंतर, ज़्यादा अंतर नहीं था, इतना भी नहीं, थोड़ा सा अंतर था, इतनी सारी व्यवस्था करके रखी थी। ठीक है, बारात आई, रथ आके खड़ा हो गया, सब पूरा बिछा हुआ है, वो सीता देवी उतरी और अभी कौशल्या उनको लेकर जा रही है अपने भवन की तरफ जहाँ पर उनको जाके रहना है। तो कुछ ही देर में उनके चेहरे पर संकोच आया, यानी कुछ क्या कहते हैं ना उसको, असुविधा हो सकती किसी को, तो चेहरे में पता चला ना कि भाई ये थोड़ा सा कष्ट हो रहा है, आंखों में ऐसा निशाना आया कि कुछ संकोच है, कुछ असुविधा है। तो कौशल्या कहती है, देखो बेटी अब ये तुम्हारा घर है, कोई संकोच हो, असुविधा हो तो खुले दिल से बताना चाहिए, अभी छुपा के रखना कोई बात नहीं, तुम तो मेरे घर की बहू, हमारी बेटी हो। हाँ, कोई संकोच नहीं करोगे, बताऊंगी आपको, फिर भी चेहरे पर संकोच दिख रहा है। तो बहुत कौशल्या देवी जिद करती है, बताओ क्या बात है, आपके मुख कमल से स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि आपको कुछ असुविधा है। तो वो कहती है कि आपके जमीन पर जो आपने बिछाया ना वो चुभ रहा है मुझे, और आपकी जो दासियां हैं मुझे टुक 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 सब देख रही है ना, वो गर्मी लग रही है मुझे, उसकी नजरों की गर्मी लग रही है। तो क्या किया होगा कौशल्या ने, उस समय सीता देवी की उम्र केवल आयु 6 साल की थी, बहुत प्रगल्भ थी वो बुद्धि से और मर्यादा से, लेकिन आयु केवल 6 साल की थी। तो गोद में उठा लिया उसको ताकि चलना ही ना पड़े। सीता को नई नई नवेली दुल्हन को गोद में उठा लिया और अपना पूरा घूंघट उस पर डाल दिया ताकि नजरें किसको ना चुभे और पैर को वो पू के सर जो मुलायम है वो ही ना लगे, और पूरा उठाकर सीढ़ी उठाकर वो अपने महल में ले गई उनको। तो प्रभु राम भी उनको याद दिलाते हैं, आपको याद है आपके चरण कितने सुकोमल हैं। और फिर क्या किया आगे की थोड़ी बात बता देते हैं आपको। फिर वहाँ पर पहुँचा दिया उनको, फिर वो मुँह दिखाई की रस्म शुरू हो गई। तो कौशल्या ने देख सोचा कि क्या दूँ उसको मुँह दिखाई में, अभी इतनी सुंदर इतनी श्रेष्ठ बहू आई है तुमको श्रेष्ठतम वस्तु देनी चाहिए ना। तो कहती है मन से दशरथ महाराज के पूरे तिजोरी से उन्होंने मन से छान लिया कि इसको कहते हैं ना स्कैनिंग, पूरा मन से देख लिया कि ऐसी कोई वस्तु है तिजोरी में जो मेरे बहू के मुंह दिखाई के योग्य है। तो कहते हैं उनको दशरथ महाराज के इतने पूरे विश्व के चक्रवर्ती सम्राट के खजाने में ऐसी एक भी वस्तु नहीं मिली जो मुंह दिखाई में देने योग्य है। तो कहते हैं उन्होंने कुबेर जो इंद्र की तिजोरी है जो कुबेर के पास है, कोषाध्यक्ष है वो कुबेर, तो इंद्र की तिजोरी में छान के देखा कोई वस्तु है क्या जो अधिकार है उनको लेने के, उनको ले सकते हैं इंद्र से मांग कर। लेकिन इंद्र के खजाने में भी ऐसा कोई वस्तु दिखाई नहीं पड़ी जो उसको योग्य लगी कि मेरे बहू को मुंह दिखाई के लिए दे दूं। तो फिर निराश हो गई वो कि भाई क्या दूं, इतना सुंदर अवसर है और मैं मुंह दिखाई में कुछ योग्य वस्तु नहीं दूंगी तो क्या होगा। तो वो जनता यहाँ जो खड़ी है उसको देखने लगी, तो उनकी नज़र जो है वो प्रभु राम पे डाके टिकी, बोले मेरे पूरे भंडार में यही एक रत्न है जो तुम्हारे लायक है। तो जाती है प्रभु का हाथ पकड़ती है और लेके आके कहती है कि मैं मुंह दिखाई में इससे बड़ा उपहार आपको दे नहीं सकती। वो प्रभु राम को अर्पण कर दिया, आज से ये रत्न तुम्हारा है, आज तक मेरा अधिकार था उसके ऊपर माता के रूप में, आज मैं पूरा अधिकार जो है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, शादी के बाद में कभी भी सासू माँ अपना अधिकार नहीं छोड़ती है, उल्टा ज़्यादा पकड़ने का प्रयास करती है, नहीं कोई आई है उसमें विभाजन करने के लिए तो ज़्यादा उसको अधिकार दिखाती है वो कि मैं उसकी माँ हूँ, मैंने दूध पिलाया, मैंने उसका टट्टी पेशाब साफ किया बचपन से, तुम तो अभी आई हो, इसलिए ज़्यादा होता है उनका ये अधिकार दिखाने का कार्य। और बहू सोचती है तो क्या हुआ आपका तो मात्सल्य रस है, मेरा माधुर्य रस है मैं तो पत्नी हूँ उनकी, मेरा रस उससे श्रेष्ठ है, तो आप कितना भी कहेंगे तो हमारा संबंध आपसे भी श्रेष्ठ है। तो वो अपना अधिकार जताती है, फिर अपना अधिकार जताती है और झगड़े उस पर उत्पन्न होती है कि ये व्यक्ति जो मेरा बेटा है इसका पति है वो किसका ज़्यादा है, मेरा बेटा ज़्यादा है कि उसका ज़्यादा पति है। तो झगड़े इसलिए होते हैं क्योंकि वो जो विषय है ना, विषय वस्तु, वो पुरुष है, वो तो एक का पुत्र है एक का पति है। लेकिन वो जो अधिकार है जो सासू माँ को होना चाहिए वो अधिकार उन्होंने मुँह दिखाई में दे दिया सीता को। ये बात समझने जैसी बात है। हाँ तो पति तो हो गई है, शादी में तो माला पहने तो पति तो हो ही गए थे ना, वो तो क्या दे क्या रही है, वो दे रही है अपना अधिकार जो उसको लगता है कि मेरा पुत्र है, वो पूरा अधिकार उसको दे दिया। फिर कैकेयी का समय आया, कैकेयी का समय आया कि वो मुंह दिखाई दे। तो कैकेयी ने पहले से ही कनक भवन बना के रखा था, सोने का महल, रत्नों से जड़ित महल बना के रखा था। हमारा महल तो सीमेंट कॉन्क्रीट से बनता है और पेंट से बनता है, वो रत्नों से बना हुआ स्वर्ण महल था जो खास तरह से डिजाइन किया गया था कि पति पत्नी राम सीता वहां पर रहे। वो सौंप दिया उनको मुंह दिखाई में। फिर सुमित्रा का नंबर आया, सुमित्रा ने क्या कहा कि लक्ष्मण मेरा पुत्र है, आज से मेरा पुत्र जो है वो आपका पुत्र होगा, मेरा पुत्र नहीं होगा, अपना मातृत्व जो है वो दान कर दिया उसको। हम लोग ना अभी ये बोले क्या कैसी कहानी है, कैसे समझे हम क्या उसका अर्थ क्या होता है, इसकी गहनता इसकी गहराई हम समझ नहीं सकते हैं। ये सब उच्च स्तर पे भावना के स्तर पे हो रहा है, आध्यात्मिक स्तर पे हो रहा है जो आम तौर पे विश्व में नहीं होता है। कभी भी कोई भी माता कभी भी एक स्वार्थ के हेतु भी अपना अधिकार नहीं छोड़ सकती है। और ये सब लोग क्या देख रहे हैं कि सीता को बेस्ट ऑफ बेस्ट सबसे उत्तम वस्तु जो है वो दी जाए, चाहे वो मेरी भी क्यों ना हो, वो देना चाहते हैं रखना नहीं चाहते। तो ये हुई सीता की मुंह दिखाई की कथा और कोमलता की कथा। तो प्रभु अभी उनको बता रहे तुम्हारे पैर इतने सुकोमल है, तुमने कभी महल के बाहर कदम नहीं रखा, वन तो दूर की बात है, वन में ऐसा होता है वन में वैसा होता है, सब जो भयंकर स्थिति बता दी उनको। और सीता कह रही है मैं तो आपके साथ वन में चलूंगी और आपके आगे चलूंगी, बोले आगे क्यों चलोगे? बोले रास्ते में जो कंकड़ काटे होंगे ना वो पहले मुझे छुपेंगे, फिर मैं उसका पाउडर बनाऊंगी और आपके लिए मुलायम बना दूंगी। देखो आप सोचो, इतने कोमल जिसके पैर है, जो पूं केसर भी उसको चुभते थे, नजरें भी उनको उष्ण लगती थी, वो कह रहे हैं कि मैं आपके आगे चलूंगी। जैसे गैयाओं ने भी ऐसा ही किया था, वो जब कृष्ण भगवान छाता और जूता लेने को तैयार नहीं थे तो गैया चारों दिशाओं में भाग के गई थी ब्रज में, और अपने खोरों से कूट कूट कर कांटे कंकड़ सब पत्थर शिला जो है वो बराबर टालकम पाउडर बना दिया था उन्होंने, ऊपर से दूध भी सिजा था उसके ऊपर, तो मुलायम ठंडा ठंडा मक्खन बना दिया था रास्ते में, कहीं भी चले जाओ ठंडक लगेगी मुलायम भी होगा। वो कह रहे सीता जिसके चरण इतने सुकोमल है कि मैं आगे जाकर रास्ता सुधारूंगी आपका, वन में, गली भी नहीं, घर के राजमार्ग पे नहीं, जंगल में जहाँ पर भयंकर ऐसे अनपेक्षित स्थितियाँ होती है, रास्ता और आप जो भी कहो जंगल के सघनता में। फिर वो उसका निश्चय देकर प्रभु प्रभावित हो गए, एक तरह से सीता जी का वो परीक्षा थी, कसौटी थी, वो पास हो गई उसमें। चलो ठीक है, जल्द से वलकल पहनो और चलो, यानी जल्द से तैयारी करो। फिर लक्ष्मण साथ में ही थे, कहा भैया जहाँ आप जाएंगे वहाँ मैं आपके साथ में रहूँगा। तो दो जन तय हो गए, फिर सुमित्रा के पास गए। सुमित्रा ने क्या कहा कि कभी भी ये याद मत करना कि मैं आपकी माँ हूँ, और सर्वस्व अपना राम की सेवा में अर्पण करना, स्वयं के लिए कुछ भी नहीं सोचना, केवल राम का सौहार्द, राम का सुख, यही आपके जीवन का परम उद्देश्य, एकमय उद्देश्य होगा। ऐसे सब करके थोड़ी बड़ी मीटिंग करके आर्य सुमंत के पास गए, गुरु वशिष्ठ के पास गए, सबको ये खबर सुनाई, उनको लेकर फिर वापस कैकेयी के भवन में आए, राजवस्त्र उतार दिए, राजअलंकार उतार दिए और सीधे वस्त्र पहनकर आए। कैकेयी इतनी दुष्ट थी, दुष्ट बन गई थी उस समय तक, कि वलकल तैयार रखे थे उन्होंने। जैसे हम किसी को देना उपहार देना या पारितोषिक गिफ्ट ना, कि प्रथम क्रमांक प्राप्त हो गया तो हम उसको उपहार देते हैं, पारितोषिक देते हैं, वैसे उस रूप में उन्होंने वो वलकल तैयार रखे थे और राम को वलकल दे दिए। बोले ये लो और जल्द से जल्द चले जाओ यहाँ से, और लक्ष्मण को भी दिया, सीता को भी दिए। लक्ष्मण और राम को वलकल के विषय में परिचय था क्योंकि वो गुरुकुल में रहे थे, उनको पता है जंगल में लकड़ी तोड़ना कैसा होता है, जंगल में क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, कंदमूल बेरी सब पता था उनको। सीता देवी तो राजकुमारी थी, उसको पता नहीं चलता कि कैसे पहनना है उसको। तो कह के कहते हैं मैं आपको दिखाती हूँ कैसे पहनना है, और पहनाने लगी उसको। तब दशरथ चीख उठे कि तुमने तो राम के लिए वरदान मांगा था कि वो वन में जाएगा, सीता को क्यों वलकल दे रही हो? बोले मैंने दे रही है, वो ही मांग रही है। इतनी दुष्टता की बातें हो रही है, कैसे भी करके उसको वलकल पहनाया। पूरी तब तक अयोध्या की जनता वहाँ इकट्ठा हुई थी, सब लोग कोस रहे थे कि कैसी पत्नी है ये, कैसी कुल घातिनी है, कैसी राजद्रोहिणी है, कैसे सुयोग्य राजा राम को वनवास भेज रही है, कितना आतंक कर रही है, देश के हित में, जन के हित में, विश्व के हित में कितना अकल्याण कर रही है। लेकिन प्रभु उसी समय निकले और फिर राजा ने आर्य सुमंत्र जो है उनके तो मित्र भी थे बचपन से और प्रमुख मंत्री भी थे, उनको आदेश दिया कि क्योंकि वो बहुत रो रो के बिलक बिलक के रो रहे थे, तो उस समय फिर कौसल्या उनको मिलने आई। उन्होंने कहा कैकेयी को कि मैं अभी तुम्हें पत्नी के रूप में त्याग देता हूँ, आज से तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, ऐसे दुष्ट और क्रूर स्त्री के साथ मेरा रिश्ता हो ही नहीं सकता, मेरा जीवन तुम ध्वस्त कर रही हो, इसलिए मैं आपको त्याग करके वो सेवकों की सहायता से रोते बिलकते गिरते गिरते कौसल्या के भवन में ले जाओ। वहाँ पहुँचे और वहाँ पर कौसल्या ने उनको बहुत कोसा, क्रोध से बहुत सारी बातें कही। तभी व्याकुल होकर दशरथ ने कहा कौसल्या आप मेरी पत्री हो और मेरे जीवन का बहुत भयंकर प्रसंग है ये, मैं आपसे सहायता चाहता हूँ इस भयंकर प्रसंग में, मुझे आप और तोड़ो नहीं, मैं पहले से टूट चुका हूँ। तब अपने आप को संभल कर कौसल्या ने क्षमा मांगी, पतिदेव मैं आपकी क्षमा मांगती हूँ, मुझे पता नहीं चल रहा मैं क्या बोल रही हूँ, इतना दुख हो रहा है। कहते मैं समझ सकता हूँ आपका दुख क्या है, वो दुख मैं भी झेल रहा हूँ, लेकिन मुझे इस वक्त आपकी सहायता की आवश्यकता है, इसलिए मैं कैकेयी का महल छोड़कर आपके महल में आया हूँ। तो क्षमा मांगती है उनसे, तो कहती है कि मुझे क्षमा कर देना। तो उस समय एक तरफ से क्या हो रहा है ना, यहाँ से वो जा रहे हैं, अपने महल से वो देख रहे हैं कि प्रभु राम जा रहे हैं, बस जमता रोती हुई बिलखती हुई छाती पीटती हुई जा रही है। तो उस समय दशरथ महाराज कई कई कौशल्या को एक कहानी बताते हैं, बाद में बताते हैं, उधर नहीं बताते हैं। तो फिर सुमंत को लेकर आप चले जाओ, फिर वो बहुत लंबी कहानी है, मैं कुछ संक्षेप बता रहा हूँ। तो सब जनता जाती है और कहते हैं कि इनको रथ से छोड़ के आओ वन तक। तो वो रथ से जाते हैं और सारी जनता कहती है कि वो भी सीता भी देवी भी कहती है कि आप जहाँ हो वही मेरे लिए अयोध्या है और आप जहाँ नहीं हो वो मेरे लिए वन के समान है। अगर मैं आपके छोड़ के पीछे रहती हूँ तो ये वन के समान हो जाएगा, और अगर आपके आपका साथ है तो वन भी मेरे लिए अयोध्या से भी अधिक बढ़कर है, क्योंकि मेरे लिए अयोध्या या वन इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए आपका होना या न होना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आई डोंट केयर, मैं किसी की परवाह नहीं करती हूँ, आपका संग हो तो सब स्वर्ग के सुख मेरे लिए उपलब्ध हैं। इस प्रकार से वो चलने लगती है। फिर वो सब जनता भी यही कहती है कि अगर राम राजा नहीं हो रहे हैं तो अयोध्या जैसे कंटक वाले वन में कौन रहेगा। राम के बिना अयोध्या भी एक कांटों से भरी हुई दुख भरी नगरी होगी, ऐसे भयानक नगरी में कौन रहना चाहेगा। हम जहाँ राम रहेंगे वहाँ पर कंदमूल रह के झोपड़ी में जमीन पे सोएंगे, झोपड़ी में रहेंगे, जो करना है करेंगे, नदी में स्नान करेंगे, कंदमूल खाएंगे, हाँ कोई पकवान न पकाया हुआ अन्न नहीं खाएंगे। जहाँ जैसे राम रखेंगे उनके साथ रहेंगे वही हमारे नंदनवन होगा। तो बड़े बूढ़े नन्हे नन्हे बच्चे औरतें सब लोग अपना जो है वैसे ही जिस वस्त्र में पहने वैसे निकल रहे हैं, ऐसा नहीं कि सामान वामान लेके बांध के निकल रहे हैं, जैसे है वैसे ही निकल रहे हैं एक वस्त्र के ऊपर। और सब लोग रोते रोते जा रहे हैं कि अभी कौन रहेगा इस नगरी में, रहने दो भरत को, रहने दो कैकेयी को, कोई नहीं रहेगा इसके अंदर हमारे अलावा, हम उनके अलावा। सब लोगों ना मिलकर भरत को भी दूषण दे रहे हैं, कैकेयी को भी दूषण दे रहे हैं। वो सब लोग सोच रहे हैं कि भरत के सहवाग के बिना इतना बड़ा षड्यंत्र नहीं हो सकता है, ये कोई छोटा छोटा प्लानिंग नहीं है, ये बहुत बड़ा बड़ी योजना है, ये बहुत सोच समझ कर की हुई, समझ बूझ कर बहुत दिनों में मनन की हुई कल्पना लगती है ये। और ये षड्यंत्र ऐसा है कि हमारा कोई संबंध नहीं है ऐसा लगने के लिए इन दोनों को पहले से ननिहाल भेज दिया है, ताकि लगे नहीं कि भाई इनका भी कुछ हाथ है इसके अंदर। लेकिन जनता तर्क कर रही है सब लोग मिलकर कि भरत के बिना ये संकल्प हो ही नहीं सकता है। तो सब लोग भरत को भी गाली दे रहे हैं, भरत के विरुद्ध जनमत तैयार हो गया है, सब जनाधार जो है वो भरत के खिलाफ है, अभी राम के साथ है सब लोग, सबको ये भरत नहीं चाहिए हमको, शत्रुघ्न भी नहीं चाहिए, ये कैकेयी भी नहीं चाहिए, राज्य भी नहीं चाहिए हमको, जहाँ वन में राम रहेंगे वहां पर हम जाएंगे। सब लोग चल रहे हैं, प्रभु समझा रहे हैं अरे आप यहाँ रहो, मैं 14 वर्ष कोई लंबा कालावधि नहीं है, मैं जल्दी लौट के आऊँगा आपकी सेवा में, मैं आपका ही सेवक हूँ, आपसे दूर नहीं हूँ, मुझे पिता के वचन पालन करने के सहायता कीजिए, मुझे वन में जाने का आदेश मिला है, आप लोग शहर में रहो। लेकिन जनता नहीं सुन रही है, वो भावनाओं का वेग ऐसा है ना, वो सैलाब की तरह है, वो कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, प्रभु राम भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, वो समुद्र लेके जा रहे हैं उनको, बस जल्दी जल्दी ले चलो। यही प्रसंग जो है ना, वो जब भी कृष्ण बलराम को नंदगांव से ले जा रहे हैं तो ये प्रसंग वहाँ पर भी आता है। सारी ब्रजवासी जनता जो है वो रो रही है, बिलख रही है, गिर रही है, रथ के सामने लौट रही है कि हमारे ऊपर रथ ले जाओ, लेकिन हमारे जीवित में आप कृष्ण बलराम को मथुरा नहीं ले जा सकते। वो भी कह रहे हैं हमारे ऊपर रथ ले जाओ, सभी के ऊपर रथ चलाओ, हमको नहीं जीना है, अगर राम नहीं है तो हमको नहीं जीना, हमको वहाँ जाना नहीं, तो हमारी जिंदगी ले लो आप, वध कर लो हमारा आप। तब ऐसा प्रभु को कहते करते हैं, प्रभु की हर लीला में ये लीला होती है, हर बार जब आते तो ये लीला होती है। कारण क्या है कि प्रभु संयोग का आनंद देते हैं फिर विरह का आनंद देते हैं। संयोग का आनंद से हजारों करोड़ों गुना अधिक विरह का आनंद होता है। विरह में जो संग का अनुभव होता है, उत्कट अनुभव, वो संग में भी नहीं होता है। देह संग में भी उतना आनंद नहीं होता जितना विरह में, याद में, स्मृति में होता है। वही आनंद उनको उन्होंने ब्रजवासियों को दिया, गोपियों को दिया, वही चैतन्य महाप्रभु ने नवद्वीप वासियों को दिया, वही आनंद उसके पहले प्रभु रामचंद्र ने अयोध्या वासियों को दिया। तो फिर गए और वहाँ पर एक नदी आई बीच में, तो रात तक रात हो गई थी, सब लोग ने विश्राम किया, सब थके हुए थे बेचारे, चल चल के रथ में थे, सब लोग लेट गए। भली सुबह ब्रह्मा मुहूर्त होने के पहले ही प्रभु रामचंद्र उठे और उन्होंने कहा सुमंत को, अरे सुमंत आप चलो, जनता उठने के पहले हम लोग यहाँ से चले जाएं। और क्या किया उस जमाने में, समझो आपको किसी को ढूंढना है तो पैरों के निशाने पे लोगों को ढूंढते थे। जैसे कालिया को मालूम पड़ा कि कालिया के लिए वो कूद गए जमुना जी के अंदर, तो वो समय बलराम जी का जन्मदिन मना रहे थे वो नंदगांव में। तो जैसे ही पता चला कि कालिया के लिए नदी में कूद पड़े हैं, पता नहीं क्या होगा, तो सब छोड़ छाड़ के भागे। तो कैसे ढूंढा उन्होंने कि कृष्ण कहाँ पर है, पैरों के निशान, गाय के पैरों के निशान। उस तरह से त्रेता युग में रथ के पहियों के निशान, ये उनका गाइडेंस था। तो अगर मैं जमीन से जाऊंगा तो रथ के निशान बनेंगे, तो जनता जो है अगर हम पहले भी जाएंगे तो भाग भाग के उसके पीछे भी जाएंगे। तो सुमंत को कहा कि आप अपना रथ जो है वो पानी में से निकालना, जहाँ जहाँ थोड़ा सा पानी है, ज़्यादा गहरा नहीं है, वहाँ से रथ निकालना। तो पानी आते रहेगा तो वो रथ का निशान जो है निकल जाएगा, तो जनता बहक जाएगी कि किस तरफ गए हैं, तो फिर लौट कर घर चली जाएगी। इसलिए बीच रात सुबह ऐसे जल में से निकाला रथ और तेजी से भाग गए जंगल में। कुछ देर बाद पंछियों की आवाज़ शुरू हुई, किलबिलाहट शुरू हुई। जब जनता उठी और देखा तो प्रभु रामचंद्र है नहीं, रथ भी नहीं, सुमंत भी नहीं है, कोई नहीं है। यहाँ वहाँ देखा, कहीं रथ के पहियों का निशान नहीं है, मानो उड़ गए हवा में। बहुत दुखी होकर लौटे सब लोग और ये आगे जंगल में चले गए और फिर वो श्रृंगवेरी नाम के राज्य में पहुँचे, जहाँ पर निषाद राज गुहा का राज्य था। अभी मैं आपको उनके विषय में सुनाना बहुत ज़रूरी है। निषाद राज गुहा ये रामायण का एक बहुत सुंदर किरदार है, बहुत सुंदर व्यक्तित्व है। और दो व्यक्तित्व बहुत ही श्रेष्ठतम हैं, एक है शत्रुघ्न और दूसरे हैं राजा गुहा। एक सेकेंड ना, ओके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पता नहीं कहाँ गुम हो जाता है, अभी अभी तो दिख रहा था। एक सेकेंड ना, मिल जाएगा, कोई बात नहीं, कहाँ जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एनीवेज, तो ये इनका जन्म जो है वो, हाँ, निषाद देश में उनका जन्म हुआ था। बचपन से उन्होंने अपने पिता से, अपने गुरु से राम की कहानी सुनी थी। ये उनसे कुछ 5-7 साल बड़े थे उम्र में, और बचपन से ही श्रवण करके हुए उनको प्रभु राम के प्रति इतना आकर्षण और प्रेम उत्पन्न हुआ, मित्रता भाव उत्पन्न हुआ। जैसे हमारी सत्यभामा देवी को बचपन से ही प्रभु की कहानी सुन सुनते ही, उधर द्वारका में थी वो सत्रजीत की बेटी के रूप में, केवल सुन के ही प्रभु से प्रेम हुआ। रुक्मिणी भी केवल सुन के ही, नारद मुनि आकर कहानी सुनाया करते थे, तो रुक्मिणी के मन में वो श्रृंगार भाव निर्माण हुआ, माधुर्य भाव निर्माण हुआ। वैसे ही गुहक बालक को प्रभु के प्रति प्रेम निर्माण हुआ। उनके पिताजी थे वो जंगली, यानी वो जो होता ना भिल्ल जाति के थे, वो वहाँ पे उनका राज्य था। वो जानते थे कि बार बार ये बालक कहता था मुझे राम से मिलना है। उसे पता नहीं है कि समाज का दर्जा क्या होता है, हम कौन है, वे कौन है, क्या मुमकिन है, नहीं मुमकिन है। तो बालक अपने सहज स्वभाव से बोल रहा है, तो पिताजी उनको बता नहीं पाते थे कि हम तो भिल्ल हैं, वो तो क्षत्रिय हैं, हम मिल नहीं सकते। लेकिन वो कहते हैं बहुत, अभी प्रभु है ना वो गुरुकुल में गए हैं, अभी वो बिजी हैं, अभी वो ननिहाल गए हैं, अभी वो यहाँ गए वहाँ गए, कर टालते थे बात उसकी। लेकिन फिर भी गुहक के मन में ये जो है वो इच्छा थी ना, वो बढ़ती गई। उसने क्या किया, एक बार सोचा कि मैं स्वयं अभी जाऊंगा अयोध्या में, जैसे भी हो वैसे जाऊंगा और मिल के आऊंगा प्रभु राम को, मेरे प्रिय मित्र को। तो उसने क्या किया, मृगाजिन का जूता बनाया। जंगल में क्या होता है, हिरण को मार के उसकी चमड़ी मिलती है, मृगाजिंद कहते हैं उसको, उसके जूते बनाए बहुत सुंदर। और एक बैम्बू है ना, बैम्बू का एक टोनीर बनाया बाण रखने के लिए अपने हाथ से, और उसको एक सुंदर बाम्बू के क्या करते हैं प्लेट कह सकते हैं, बास्केट कह सकते हैं, उस पर रख दिया। और इतने सारे गांव के जंगल के सुंदर वस्तुएं लेकर वो चलकर गए अयोध्या तक इन सारे उपहारों को लेकर। और वहाँ देखा कि वहाँ पर ना लाखों लोग थे, लाखों लोग प्रभु से मिलने के लिए, दर्शन करने के लिए। जैसे कि वो जा रहे हैं सड़क से, दोनों तरफ लाखों लोग खड़े हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आगे जाकर प्रभु से मिले, और सैनिक उनको रोक रहे हैं। आप सोच सकते हैं ना यहाँ पर कैसे होता है, जब कोई नेता आता है तो सिक्योरिटी होती है। तो उस लाखों की संख्या में एक गुहक भी थे, उसके हाथ में वो भेंट भी थी उनके लिए। वो संभाल संभाल के देख रहा था कि कैसे प्रभु तक पहुँचाएं। लेकिन जब जैसे ही वो भीड़ में वो वेट इंतज़ार प्रतीक्षा कर रहे थे ना, और वहाँ से फिर प्रभु का दर्शन हुआ, और जैसे ही रथ में बैठे हुए प्रभु रामचंद्र का दर्शन हुआ, इसमें इतना आवेग आया प्रेम का कि वो लाखों की संख्या को चीरते हुए, सेना को पार करते हुए, रक्षकों को पार करते हुए, उन पर हावी होकर वो प्रभु राम के पास पहुँच गया। और जब वो सेना, जो रक्षक सेना थी, उनको तोड़कर आगे जाने का प्रयास किया, तो सेना उनको मारने लगी, बाम्बू से पीटने लगी, डंडे से पीटने लगी। और प्रभु ने दूर से देखा कि सेना किसको पीट रही है, तो जोर से चिल्लाकर प्रभु ने कहा, मेरा मित्र है वो, उसे मत मारो। तब सेना सब चौंक गई, अरे इतना गांव का भिल्ल लगने वाला जंगली आदमी, और प्रभु कह रहे हैं मेरा मित्र है। उस समय तक ना प्रभु ने उनको देखा था, ना उसने प्रभु को देखा था। लेकिन प्रभु तो अंतर्यामी होते ना, सबके हृदय का भाव जानते हैं। प्रभु की आवाज सुनकर सब लोगों ने उसको पीटना छोड़ दिया। दशरथ को भी पता चला कि ये तो उसका मित्र नहीं है, लेकिन ये भी पता चला कि भाव को समझकर मेरा पुत्र जो है इसको बिना जाने ही मित्र कह रहा है, तो ये मेरा पुत्र राजा बनने योग्य है। ये वो बात थी जो मैं भूल रहा था बताने के लिए आपको, कि ये जब देखा तब वो समझ गए कि मेरा पुत्र जो है वो राजा बनने के योग्य है। तो फिर गुहक ने सारी जो भेंट वस्तुएं हैं वो प्रभु को दे दी, और राम ने उसको अपना पीताम्बर भेंट में दिया। देखो कितना सुंदर भेंट दिया। फिर राम ने अपने रथ पर उसको बिठाया, और जो भी उस दिन की सैर करनी थी वो अपने साथ लक्ष्मण सीता को लेकर रथ में बैठकर वो सैर की उन्होंने। उसके बाद में अपने महल में उसको रुकाया, और कहते हैं कई महीने तक गुहा जो है वो राम के निजी महल में रुका। और फिर दशरथ महाराज ने कहा, इनका ये प्रेम देखकर, राम का उसके प्रति, उसका राम के प्रति इतना जो घनिष्ठ प्रेम था, बिना जाने पहचाने इतना घनिष्ठ प्रेम देखकर दशरथ भी हैरान हो गए। उन्होंने राम को पूछा कि मैं भी गुहा को कोई भेंट दे सकता हूँ क्या, मुझे भी कुछ इच्छा है कि भेंट देने की। तो राम कहते हैं कि महाराज आप तो राजा हो, जो चाहे आप दे सकते हो, वही उस पर आपका अनुग्रह होगा, आपकी कृपा होगी। तो दशरथ ने गुहा को श्रृंगवेर का जंगल का राज्य दे दिया भेंट में, जैसे दुर्योधन ने दिया था ना अंग देश राज्य दे दिया, उस प्रकार से दशरथ महाराज ने श्रृंगवेर वन का राज्य गुहा को दे दिया, उसको राजा बना दिया, निषाद राज ऑफ श्रृंगवेरी। और फिर उसने राम को पूछा, निकलते समय फिर आपका दर्शन कब होगा? तो प्रभु कहते हैं बहुत जल्द होगा, मैं बहुत जल्द आपको मिलने आऊँगा। फिर भी गुहा पूछ रहे हैं, फिर भी कब आओगे आप, फिर भी कब आओगे? तो प्रभु कहते हैं कि बहुत जल्द आपको पता चलेगा, और बहुत जल्दी मैं आपके पास आऊँगा। तब तक आप संयम से मेरी प्रतीक्षा करना। तो तब से कहते हैं दिन और रात ये गुहा जो है वो प्रभु का प्रतीक्षा कर रहा था दिन रात। ये शबरी को कहा था ना गुरुजी ने, वो क्या नाम था उनका, मतंग ऋषि ने कहा था कि इसी जन्म में आपको प्रभु के दर्शन होंगे। वो इतनी भाव विभोर हो गई, इतनी भाव विभोर हो गई कि सब संत लोग जो है अपना यज्ञ वगैरह समाप्त करके वहाँ से चले गए, और दूर क्षितिज के भी पार हो गए, तब ये होश में आई, तब उसको याद आया कि मैंने पूछा नहीं कब मिलेंगे दर्शन, तो कल भी मिल सकते हैं, परसों भी मिल सकते हैं। तो 5 साल की थी वो, तो 5 साल से लेकर अपनी उम्र के 85 साल तक शबरी ने रोज तैयारी की, आ जाएंगे हम लोग, आप लोग होते तो 1-7 दिन तैयारी करेंगे, 15 दिन करेंगे, महीना भर करेंगे, फिर बोलेंगे अभी तो बहुत दिन हो गए, अभी तो पता नहीं कब आएंगे, तो छोड़ देंगे। वो तो 5 साल की थी, वो 10 साल की हो गई, 15 साल की, 25 साल की हो गई, 35 साल, 45 साल, 85 वर्ष की झुकी हुई आधी अंधी आधी बहरी बुढ़ी हो गई वो। लेकिन रोज फूल बिनती थी, रोज बेर बिनती थी, उसमें से चुनती थी चबाकर। ऐसा नहीं कि केवल उस दिन उसने जाकर चुने थे और जूठे बेर रखे थे, वो रोज ये कार्य करती थी 5 साल की उम्र से 85 साल की उम्र तक। तो रोज के कार्य के रूप में उसने उस दिन भी वो कार्य किया था और जूठे बेर बना के रखे थे उधर, सब आसन लगाया था, मार्ग जो है फूलों से भर के रखा था, सब गोबर बिछा कर अपना जमीन अच्छी तरह से बनाई रखी थी और प्रभु आए थे। उसी तरह से गुहा भी, क्योंकि प्रभु ने कहा था मैं आऊँगा, कब बताए नहीं, तो कभी भी आ सकते हैं, तो हर दिन दिन रात उसकी प्रतीक्षा करते थे। फिर राजा उन पर भी फिर जब आए, तो जब उन्होंने अपने प्रभु को, अपने प्रिय मित्र प्रभु को वनवासी वेश में देखा, तो भी वो भी रो रो के बेचारा बेहोश हो गया। उसको ये उम्मीद नहीं थी कि प्रभु आएंगे तो इस वन में, इस वेश में आएंगे, इसलिए प्रभु ने वो गुपित रखा। तो बहुत रोए वो, फिर उनको संक्षेप में कहानी पता चली कि ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे हुआ, बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि अभी आप यहीं रहना, मेरी पूरी सेना आपके साथ है, हम लोग सब मिलकर अयोध्या पे आक्रमण करेंगे, ऐसा सब वो भावना के वश में बोल रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पिताजी का आदेश है, वो पालन करने के लिए आप रहा है। तो वो कहते हैं कि अभी आप ना मेरे पास ही रहो और यही आपका राज्य है, आप ही राजा हो, मैं आपका सेवक हूँ, आपके ये वन में जो भी कुछ है वो सब आपका है, आप जो चाहेंगे मैं आपको दे सकता हूँ। उन्होंने वन के सारे बहुत सारे पदार्थ बनाकर लाए उनके लिए भोजन के लिए। तो दशरथ महाराज ने अपना रथ, अपने घोड़े भेजे थे आर्य सुमंत के साथ इनको चलाने के लिए। तो सारे अन्न पदार्थ जो है वो प्रभु ने दशरथ महाराज के घोड़ों को खिलाया, राजा के घोड़े हैं, इनको अच्छा अच्छा खाने की आदत है, ये राज घोड़े हैं, और केवल कंदमूल और फल खाए अपने लिए और गंगा नदी का जल पिया। आर्य समुद्र देखते रहे कि प्रभु का वनवास जो है, अभी यहाँ पर कोई देख रहा है नहीं, देख नहीं रहा है उनको, लेकिन निर्णय जो निश्चय होता है मर्यादा पुरुषोत्तम का, वो सर्वश्रेष्ठ है, उसमें कोई अंतर नहीं होता है, नजरों से ओझल होने के बाद में वो कुछ शिथिल नहीं होता है। तो फिर गुहक राजा ने उसके लिए बहुत सुंदर अपने हाथों से पर्णकुटी बनाई, अपने सारे सैनिक जो है उनके रक्षा में लगाए, और लक्ष्मण को कहा कि तुम अभी सो जाओ, क्योंकि लक्ष्मण भी बहुत दिन से चल रहे हैं। एक बात आपको बता दूं, जब से लक्ष्मण जी राम के साथ अयोध्या छोड़कर निकले, तब से 14 वर्ष होने के बाद, रावण को मारने के बाद जब लौटे, और लौटने के बाद उनका राज्याभिषेक हुआ, राज्याभिषेक होने के बाद राजा बनने के बाद में जो पहली सभा हुई, तब तक किसी भी रात को वो सोए नहीं। आप गिनिए कितनी रातें हैं, 14 वर्ष के ऊपर कुछ रातें गई, क्योंकि वो 14 वर्ष के पहले उसमें रावण का वध हुआ, फिर वहाँ से निकले, वनवास समाप्त नहीं हुआ था, उसके बाद में वो उनको देखना था कि प्रभु मेरे राज्य पद पर स्थापित हों, फिर मैं निश्चिंत हो जाऊँगा। तो जब पहली सभा चल रही थी तो लक्ष्मण जी जमाई दे रहे थे, बार बार जमाई दे रहे थे, तो सब लोग मंत्रीगण और कह रहे हैं कि कैसा भाई है ये, राजा की पहली सभा है उसमें जमाई दे रहा है। तो किसी ने उनको कहा कि आपको पता नहीं है 14 वर्ष से वो सोया नहीं है, पहली बार वो अभी सोने की स्थिति में आ गया है कि मैं सो सकता हूँ, अब मेरे प्रभु जो है वो अच्छी जगह पर बैठे, ये लक्ष्मण की बात है। तो लक्ष्मण अभी कुछ दिन के लिए भी सोए नहीं है, और गुहा को पता है, तो कह रहे हैं कि आज की रात सो जाओ, मैं और मेरी सेना यहाँ पहरा देंगे। कहते कि मेरे प्रभु जब वन में रह रहे हैं, कांटों में और पत्थर में चल रहे हैं, कंदमूल खा रहे हैं, तो मेरी माता का भी आज्ञा है और मेरा भी ये प्रण है कि मैं ये सो नहीं सकता। निद्रा देवी कई बार आई वहाँ पर, तो उनको उन्होंने अयोध्या भेज दिया कि वहाँ जाओ, वहाँ पर बहुत दुखी लोग हैं, उनको सोना जरूरी है, लेकिन मैं नहीं सो सकता। तो रात भर गुहा और लक्ष्मण जी ये चर्चा करते रहे, प्रभु राम का गुणगान करते रहे रात भर। और अगली सुबह ये भी मैंने कहा ना आपको, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको भरत के साथ युद्ध करने के लिए मेरी पूरी सेना दूंगा, तो प्रभु कहते हैं कि आपकी सेना तो बहुत छोटी सी है, अयोध्या की चतुरंगिणी सेना है। तो वह कहता है कि देखो हमारी सेना छोटे नंबर की होगी, फिर भी भरत हमारे जीवित काल में गंगा को पार करके आप तक नहीं पहुंच सकता है। अगर उसको पहुंचना ही है तो हमारे खून और मांस से भरे हुए नदियों के ऊपर ही उसको चलना पड़ेगा। इतना समर्पण दिखाया उसने। प्रभु उनको समझा रहे हैं कि आपको ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। तो उसके बाद में जब ये संवाद हो रहा था दूसरे दिन सुबह, तो एक स्त्री दिखाई पड़ी राम को। बुढ़िया थी वो, बहुत वृद्धावस्था में। तो वो प्रभु पूछते हैं कि कौन है ये? तो गुआ कहता है कि ये मेरी माता जी है। और जैसे ही पता चलता कि ये माता जी है, प्रभु रामचंद्र आंखों में बहते हुए नदियों की तरह आंसू लेकर भाग के उनके पास जाते हैं, वो चरणों में गिर जाते हैं। वो प्रभु को लेते अपने गोद में, वो बहुत प्रेम से दुलारती है। उनके मन में इतना वात्सल्य हो रहा है प्रभु के प्रति। वो बता रही है प्रभु को एकांत में, मन में, पास में, कि मैं तुम्हें गोद में लेकर दूध पिलाना चाहती हूँ, स्तनपान कराना चाहती हूँ। प्रभु एकांत में उनको बताते कि मैं 22 साल का नव युवक विवाहित पुरुष हूँ, इस जन्म में मैं आपका स्तनपान करने के योग्य नहीं हूँ। मुझे भी इच्छा है कि आपका स्तनपान करूँ, लेकिन ये अवस्था में मैं आपका स्तनपान करना अच्छा नहीं होगा। जब मैं अगले जन्म में आऊँगा, प्रभु कृष्ण के रूप में आऊँगा, तो आपका स्तनपान करूँगा। तो वो जो राजा गुहा की माँ है, वो फल विक्रयणी के रूप में आई। वो है ना फ्रूट वेंडर, जो नंद भवन में आई थी, नहीं गोकुल में आई थी, वो गोकुल में आई थी फल लेकर। और बालक कृष्ण जो है वो कुछ अनाज के दाने लेकर भाग भाग के गए, सब दाने गिर गए हाथ से, और पकड़ पकड़ के गए पहुँचे, तो उनका रूप देखकर इतना मोहित हो गई, उसने सारे अपने फल जो है वो दे दिए उसको। और भागवत में उतना ही लिखा है, लेकिन बाकी ग्रंथों में लिखा है कि वो कई बार आगे पीछे गई, कई बार घर गई, अपने बास्केट भर भर के फल लाई, कई बार कृष्ण गए और अनाज लेकर आए, सब गिर गए और दो तीन दाने दिए और सारे फल लिए। ऐसे कई बार करने के बाद 3 दिन ये सिलसिला चलता रहा, और तीसरे दिन जब वो अपना बास्केट भरने गई तो उसका बास्केट अलंकारों से भरा हुआ था। तो ये मत समझना एक बार दिए और दूसरी बार बास्केट अलंकारों से भर गया, ऐसा नहीं। उसने निरपेक्ष भाव से अपना सर्वस्व प्रभु को अर्पण किया, और उसके बाद में प्रभु ने उसका स्तनपान किया है, ऐसा वर्णन शास्त्र में आता है। तो वो है गुहा की माता। हरे कृष्णा। तो राम ने गुहा को आलिंगन दिया। ये देखकर वशिष्ठ जो ब्रह्म ऋषि थे, श्राद्ध देव मनु के काल से उनके पुरोहित थे, सर्वश्रेष्ठ विश्व के पुरोहित थे, ब्रह्मा के पुरोहित थे, उन्होंने भी गुहा को आलिंगन दिया। जैसे देखो एक मर्यादा होती है, सब लोग सबसे गले नहीं मिलते, ऐसा नहीं कि वो उनका राज शिष्टाचार है, फिर भी प्रभु ने उनको आलिंगन दिया। ये देखकर ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ ने भी उनको आलिंगन दिया। फिर राम ने गुहक को त्रिवेणी संगम प्रयाग से ही लौटा दिया, वहाँ तक वो चलते रहे। श्रृंगवीर राज्य से लेकर प्रयागराज, त्रिवेणी संगम इलाहाबाद तक वो चलते रहे। फिर प्रभु ने उनको जाने को कहा, फिर भी गुहक ने गुप्त रूप में अपनी सारी गुप्त यंत्रणा उसके पीछे लगाई। और प्रभु के पूरे वनवास के दिन में 3 बार खबर गुहा को आती थी, 14 साल तक। देखो आप, ये वर्णन कहीं नहीं दिया है, किसी जगह पर दिया है बहुत। गुहक ने अपनी गुप्तचर यंत्रणा को सेवा में लगा दिया, और एक दिन में कई बार राम की खबर गुहक को पहुंचती थी। राम ने गुहक को बताया, ये बात बहुत रोचक बात है निकलते समय, कि कलयुग में जब मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आऊंगा, तब तुम सदानंद विप्र के रूप में जन्म लोगे। तो जब जगन्नाथ मिश्रा, यानी नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु के पिताजी का नाम जगन्नाथ मिश्रा है, माता जी का नाम शची माता है, तो जगन्नाथ मिश्रा के घर जब निमाई का जन्म हुआ, यानी चैतन्य महाप्रभु जो आगे जाके बने, वो निमाई के रूप में बचपन में जाने जाते थे, वहाँ सदानंद विप्र जब भी जन्म हुआ तो वो उपस्थित थे। उन्होंने निमाई का जन्मोत्सव अपनी आँखों से देखा और भाव विभोर होकर अपने घर गए। जब घर गए तो रात्रि में उनको स्वप्न आया, और स्वप्न में उन्होंने निमाई बालक को प्रभु रामचंद्र के रूप में दर्शन दिया। स्वप्न में राम के रूप में रूपांतरित होते हुए देखा स्वप्न में, तो ये बालक मेरे ही प्रभु, ये जानकर सदानंद विप्र जो था वो भाव विभोर होकर बेहोश हो गए और नींद से जग गए। इतनी भाव विवरता हुई कि सपना टूट गया उनका, लेकिन दर्शन ठीक से कर लिया था कि वही बालक जो है वो मेरे प्रभु राम है। अगले दिन भाग के सवेरे सवेरे मिश्रा जी के घर पे गए, तब उनकी आंखों के सामने निमाई जो है उन्होंने उनको अकेले को प्रभु राम का दर्शन दिया। सबको तो बालक दिख रहे हैं लेकिन उसको प्रभु राम के रूप में दिख रहे हैं, और वहां पर वो बेहोश हो गया आनंद से। लेकिन प्रभु ने उनको उस दर्शन में बताया कि ये जो आप देख रहे हो ये किसी को आपको बताना नहीं है, इसलिए ये मेरे प्रभु रामचंद्र ये जानते हुए भी पूरे बाल्यकाल 24 साल तक वो किसी को बता नहीं पाए और वहीं रहे, लेकिन दिन रात वो प्रभु की लीला देखते रहे, लेकिन वो राम के रूप में उनकी लीला को देखते रहे। आचार्यों ने गुहा को सिद्ध भक्त माना है क्योंकि वे पूर्णतः अन्य अभिलाषा शून्य थे, उनके मन में कोई भी अभिलाषा नहीं थी, सब प्रकार के वासनाओं से वो मुक्त थे और निष्काम थे, ऐसा है सुंदर चरित्र रामायण में आता है। तो इसके पश्चात प्रभु जो है वो इलाहाबाद में गए और वहाँ पर भरद्वाज मुनि के आश्रम में गए, और भरद्वाज मुनि ने उनको खूब उनकी, वो मुनि थे वो त्रिकालदर्शी थे, अंतर्यामी सिद्ध महात्मा थे भरद्वाज मुनि, और भाग्य से हमारा गोत्र भरद्वाज है, हमारे कुल के ऋषि हैं वो, तो उन्होंने ही, वो वाल्मीकि मुनि के शिष्य हैं, और जब वाल्मीकि मुनि को वो प्रसंग हुआ था ना, जब भी वो नदी किनारे ध्यान में बैठे हुए थे और एक शिकारी आकर एक पक्षी, मादा पक्षी को या नर पक्षी को बाण मारता है, तभी संस्कृत के उच्च भाषा में काव्य में उन्होंने शाप दिया था उसको, समझ रहे आप? अभी वो जो पक्षी है नरमादि जो है वो संबंध कर रहे हैं, उसमें एक जो शिकारी है वो बाण मारता है नर को, और नर जो है चीखता हुआ प्राण छोड़ता है, वो चीखने की वजह से इनका ध्यान भंग होता है नदी किनारे, और वो काव्य में संस्कृत में उसको शाप देते हैं, तो उनको बड़ा आश्चर्य होता है, कह रहे मैंने शाप क्यों दिया, मैं से इतना विचलित नहीं होना चाहिए, ये तो होते रहता है जंगल में। और वो दुखी थे, उस समय ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उस समय भारद्वाज मुनि के साथ में, सॉरी वाल्मीकि मुनि के साथ में भारद्वाज मुनि थे, शिष्य के रूप में वहाँ पर उनका साथ दे रहे थे, उनके सामने ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा ने कहा तुमने जो शाप दिया है वो बड़ी सुंदर कविता है, और वो उसका काव्य उसका श्रेष्ठत्व देखकर मैं इतना प्रभावित हूँ कि मैं चाहता हूँ कि प्रभु राम का चरित्र आप ही लिखो। फिर उस समय नारद मुनि वहाँ प्रकट हुए, जो ब्रह्मा जी के पुत्र भी हैं, शिष्य भी हैं और इनके गुरु भी हैं, तो गुरु ने भी ब्रह्मा जी की बात में हाँ मिला दी कि मेरी भी आज्ञा है कि आप रामायण लिखो। उसके बाद में रामायण का लेखन हुआ है, और भरद्वाज जी उनके बहुत ही प्रिय शिष्य हैं। तो त्रिकालदर्शी होने की वजह से सब जानते थे कि ये क्या इतिहास हुआ है, किसकी वजह से राम यहाँ पर वनवास से बीच में आए हैं। तो वो कहते हैं उन्होंने उनका बहुत अच्छा सत्कार किया है, कंदमूलों से फलों से, और प्रभु ने भी उनका सत्कार किया, ऋषि मुनि से उनका पूजन किया है, और उनको पूछा है कि हमारे लिए वन में रहने के लिए उच्च जगह कौन सी है। तभी वो उनको वाल्मीकि के आश्रम में भेजते हैं। उसके पहले एक ऋषि हैं, उनका नाम है सर्वभंग ऋषि, वो भी वाल्मीकि मुनि के शिष्य हैं, उनके पास उनको भेजते हैं। तो सर्वभंग ऋषि जो है वो अपने तप से, उनको पता था कि प्रभु के दर्शन होने वाले हैं, तो प्रतीक्षा कर रहे थे। जब प्रभु आते हैं तो उस समय एक जगह लिखा है ब्रह्मा जी, एक जगह लिखा है इंद्र, अपना विमान लेकर उनको लेके जाने के लिए तैयार थे, ब्रह्मा लोक में ब्रह्मा और इंद्रलोक में इंद्र, अलग लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, इस विश्व के ब्रह्मांड के उच्च लोक में लेके जाने के लिए उनके लिए विमान तैयार था, और उस जगह के लोक के राजा या तो ब्रह्मा या तो इंद्र वो भी वहाँ व्यक्तिगत रूप में उपस्थित थे कि चलो मैं आपको लेने आया हूँ, लेकिन उन्होंने उनको रोक के रखा था कि उनको पता था कि प्रभु आने वाले हैं। तो प्रभु के आने के बाद उनका सत्कार करते हैं और कहते हैं कि मुझे ये लेने आए हैं लेकिन मैं उनको लौटा रहा हूँ, मैं आपके दर्शन से धन्य हो गया हूँ। तो उसी समय उनका निश्चय देखकर, हाँ उनका निश्चय देखकर, उनकी भक्ति देखकर प्रभु प्रसन्न हुए और वहीं से वैकुंठ से विमान आया और उनको वैकुंठ ले गया। तो क्या कहते हैं हम लोग, न स्वर्गम न पुनर्भवम, कौन सा श्लोक है वो, न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्तिर अहेतुकी त्वयि। भक्ति के जीवन में स्वर्ग लोक भी तुच्छ है, विश्व का राज्य भी तुच्छ है, स्त्री सुख धन सुख कीर्ति सुख ये सब तुच्छ हो जाता है। बड़े बड़े प्रलोभन भी क्या लोष्ट्रवत लगते हैं, लोष्ट्रवत नहीं पत्थर के समान लगते हैं। पराया धन पत्थर के समान लगता है, पराई श्री माता के समान लगती है। सब जीव जो है आत्मवत लगते हैं, यानी आत्मा के समान दिखते हैं, सच्चिदानंद स्वरूप दिखते हैं, भगवान के अंश रूप में दिखते हैं। ऐसी अवस्था में किसी प्रकार का प्रलोभन उन पर असर नहीं करता है। अभी हमारे लिए अगर इंद्र विमान लेकर आएगा हम कथा छोड़ के भागेंगे, विमान बैठ के जाए चले जाएंगे, लेकिन कथा सुनते रहेंगे इंद्र का सुख कब मिलेगा। लेकिन इतना बड़ा प्रलोभन स्वयं इंद्र ने दूत नहीं भेजा है, स्वयं आके खड़े हैं, फिर भी मन में इतनी दृढ़ भक्ति है कि वो भी उनको ललचा नहीं रही है, तो उनके सामने प्रभु ने उनका उद्धार कर दिया। जाने के पहले उन्हें कहा एक और हमारे सेविक साथी हैं सुतीक्ष्ण, उनके आश्रम में जाना। तो प्रभु उनके आश्रम में भी जाते हैं और उनका भी कल्याण कर देते हैं। उसके बाद में फिर वो उनके निर्देश के अनुसार वाल्मीकि मुनि के आश्रम में आते हैं, जो यहाँ से 40-45 किलोमीटर दूर है। वाल्मीकि मुनि का आश्रम वो यमुना जी के किनारे में है। तो वहाँ पर उन्होंने भरद्वाज मुनि ने कहा था कि यहाँ जो त्रिवेणी संगम है, एक तरफ से गंगा जी आ रही है, एक तरफ यमुना जी आ रही है, तो जिस तरफ से यमुना जी आ रही है उसके किनारे किनारे आप आगे चले जाना। त्रिवेणी संगम के वहाँ पर जो तीन नदियाँ मिलती है, एक नीचे से मिलती है सरस्वती, दो ऊपर से मिलती है, और आगे एक नदी बनकर चले जाती है। यमुना जी अपना नाम छोड़ देती है और गंगा रूप बन जाती है। यमुना जी अपना नाम छोड़कर भाव को स्वीकार करती है और गंगा जी का नाम चलता है आगे। यमुना जी की महानता है, यमुना जी नाम नहीं चाहते, सेवा चाहते केवल। यमुना जी ने अपना नाम छोड़ दिया और गंगा के रूप में सेवा में एक रूप हो गई वो। लेकिन जहाँ से आ रही है पहले से, उसके किनारे किनारे उल्टी दिशा में जाने को कहा उन्होंने। उन्होंने आगे कहा कि चित्रकूट नाम का सुंदर स्थान है, वहाँ पर आप चले जाए। तो वहाँ से आगे आगे आए तो आगे उनको वाल्मीकि के मुनि का आश्रम मिला, वो भी यमुना किनारे है। इसलिए वाल्मीकि मुनि के आश्रम में जाएंगे तो वहाँ पर यमुना किनारा मिलेगा आपको। आपको लगेगा कि यहाँ पर यमुना कैसे आई, तो वो उस कनेक्शन में आई। तो वहाँ पर उन्होंने कहा फिर कि आगे वाल्मीकि मुनि के आश्रम में जाने के बाद में उनको ये सलाह मिली कि उन्होंने पूछा कि हम कहाँ रहे, तो उन्होंने कहा कि यहाँ आगे जाओगे तो एक काले रंग का बरगद का पेड़ है, उसके पीछे चित्रकूट का पर्वत है और चित्रकूट विभाग है। वो उसका वर्णन करते हैं वाल्मीकि मुनि ने, बहुत सुंदर वर्णन, विस्तार में वर्णन दिया है कि कैसे यहाँ पर द्वेष भाव नहीं है, सारे प्राणी एक साथ रहते हैं, यहाँ पर निसर्ग सौंदर्य है, यहाँ पर कंदमूल फल फूल जल स्वच्छ वातावरण बहुत सुंदर है, यहाँ पर ऋषि मुनि निवास करते हैं, दिन रात अग्निहोत्र करते रहते हैं, मंत्रोच्चार चलते रहता है। तो सीता देवी बड़ी प्रसन्न हुई। उन्होंने ये भी कहा था कि मुझे वनवास जाने को लग रहा है, थोड़ा दुख हो रहा है, लेकिन मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि वन में नित्य संतों का संग मिलेगा, नित्य अग्निहोत्र होगा, नित्य उपदेश मिलेगा, नित्य सेवा करने को मौका मिलेगा, दिन रात हम सत्संग में रहेंगे और ये विश्व के जो कर्तव्यों से हम मुक्त होकर वहाँ पर दिन रात जीवन का जो परिपूर्ण उद्देश्य सत्संग है वो सिद्ध करते रहेंगे। उसका भी बड़ी प्रसन्न हो गई थी। तो उनके आदेश से फिर आगे चले और फिर आगे जाकर उन्होंने लक्ष्मण को कहा कि आप अपना कुटिया बनवा दो। तो लक्ष्मण ने वहाँ पर पर्ण कुटी बनाई और उनके लिए रहने का इंतजाम किया और वहाँ पर वो बसे। फिर यहाँ क्या हुआ, उन्होंने सुमंत को उधर से त्रिवेणी संगम से ही लौटा दिया। सुमंत जी बड़े दुखी थे, वो कह रहे थे कि मैं ना ये मुख लेकर खाली रथ लेकर अयोध्या में जा नहीं सकता, मुझमें इतनी हिम्मत नहीं है लोगों की नज़रों का सामना करने की, कि खाली लौट के आए उनको लेकर नहीं आए, बालकों को जंगल में छोड़ के आए, कितने दुष्ट हो तुम, इस प्रकार की भावनाओं को मैं झेल नहीं पाऊंगा। मैं भी आपके साथ ही रहूंगा, 14 वर्ष आपके साथ कंदमूल खाऊंगा, आपका संग करूंगा, आपकी सेवा करूंगा, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा लौट के। उन्होंने कहा कि नहीं, पिताजी बहुत कष्ट में होंगे, पिताजी के साथ में आप ही होंगे, आप ही उनकी देखभाल करोगे, आप लौट के चले जाना। तब ये लौट के आते ना तो अयोध्या का वर्णन वाल्मीकि जी ने किया है, कितना भयंकर वर्णन किया है। कहते लोग स्नान करना छोड़ दिए थे, दरवाजे खुले थे, कोई भोजन नहीं बना रहा था, किसी के घर में झाड़ू लोटा नहीं किया, वो साफ सफाई नहीं की, सब जगह कचरा फैला हुआ था, पक्षी रो रहे थे, पेड़ जो है वो सब पर्णहीन हो गए थे। जैसे हम लोग आंसू रोते हैं ना, हम लोग हमारे आंखों से आंसू आते हैं रोने में, वैसे पत्रों के पत्र क्या कहते हैं उसके पत्तों के रूप में पेड़ रो रहे थे। तो पत्ते सब झड़ रहे थे और सारे पेड़ जो है वो वृक्ष जो है पत्रहीन हो गए थे। इस प्रकार से कहते हैं भकास यानी भयानक अवस्था थी अयोध्या की। सब लोग दुखी है, प्राणी पक्षी मनुष्य बुजुर्ग बालक सब लोग ऐसे चित्रपट की तरह स्तब्ध थे, कोई खा पी नहीं रहे थे। और उतने वैसे में वो चले गए दशरथ को मिलने के लिए। दशरथ ने पूछा, बताओ मेरे पुत्रों के बारे में, बताओ मेरे पुत्र कैसे हैं, मेरी पुत्र वधु कैसी है। तो वो कहते हैं कि प्रभु राम ने आपके लिए दंडवत भेजा है और आपका क्षेम कुशल पूछा है और मुझे आज्ञा दी है कि आपकी रक्षा करें, आपकी देखभाल करें। फिर मेरी पुत्र वधु सीता देवी कैसी हैं, उन्होंने भी आपको प्रणाम भेजा है और अपने पति की सेवा में लगी हुई है और वन में उनके साथ विहार कर रही है, कांटों में कंकड़ों में शिलाओं में चल रही है। फिर लक्ष्मण की क्या खबर है। तो थोड़े सुमंत जी रुक गए और उनको संकोच हो रहा था कि क्या कहूँ। फिर कहा, बताओ लक्ष्मण ने क्या कहा। तो उन्होंने कहा कि लक्ष्मण बड़े क्रोध में थे। लक्ष्मण ने कहा कि ऐसे पिता नहीं होना अच्छा है, मेरे पिता कामुक हैं, एक स्त्री के वश में आए हुए हैं, मूर्ख व्यक्ति है, दुष्ट है, क्रूर है। मैं आज से दशरथ को पिता के रूप में त्याग देता हूँ। आज से मेरे पिता भाई मातू सब कुछ मेरे भाई राम हैं, मेरे लिए दशरथ व्यक्ति जीवित ही नहीं है। ये सुनकर फिर वो बेहोश हो गए, कैसे भी करके संवारा उनको। फिर वो कहते हैं कि वो सही कह रहा है, इतना दुष्ट कार्य करने के बाद में इतने वचन कह रहा है, वो कुछ भी नहीं है, उनको मेरा वध करना चाहिए था। इस प्रकार की बातें हुई। फिर आगे चले, उतने में कैकेयी ने खबर भेज दी कैकेयी देश में, क्योंकि राजा बनना था ना, राज्याभिषेक की सामग्री तैयार थी। उसने कहा था कि इसी राज्याभिषेक की सामग्री से मेरे पुत्र भरत का राज्याभिषेक किया जाए। तो वो तो काम रुक गया ना पूरा, सामग्री वही रह गई पूरी राज्याभिषेक की। अभी उन्होंने भेजा बुलाने के लिए, कहते एक महीना लगा उसको आने के लिए। अभी इस समय जब राजा दशरथ को सुमंत मिलके आके बता रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, तो इतना वियोग हुआ दशरथ को, इतना वियोग हुआ, इतना दुखी थे वो, इतना दुन से रो रहे थे, इतने दिन वो सोए ही नहीं, रात दिन तक कई महीने बीत गए थे उस समय। और सुमंत आने के बाद वो विरह की अग्नि बहुत ज्यादा प्रज्वलित हो गई और इतना छाती पीट कर रोने लगे। कौशल्या को कहा, मैं इतना दुर्भाग्य हूं कि मेरे पुत्र को मैंने ऐसी भावना दी, ऐसा कार्य किया कि पुत्रों के मुख से ऐसे वाक्य निकल रहे हैं, मैं कितना दुर्भाग्य हूं। और बहुत रोने लगे राम की याद में, राम 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 कहने लगे। और कहने लगे, कौशल्या मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मुझे अब समझ में आ रहा है कि ये सब क्यों हुआ। मैंने कभी बताया नहीं आपको, मेरे जीवन में एक घटना हुई थी। जब मैं बालक था, युवा अवस्था में था, गुरुकुल में पढ़ रहा था, तो गुरुजी वशिष्ठ के कृपा से मैंने बहुत सारी विद्याएं सीख ली थी। उसमें एक विद्या थी ध्वनि लक्ष्य भेद, अर्थात लक्ष्य को ना देखते हुए केवल उसकी आवाज़ सुनते हुए उस पर बाण चलाना है, अदृश्य लक्ष्य पर। उसकी ध्वनि आएगी तो ध्वनि पे बाण छोड़ना है और वो लक्ष्य भेद करना है। ये कला कर्ण को भी अवगत थी, एकलव्य को भी अवगत थी, अर्जुन को भी अवगत थी, ऐसे ही बहुत योद्धाओं को, गिने चुने योद्धाओं को ये ध्वनि लक्ष्य भेद की कला अवगत थी। तो मैं उस कला को प्रैक्टिस करने के लिए जंगल में रात को जाता था। तो मैं एक समय जंगल में था, अंधेरा हो गया था और खास करके मुझे अंधेरे में मेरे इस कला का अभ्यास करना था। तो मुझे लगा कि नदी किनारे कोई हाथी जल पीने के लिए आया है, जंगली हाथी। तो मैंने वो आवाज़, उस आवाज़ के ऊपर ध्यान करते हुए बाण छोड़ा और मुझे हाथी की चीख की अपेक्षा थी, लेकिन मुझे मनुष्य के रोने की आवाज़ आई। अरे हाय हाय हाय, मैं मर गया, मैं मर गया। तो मैं भाग के उस आवाज़ की ओर गया अंधेरे में, तो देखा तो एक छोटा सा बालक जो है वहाँ पर गिर पड़ा हुआ है, खून से लथपथ है और उसके सीने में मेरा बाण है जो मैंने ध्वनि लक्ष्य भेद के रूप में छोड़ा है। वो बिलक बिलक के रो रहा था। वो बालक कह रहा है कि महाराज ऐसा लगता है कि मेरे जीवन काल अभी समाप्त हो गया है, जितना समय मेरे जीवन में लिखा था वो भी समाप्त हो रहा है, मुझे मरने का कोई दुख नहीं है, क्योंकि जीवन और मरण वो हमारे हाथ में नहीं होता है, विधि विधि के हाथ में होता है, उसकी इच्छा से जीवन मृत्यु का कार्यक्रम होता है। मुझे केवल चिंता है मेरे बूढ़े और अंधे माता पिता की, जो मुझ पर निर्भर है और मैं ही उनकी देखभाल करता हूँ, और आज अगर मैं बालक चला गया तो मुझे पता नहीं उनकी देखभाल कौन करेगा, तो कृपया मुझे आप उनके पास ले चलिए, पहले इस बाण को निकाल दीजिए, मुझे बहुत वेदना दे रहा है। तो दशरथ महाराज जानते थे, तो बालक दशरथ उस समय, कि मैं बाण निकालूंगा तो तुरंत उसकी मौत हो जाएगी, लेकिन वेदना भी उनको देखी नहीं जा रही थी। बालक बार बार बाण निकालने की बात कर रहा था, तीर निकालने की, तो उन्हें तीर निकाल दिया। उसके तीर निकालते कि पहले कहा बालक ने कि मेरे माता पिता बहुत प्यासे हैं, उनको जल लेने के लिए यहाँ आए, था आप उनको जल पहुँचा देना। बाण निकाला, तत्क्षण प्राण छोड़ दिए। वो श्रावण था, श्रवण बाण, और वहाँ पर प्राण त्याग दिए, और वहीं पर उसका देह छोड़कर जल लेकर वो वहाँ पहुँचे। उन्होंने बताया वहाँ पर पहुँचे, झोपड़ी में पहुँचे, तो उस समय वो ना अपने माता पिता को वो कावड़ी में लेके जाता था, कंधे पर बांबू रखते हुए, वो बांस रखते हुए, उसमें दो ऐसे आसन बना के उनको लेके चलता था। वो वन वन में भटकते थे, एक समय विश्राम कर रहे थे, तो जब पहुँचे तो उनको लगा कि मेरा बालक ही जल लेके आ गया। आ गए बेटे तुम बालक पानी लेकर? उन्होंने कहा मैं आपका बालक नहीं हूँ, मैं दशरथ हूँ, राजपुत्र दशरथ हूँ, और पूरा कहानी सुनाई। तो बड़े क्रोधित हो गए वो, उन्होंने कहा कि आपने यहाँ आकर हमको सत्य बताया, जो भी कुछ हुआ सत्य बताया, इसलिए आप वहाँ जीवित रहे। अगर आप ये सत्य अगर न बताने के भाव में होते तो मेरे बालक की मृत्यु होती, आपकी भी वहाँ मृत्यु हो जाती। आप मुझ तक पहुँच पाए क्योंकि आप सत्यवचनी हो, और आपका निर्धार था, निश्चय था कि आपको मुझे आकर ये बताएं कि सत्य क्या है, इसलिए आप जीवित हो। लेकिन फिर भी हमारा एक से एक में आसरा था, हमारा बालक, वो आपने अपने खेल खेल में छीन लिया मुझसे। अभी आपको ले चलो, हमें अपने बालक का दाह संस्कार करना है। तो दशरथ महाराज ने पूरी लकड़ियाँ इकट्ठा की, चिता रची, और उन्होंने आदेश दिया हमको भी उस पर रखो और अग्नि चला दो। इस तरह से दोनों माता पिता ने भी प्राण त्याग दिए, और बालक तो ऑलरेडी प्राण त्याग चुका था। लेकिन जाते जाते चिता पर बैठकर उन्हें शाप दिया, तुम भी तुम्हारे जीवन में अपने पुत्र की याद में रोते 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 देह त्याग करोगे। तो ये कहानी दशरथ ने कौशल्या को उस रात को सुनाई जिस दिन सुमंत लौट के आए, और उसी रात को ये कहानी सुनाने के बाद तुरंत ही प्राण त्याग दिए, छाती छाती पीट कर राम 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 पुकारते हुए प्राण त्याग दिए। अभी एक भी पुत्र पास में नहीं है, दो पुत्र वन में हैं, दो पुत्र ननिहाल गए हुए, पत्नी केवल पास में थी। तो पुत्र के हाथों में संस्कार होना है, तो कौशल्या ने और सुमंत ने और वशिष्ठ ने सबने निर्णय लिया कि इनको वो जो होते हैं ना तेल, कई प्रकार के तेल होते हैं, उसके अंदर शरीर को रखा जाता है कई दिन तक, आज भी वो विधि है, उसको एम्बामिंग कहते हैं। तो वो तेलों में उनको रखा गया और एक महीने तक वैसे रखा गया। भरत को खबर भेजी, खाली इतना ही भेजा कि आप तुरंत लौट के आओ। तो उनको लगा कि भाई मेरे पिताजी को प्रभु रामचंद्र का राज्याभिषेक करने की बहुत आतुरता है, इसलिए मुझे जल्दी बुलाया है। तो बड़ी खुशी खुशी लौट के आए वो। लेकिन भरत भी जब लौट के आए तो उन्होंने उसी भयंकर अयोध्या की अवस्था को देखा। जैसे भरत पहले लौट के आता था कभी, तो सारी जनता स्वागत के लिए रस्ते में आती थी, सुगंधी जल का छिड़काव करते थे, फूलों का वर्षाव करते थे, स्वस्ति वचन गाते थे, ब्राह्मण आते थे, बहुत खुशियाँ मनाई जाती थी। अभी वो लौट के कहीं से आते थे, इस समय एक भी व्यक्ति रस्ते पर नहीं है, सब लोग अपने घर पे चित्र की तरह बैठे हुए हैं, कोई खा नहीं रहा, पी ना रहा है, सब दुखी है, पत्ते झड़े हुए। सब भयंकर दर्शन किया, और वैसे वो पहले अपने माता को मिलने गए। माता एकदम आनंद से उठी, बोले आए तुम बेटा, आए, तुम्हारा राज्याभिषेक करने का मेरा विचार है, तुम्हारा राज्याभिषेक होगा। को बड़ा आश्चर्य हो गया, क्यों, कहाँ है मेरे भ्राता, वो सबको पूछ रहे हैं। अरे मेरा, मैं आने के बाद मुझे मिलने के लिए मेरे पिताजी आया करते थे, मेरे बड़े भैया आया करते थे, आज ना राम आए, ना लक्ष्मण आए, ना पिताजी आए, क्या हुआ, कहाँ है सब लोग। तो हंसते हंसते वो उसने कहा कि बेटा मैंने तुम्हारे पिताजी से दो वरदान मांगे थे, आपको राजा बनना है और राम को वनवास पे जाना है। तो वहीं से भयंकर क्रोध आया। फिर बाद में पूछा कि मेरे पिताजी कहाँ हैं, तो बताया कि वो आपको राम का नाम लेते लेते शरीर त्याग दिया। इतना क्रोध आया भरत को, इतना क्रोध आया, मैं अभी आपको माँ के रूप में त्याग देता हूं, आप माँ नहीं हो, कुल घातिनी हो, आप राक्षस से भी भयंकर हो, ऐसी माता प्राप्त होना मेरे लिए बड़ा दुर्भाग्य की बात है जो अपने पति का वध करने के लिए कारण बनी हुई है। मैं भी मेरे प्राण त्याग दूंगा, ऐसी माता के कोख में जन्म लेकर जीवन जीने के बदले में मैं भी मेरे प्राण त्याग दूंगा, अगर मेरे प्रभु यहां पर नहीं है, मेरे पिताजी नहीं है, मेरा सर्वस्व नष्ट कर दिया आपकी इच्छा के कारण। ऐसे बहुत भयंकर कठोर शब्द का उच्चारण किया उन्होंने और कह के बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे बेटा मैंने तुम्हारे हित के लिए सब कुछ किया। अभी भी उसी भ्रम में है वो कि मैं बड़ा कल्याण कार्य कर रही हूँ मेरे पुत्र के लिए। फिर वो महाराज दशरथ के पास गए, कौशल्या के पास गए, सब वृत्तांत सुनाया उन्होंने और फिर सबकी मुलाकात हुई, सबको उसने पूछा, सब लोग कुछ संशय से देख रहे हैं, है ना, स्वाभाविक है ना कि अरे दूर तो है लेकिन ये भी सहभागी है, इसमें नाटक तो कर रहा है लेकिन कई कई के षड्यंत्र में ये पूर्ण तरह सहभागी है, इसलिए कुछ लोग ऐसा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, कुछ वैसा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। एक बड़े संभ्रम का वातावरण था, पूरा बड़ा दूषित वातावरण था अयोध्या में, जो वैसे घुटन सी हो रही थी उसके अंदर, ये सबकी नजरों को सामना करना, सबकी भावनाओं को समझ रहे हैं वो। तो फिर वशिष्ठ मुनि और सुमंत आर्य सबकी मीटिंग हुई और उन्हें पहले कहा कि पहले दाह संस्कार किया जाए, तो तेल के वो जो हौद था उसमें से वो शरीर निकाला और भरत के हाथों उनका दाह संस्कार किया गया, को तर्पण किया, श्राद्ध कर्म किया, सब लोग बड़े दाह संस्कार में भी पूरी जनता लौटी हुई है वहां पर, लेकिन सब लोग संशय के रूप में उसको देख रहे हैं। उसके बाद राज्यसभा बैठी राजा के बिना, गुरुजन वशिष्ठ मुनि ऋषिगण और मंत्रीगण बैठे और भरत जी को उन्होंने कहा कि देखो अयोध्या में पूरा अराजक छा गया है, कोई किसी का कुछ काम नहीं कर रहा है, सब लोग संशय में, दुख में, क्रोध में, प्रतिशोध की भावना में है। इस समय अयोध्या के राजगद्दी पर अभी एक ही व्यक्ति योग्य है, वो भरत है, उसको राजगद्दी पे सौंपना चाहिए। तो सभा में सब सर्वसम्मत हो गए कि ये बात सही है, अभी भरत ही योग्य है सबके। तो भरत फिर उठे, आपने कल देखा ना, भरत सबको प्रश्न किया, क्या आप मुझे बताइए कि आपने सबकी सम्मति के साथ में निर्णय लिया था, हमारे पिताजी महाराज दशरथ ने आप सबकी सभा में निर्णय लिया था कि प्रभु राम ही सबके योग्य हैं राजा बनने के लिए, फिर एक एक काम वास्ता में वश श्री लंपट व्यक्ति के कहने पर ये राज्यसभा का निर्णय कैसे आप टाल सकते हो, क्यों आपने टाल दिया, आप में से किसी ने विरोध क्यों नहीं किया इस बात को, क्या आपको लगता है कि मैं मेरी माता के षड्यंत्र में सहभागी था, राजा बनने का इच्छुक था, मैं आजीवन प्रभु राम मेरे भैया राम का सेवक हूं और सेवक ही रहना चाहता हूं, मुझे इस राजगद्दी को स्वीकारने में कोई भी रुचि नहीं है, मेरा आप सबको ये सुझाव है, अगर आपको आपके पास मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं है कि आपने सर्वसम्मत किया हुआ निर्णय, राजा के निर्णय बदलने पर आपने विरोध क्यों नहीं किया, इसका उत्तर आपके पास नहीं है तो आप मेरा निर्णय सुन लो, हम सब मिलकर वन में जाएंगे, जो उनके राज्याभिषेक की सामग्री बनाई गई थी, तैयार की गई थी और आप मुझे वो अभी करना चाहते हैं राज्याभिषेक, वो सारी सामग्री लेकर हम वन में जाएंगे, चतुरंगिणी सेना लेकर जाएंगे, गऊओं को लेकर जाएंगे, ब्राह्मणों को लेकर जाएंगे और वहीं वन में प्रभु राम का राज्याभिषेक करेंगे। तो सब लोग सम्मत हो गए, सब प्रजा ने भी कहा सही है सही है सही है, ये बात सही है, हम सब लोग आपके साथ आएंगे। तो कहते उसमें भी बहुत समय लगा, उन्होंने सेना को जुटाया, घोड़े जुटाए, गऊओं को जुटाया, दक्षिणा सबको सामग्री जुटाई और सभी वो रथों पर रखी और सब लोग कहते एक कुछ समय के लिए वो सब लोग गए और फिर राजा गुहा की उनकी मुलाकात हुई। अभी क्या हुआ, वो सब जा रहे हैं, आर्य सुमंत है और तीनों जो विधवा माताएं हैं वो जा रही हैं, सारी अयोध्या जैसे जा रही है, सारा सैन्य भी जा रहा है, रथ में बैठकर शत्रुघ्न और भरत जो है वो भी रथ में बैठकर जा रहे हैं और श्रृंगवेरी जब पहुंचते हैं, श्रृंगवेर जहां पर दशरथ महाराज ने गुहा को राज्य दिया था वहां पहुंचते हैं तो दूर दूर तक वो ना वो रथों के पहियों की घर 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 आवाज आती है, इससे पता चलता था उस समय की सेना आ रही है, इतना ध्वनि आता था, हमको पता था ना कि गाड़ी जा रही है, ट्रेन जा रही है, हवाई जहाज जा रहा है, इसका एक विशिष्ट आवाज़ होती है, तो लोग पहचानते कि क्या हो रहा है। तो वैसे सेना आने का आवाज़ आने से वो गुहा राजा के सैनिक सतर्क हो गए और सब पेड़ों पर चढ़कर देखने लगे कि दशरथ का पुत्र जो भरत है वो चतुरंगिणी सेना लेकर ध्वज फैलाता हुआ इस ओर आ रहा है। तो उन्हें खबर दी राजा गुहा को, सबको लगा कि इसने माता के साथ षड्यंत्र करके राम को वन में भेज दिया, पिता की मृत्यु हो गई, अभी वो अपने रास्ते का काटा राम जो है उसको परमानेंट नष्ट करना चाहता है, उन्हें अपना अबाधित राज्य भोगना है। 14 साल के बाद भी वो राम आए और विघ्न बने उनके राज्य में, राज्य सत्ता में विघ्न डाले, ये उनकी इच्छा नहीं थी। वन में अभी ना वो सेना के साथ है ना शस्त्र के साथ है, शस्त्र साथ है उनके साथ लेकिन सेना नहीं है, दुर्बल अवस्था में है, वो एक प्रकार का शापित जीवन वनवास में जी रहे हैं ताकि वहाँ पर समाप्त करना आसान है, इसलिए चतुरंगिणी सेना लेकर यहाँ पर आके राम का वध करना चाहते हैं। तो जाकर खबर कर दी गुहा को, और गुहा ने भी सोचा कि यही है, सब ने लेकर निर्णय लिया हम अपना प्राण बिछाएंगे, नदियां बहाएंगे यहाँ पर खून और मांस की, लेकिन भरत को राम तक पहुँचने नहीं देंगे हमारे जीवित काल में। और जब भरत आए वहाँ पर और संशयी भाव में उनको गुहा मिलने गए, और गले तो लगाया लेकिन दिल से गले लगाए नहीं क्योंकि संशय था मन में, तो भरत ने सबसे पहले कहा मेरे प्रभु कहाँ हैं, मैं उनको राज्य सौंपने के लिए आया हूँ, मैं यहाँ पर उनका राज्याभिषेक करने के लिए आया हूँ, मैं गुरु वशिष्ठ को लेकर आया हूँ, माताओं को लेकर आया हूँ, सब अयोध्या की जनता को, ब्राह्मणों को लेकर आया हूँ, सब सामग्री के लेकर आया हूँ, कहाँ है मेरे प्रभु। तो उन्हें बताया, तब उनको ये विश्वास हुआ कि भरत उस भाव में नहीं है, भरत सच्चे दिल का शुद्ध हृदय का भक्त है राम का, और वो किसी भी गलत उद्देश्य से वहाँ पर नहीं आया। तब चरणों में गिरे गुहा उसके कि महात्मा आप बड़े महात्मा हो, बड़े संत हो आप, आप जैसा भाई प्राप्त होना भारत राम के लिए बहुत भाग्य की बात है। और फिर उन्होंने राम का वर्णन किया कि कैसे यहाँ पर आए, और मैंने उनको वो बहुत सुंदर सोचा कि सुलाने के लिए बिछाना बना दूँ, उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा कि घास का बिछाना बना दो, और इसी पेड़ के नीचे वो मैंने घास का बिछाना बनाया, दोनों पति पत्नी सोए, लक्ष्मण और मैं रात भर पहरा देते रहे। तो आँखों में आंसू लेकर भरत वहाँ गए और उस शैया को वंदन किया उन्होंने, जहाँ पर वो घास रखा हुआ था, जहाँ पर प्रभु एक रात रुके थे, वंदन किया उन्होंने, उनको बहुत बहुत दुख किया, और दोनों ने बहुत गले मिलकर अश्रु बहाए। फिर उन्होंने बताया कि प्रभु राम कहाँ हैं, तो जब उन्होंने सुना कि मेरे प्रभु पर्णकुटे में रहे और रह रहे हैं, कंदमूल खा रहे हैं, और मैं रथ में बैठकर राजभोग खा रहा हूँ, अभी इसके आगे मैं पैदल चलूँगा, और सेना को कहा कि आप आए हो मैं पैदल चलूँगा, और गुहा के निर्देश में वो सब लोग पैदल पहुँचे, भरद्वाज मुनि को मिले। भरद्वाज मुनि ने भी उनको प्रश्न किया, क्या अभी राज्य प्राप्त होने के बाद संतुष्ट नहीं हुए तुम? देखो राजा भरद्वाज और संत भरद्वाज मुनि जो है उनको प्रश्न पूछ रहे हैं कि राज्य प्राप्त करने पर संतुष्ट नहीं हुए क्या, मैं राम को मारने के लिए यहाँ तक पहुँचे हो? तो कहते महाराज तो आप तो त्रिकालदर्शी हो, आप सब कुछ जानते हो मेरे हृदय में क्या भाव है। तो उन्होंने कहा मैंने आपकी परीक्षा ली, मैं जानता हूँ, मैंने सारे भविष्य भूत और वर्तमान को देख लिया है, मैं समझता हूँ कि आपका हृदय सच्चा है और आप प्रभु रामचंद्र को वापस लेने के लिए आए हों। तो वो बताते हैं वो कहाँ पर गए हैं, फिर वो उनके निर्देश में वहाँ पहुँचते हैं। कहते हैं कि भारद्वाज मुनि ने भरत जी का ये श्रेष्ठ भाव देखकर उनको कहा कि मुझे आपकी और आपकी सारी सेना की सेवा करने की इच्छा है, और उन्होंने मन में कामधेनु का ध्यान किया और कामधेनु को आह्वान किया और सेना और भरत और सारे जो मंडली आई थी वो सबकी सेवा में उन्हें पंच पकवान बनवाए और अच्छे अच्छे महल बनवाए एक दिन के एक क्षण के अंदर कामधेनु की इच्छा के अनुसार, कामधेनु की शक्ति के अनुसार, और एक रात पूरा उनको आनंद दिया। उन्होंने वन में भरद्वाज मुनि ने भरत को सेना सहित अच्छे अच्छे भोजन, अच्छे अच्छे सब प्रकार के आनंददायक वस्तुएं दी, और उनकी इच्छा के कारण मन ना होते हुए भी भरत ने उनका आदरातिथ्य स्वीकार किया, क्योंकि वो ऋषि हैं, उनकी इच्छा है उनकी सेवा करने की, तो उन्होंने हाँ कर दी, सब सेवा स्वीकार की, और अगले दिन उनके आशीर्वाद लेकर वो आगे चले गए। और फिर जाकर अभी वो भरद्वाज मुनि का इलाहाबाद त्रिवेणी का आश्रम पार करके चित्रकूट में आए, वाल्मीकि मुनि को मिले, वाल्मीकि मुनि के आश्रम के पीछे काले बरगद के पेड़ के पीछे ढूंढने लगे यहाँ वहाँ, तो उन्होंने क्या देखा वहाँ पर, उन्होंने वहाँ पर देखा कि एक सेकेंड ना, हाँ, उन्होंने वहाँ पर देखा कि वहाँ पर बहुत सारा धुआं निकल रहा है, पक्षी किलरव कर रहे हैं, श्लोकों की ध्वनि आ रही है, तो उनको लगा यही मेरे राम होंगे, क्योंकि राम मेरे इतने संत प्रिय हैं कि वो ऐसी जगह रहेंगे जहाँ पर संत रहते होंगे, तो निश्चित रूप में यहाँ ही पर होंगे। उन्होंने वहाँ पर बहुत ढूंढा उनको, तो किधर भी राम का दर्शन नहीं हुआ, और उनके साथ में वो भी थे गुहा, तो दोनों ने मिलकर वहाँ पर ना प्रभु के चरण चिन्ह देखे, और वो चरण चिन्ह देखकर भरत जो है वो चरण चिन्ह में लोटपोट हो गए, वो पहचान गए कि मेरे प्रभु राम के ये मेरे भैया राम के चरण चिन्ह हैं। सीता के चरण चिन्ह भी देखे, भरत के लक्ष्मण के भी देखे, तीनों के चरण चिन्हों में लोटपोट हो गए वो आंसू बहाते हुए, और फिर गुहा के निर्देश में उनको वो लोगों ने बताया कि वो दो कुटियां हैं वहाँ पर, अंदर एक कुटी में वहाँ पर रह रहे हैं, तो वहाँ पर एक पत्थर पर बैठे हुए राम और सीता दिखे और पैरा देता हुआ लक्ष्मण दिखा। उसमें में क्या हुआ कि जब ये लोग आ रहे थे तो वो जो ये पैदल आ रहे हैं हाँ, लेकिन सेना तो पीछे से आ रही है ना रथ स्मृत में बैठकर, तो वो पहियों के आवाज़ से लक्ष्मण सतर्क हो गए और भैया को कहा, भैया लगता है कोई सेना आ रही है। राम ने कहा हाँ सेना आ रही है, मुझे भी लग रहा है सेना आ रही है, कोई बड़ी सेना आ रही है, जाके पेड़ पे चढ़ के देखो कौन सी सेना आ रही है। तो लक्ष्मण धनुष बाण लेकर पेड़ पे चढ़े और देखा तो भरत का ध्वज लंबा फहराता हुआ आ रहा है, और हमारी चतुरंगी सेना, अयोध्या की चतुरंगिणी सेना जो है वो आ रही है। तो इतने क्रोधित हो गई वो, भैया लगता है भरत अभी संतुष्ट नहीं है, आपको वन में भेजकर संतुष्ट नहीं है, वो आपका वध करने के लिए पूरी सेना लेकर यहाँ पर आया है, अगर आपको मिलने आता तो वो अकेले भी आ सकता था, सेना लेकर आने की क्या जरूरत थी, वो सेना अगर क्यों आया था, सब क्या कहते हैं पूरे ऐश्वर्य के साथ वो अभिषेक करना चाहते थे, क्या कहते हैं शाही पद्धति से, तो सेना की होना जरूर, राजदंड होना जरूरी है, सेना भी जरूरी है। तो कहता भैया मैं उस लक्ष्मण को मैं उस भरत को यहीं पर समाप्त कर दूंगा, मेरे शास्त्र विद्या का ये परिपूर्णता होगी कि मेरे हाथों से भरत का वध होगा, और आपकी आज्ञा रही तो अयोध्या की सारी सेना भी मैं समाप्त कर दूंगा, मेरे बाणों का तेज आप देखेंगे आज, और मैं ये सब सहन नहीं करूंगा कि भरत आप तक पहुंचे। प्रभु राम जो है भरत को शांत कर देते हैं, लक्ष्मण को शांत कर देते हैं, वो कहते हैं जितना प्रेम तुझे मुझ पर है उतना ही प्रेम भरत का मुझ पर है, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है, आप शांत हो जाओ। फिर उतने में ना दूर से उनको भरत दिखाई पड़ते हैं, और दूर से दिखाई पड़ते हैं, दूर से ही वो अपने आप को झोंक दे जमीन पर झोंक देते हैं और बेहोश होकर दंडवत प्रणाम करते हैं, फिर उठते हैं, फिर भाग के आके राम के चरणों में आके गिर जाते हैं और इतना रोते हैं, इतना रोते हैं कि राम भी उनको गले लगाते हैं। फिर तब लक्ष्मण समझ जाते हैं कि जो मैंने इनके बारे में सोचा था वो कितना गलत था, और राम की उनकी ओर देखते हैं, वो भी नज़र झुका लेते हैं कि मैंने सोचा था कि आपके बैरी आपको वध करने आए, मैं उनका वध कर दूंगा, लेकिन इनके मन में आपके प्रति कितना श्रेष्ठ भाव है। वो आते ही बोल लेते हैं, प्रभु मैं भैया मैं आपको राज्याभिषेक करने के लिए आया हूँ, मैं वशिष्ठ मुनि सभी लोगों को लेकर आया हूँ। तो फिर वो पूछते हैं कि आप इतनी सारी बातें कर रहे हो, पिताजी कैसे हैं, पिताजी नहीं आए, वे दिखाई नहीं पड़ रहे, आप ही आगे दिखाई पड़ रहे हो। तो पिताजी का दुखद निधन का वर्णन उनको सुनाते हैं, क्योंकि उतने में उनकी जो तीन माताएं हैं वो सफ़ेद वस्त्र में सामने आती हैं, तब उनको और शंका होती है, तब वो मृत्यु की वार्ता उनको सुनाते हैं। तो प्रभु राम वहाँ पर बेहोश होकर गिर जाते हैं, बहुत देर बाद भरत उनको संभालते हैं और कहते हैं कि मेरे पिताजी इन्होंने इतना अच्छा संस्कार दिया, इतना अच्छा प्रेम दिया, उनकी वजह से हमारा अस्तित्व है, उनका संस्कार हमारे ऊपर है, ऐसा पिताजी का बहुत गुणगान करते हैं। और फिर दोनों मिलकर जाकर नदी में जाकर उनके लिए जलांजलि अर्पण करते हैं। और जलांजलि अर्पण करने के बाद रात भर बहुत जोर जोर से रोते हैं, तो जो गुहा के सेवक हैं वहाँ पर वो समझते हैं कि ये दोनों पिता की याद करते हुए रोते होंगे। उसके बाद फिर भरत राम कहते हैं कि मैं इतना दुर्भाग्य हूँ कि मेरे पिताजी का तर्पण करने का भाग्य मुझे नहीं मिला, आप बड़े भाग्यवान हो कि आपने उनका दाह संस्कार का भाग्य प्राप्त किया। ऐसे कहते हैं कि प्रभु ने वहाँ पर भी तिलांजलि दी, उनको जलांजलि दी है, और आगे जब दंडकारण्य में गए हैं तो रामकुंड पे उनका श्राद्ध किया उन्होंने। फिर उनका संवाद शुरू होता है, तो भरत भी अपना निश्चय वहाँ पर प्रकट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये समय आपके वन में होने का नहीं है। वानप्रस्थ कब होता है? जब आपके गृहस्थी पूर्ण होती है, बालक बड़े होते हैं, राज्य करने के योग्य बनते हैं, तब जाकर आप वानप्रस्थी हो सकते हैं। तो आप ऐसा कीजिए, आपको पिताजी ने ये तो आज्ञा दी थी कि आपको वन में रहना है, कि वो 14 साल आप बाद में रह सकते हो वन में, अभी आप लौट के आइए, राज्य संभाल लीजिए, अपना राज्य कारोबार कीजिए, जब वृद्धावस्था होगी तब 14 वर्ष वन में रहिए, जब आपके बालक बड़े होंगे तब उनको राज्याभिषेक कीजिए, सिंहासन पर बिठाइए, फिर जंगल में चले जाइए। तो राम कहते हैं कि पिताजी ने अयोध्या का राज्य आपको दिया है और दंडक वन चित्रक वन का राज्य जो है मुझे दिया है, मुझे यहाँ का राजा बना दिया है, यहाँ का राज्य सौंप दिया है, आपको अयोध्या का राज दिया है। तो भरत का कहते हैं कि जो व्यक्ति स्त्री लंपट है, जो व्यक्ति मूर्ख है, जो व्यक्ति स्त्री के वश में है, और जो व्यक्ति मोहित हो गया है और कम्प्लीटली क्या कहते हैं उसको, क्रेजी को क्या कहते हैं, क्रेजी यानी पूरा विक्षिप्त हो गया है वो, ऐसे व्यक्ति के वचनों को कभी भी गंभीरता से लेना नहीं चाहिए। किसका उल्लेख कर रहे हैं वो? अपने पिता का उल्लेख कर रहे हैं। वो सबको पता था कि पिताजी कई कई पर उसके सौंदर्य की वजह से विशेष मोहित थे, तो अभी वो तो खुलेआम बोल रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति के वचन को कभी भी गंभीरता से लेना नहीं चाहिए। फिर राम कहते हैं कि देखो पिताजी के विषय में ऐसा आपको कहना गलत है। फिर बीच में क्रोध से कहते हैं मेरी कुल घातिनी माता, ऐसे वो उधर खड़ी है जोर जोर से बोल रहे हैं, तो भरत को बोल रहे हैं ऐसा माता के विषय में आपको उल्लेख करना अच्छा नहीं है। विधि का लिखान जो है वो एक प्रकार का होता है, उसके लिए सब निमित्त बनते हैं, उसके लिए किसी को दोष नहीं देना चाहिए, अपने अपने कर्तव्यों को उस अवस्था में बड़े इत्मीनान से कर्तव्यों को निभाना चाहिए। फिर वो कहते हैं कि अपने आपके हमारे पिताजी सत्यवादी हैं, उन्होंने जो वरदान का वादा किया था वही उन्होंने पूरा किया है, और उसके अनुसार उन्होंने 2 वर अपनी माता कैकेयी को दिए हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर भरत ने कहा तो मैं 14 वर्ष वनवास में रहता हूँ और आप चले जाइए, फिर दोनों बात ठीक हो जाएगी। नहीं, मेरे लिए वनवास है, आपके लिए अयोध्या वास है, और ऐसा मैं करूँगा तो वो मेरे पिता के प्रति मेरी अवज्ञा होगी, जैसा उन्होंने कहा है उसका एकदम उल्टा हो जाएगा वो, तो वो नहीं हो सकता है। तो भरत ने कहा कि एक काम कीजिए कि मैं अयोध्या का राजा हूँ जैसे मेरे पिताजी ने कहा है, तो आज अयोध्या का राज मेरे हाथ में है और राजा होकर मैं अपने अधिकार में ये राज्य आपको सौंपता हूँ, आप मेरे अयोध्या के राज्य की देखभाल कीजिए और आप अयोध्या के राजा बन जाइए, मेरा राजा के रूप में आपको आदेश है। तो राम कहते हैं हाँ मैं आपका अयोध्या का राज्य स्वीकार करता हूँ, अब मैं अयोध्या का राजा हूँ और अब मैं अयोध्या के राजा के रूप में आपको आदेश देता हूँ कि मेरा राज्य आप 14 वर्ष के लिए संभालिए जब तक मैं लौट के नहीं आता, और मेरी इस राजा के रूप में आज्ञा को आप अवज्ञा नहीं कर सकते हो अगर वास्तविक रूप में आप मुझे मेरा सेवक मानते हो। तो भरत कहते हैं ठीक है, अगर ऐसा ही है तो मैं भी आपके साथ में वन में रहता हूं, मैं भी वलकल पहन लेता हूं, मैं भी फल फूल और मूल कंदमूल खाता हूं, और अगर आप इसको राजी नहीं हो इस बात को तो मैं अभी के अभी विष पीकर अपने जीवन को अंत कर देता हूँ। देखो भरत ना यहाँ से वहाँ से इस तरह से उस तरह से सब तरह से बता रहे हैं कि आपको वही करना है जो मैं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप ही राजा के योग्य हो, आप ही राजा बनना है और मैं आपके साथ रहूँगा या तो वन में रहूँगा, जैसे भी आपकी इच्छा हो। और वहीं पर इस बात को सुन कहकर दरबासन पर ध्यानस्थ बैठ गए, मानो अभी प्राण त्यागने के लिए बैठे हुए हैं। उस समय राम जी ने वशिष्ठ को इशारा किया, तो वशिष्ठ मुनि ने फिर भरत को बाजू में ले गए और भरत को फिर समझाया कि कैसे देवताओं ने पूजन किया था, कैसे गौ माता बनकर पृथ्वी गई थी, कैसे ब्रह्मा जी ने उनको भगवान का दर्शन कराया था, कैसे भगवान ने वादा किया है। तो आपके ये भैया हैं, ये स्वयं विष्णु हैं और ये रावण का वध करने के लिए इन्होंने अवतार लिया है, और रावण का वध करने के लिए ये सब लीला हुई है कि वनवास में आए हैं, ये रावण का वध करके लौट के आएंगे, फिर अयोध्या के राजा बनेगा, आप निश्चिंत रहो। अब ये वर्णन कल के पिक्चर में नहीं था क्योंकि अलग अलग रामायण में दिया हुआ है। इस बीच में आप देखा ना, जनक महाराज भी थे उसके अंदर, क्योंकि जनक महाराज अपनी पूरी सेना के साथ में वहां पर आए थे, क्योंकि उनकी बेटी, उनका जमाई, दोनों इस प्रसंग में फंसे हुए थे, तो उनके लिए भी जनक राज नगरी में बहुत दुख था इस बात का, तो कैसे वो आराम से रहेंगे वहां पर। सब लोग वहां पर एकत्र हुए थे अयोध्या में और सब साथ में निकले थे। तो आर्य सुमंत, वशिष्ठ मुनि और जनक महाराज को वहां पर पंचायत बिठाई उन्होंने, और बहुत लंबी चर्चा हुई है, और वो चर्चा जो है वो पूरे इतिहास की सर्वोच्च प्रेम की चर्चा है। कृष्ण लीला में ये प्रेम प्रकट हुआ है, प्रेम का साक्षात लीला के रूप में प्राकट्य हुआ है, लेकिन इस प्रेम के उच्च तत्व के सिद्धांत की चर्चा जो है सभा में हुई है। बार बार भरत महाराज उनको बता रहे हैं, अपने निरपेक्ष प्रेम को प्रभु के ऊपर जता रहे हैं और दिखा रहे हैं कि आपको राजा बनना है, मुझे वन में जाने को तैयार हूं मैं। फिर आखिर में उनको जनक महाराज समझाते हैं कि प्रेम आपका प्रभु राम के प्रति है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन एक बात आपको समझना जरूरी है कि जिस पर हम प्रेम करते हैं उसको क्या चाहिए, वो करना प्रेम का सर्वोच्च लक्षण है। प्रेम होने पर जिस पर प्रेम करते हैं उसके लिए मुझे क्या अच्छा लगता है वो करना एक अच्छी बात है, कि मेरा आप पर प्रेम है और मैं आपके सर्वोत्तम हित को चाहता हूं, और उस प्रेम के कारण मेरा जो विचार है आपके लिए सर्वोच्च विचार है और वो मैं करना चाहता हूं, लेकिन इसमें भी मैं है, मैं चाहता हूं, मेरा विचार है, मेरा प्रेम है और मेरे प्रेम के कारण मेरी ये धारणा है, ऐसा मैं इसके अंदर है। लेकिन सर्वोच्च प्रेम वो है जो प्रियतम के विषय में प्रियतम क्या सोचते हैं और वो क्या चाहते हैं, उनके तत्सुख सुखित्वम, ये तत्व बार बार गोपियों के और कृष्ण के बीच में चर्चित हुआ है। गोपियों का जीवन भी ऐसा ही था और कृष्ण भी ऐसा ही थे। कृष्ण सदैव गोपियों के सुख के विषय में सोचते थे, ग्वाल बालों के सुख के विषय में सोचते थे, और ग्वाल बाल और गोपियां सदैव कृष्ण के सुख के विषय में सोचते थे। दोनों कभी भी प्रेम के कारण जो उनको इच्छा है उनके प्रति वो नहीं प्रकट करते थे। जिनकर ऊपर प्रेम है उनके सुख किसमें है, वो क्या चाहते हैं, वो दोनों पार्टी सोचते थे। इसलिए गोपियों का, ग्वाल बालों का और कृष्ण का जो प्रेम का आदान प्रदान है वो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें मैं कहीं नहीं है, ना कृष्ण के बारे में मैं है, ना गोपियों ग्वाल बालों के बारे में मैं है, दोनों के बारे में सोच रहे हैं, दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, उसमें स्वार्थ का कहीं भी प्राधान्य नहीं है। तो ये बात जब उनको सुनाई गई तब भरत को समझ में आया कि अब तक मैं मेरी इच्छाओं को, मेरे परम प्रेम के कारण जो इच्छाएं मेरी है राम के प्रति, उनको ही प्रकट कर रहा हूं, लेकिन मैंने राम को तो पूछा ही नहीं कि तुम्हारी इच्छा क्या है। तो फिर राम के चरणों में आते हैं और पूछते हैं कि आपकी क्या इच्छा है। तो कहते हैं कि तुम्हारा राज्य मैंने स्वीकार कर लिया है, मेरी इच्छा है कि मेरा राज्य तुम स्वीकार करो और मेरे राज्य को 14 साल संभालो, फिर मैं लौट के आऊंगा, फिर आपको आपका राज्य, मेरा राज्य आपसे ले लूंगा। तो वो बार बार जो है धन्यवाद देते हैं जनक महाराज को कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने मुझे एक एक प्रकार का जो स्वार्थी स्तर पर आधारित मेरा परमोच्च प्रेम है उससे आपने मुझे बचाया है और प्रेम की सही परिभाषा का मुझे परिचय करा दिया है, इसलिए मैं आपका जन्म जन्मांतर का ऋणी हूँ, आपने मुझे सच्ची प्रेम की परिभाषा जो है वो सिखाई है। तो फिर वो कहते हैं कि मैं अभी चाहता हूँ कि अगर आपने ये निर्णय ले लिया है कि आप जंगल में रहेंगे, आप अपने पिताजी के वचन के प्रति पूर्णतः से बद्ध हैं, तो मैं भी आपको मेरी एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं जब लौट के जाऊँगा, नंबर 1 ये पादुका आप उस पर अपने कदम रखिए। कहते हैं वह स्वर्ण जड़ित रत्न जड़ित पादुका थी, उसमें कदम रखिए और वही पादुका आपका रूप समझकर मैं उनका राज्याभिषेक कराऊंगा और राज्याभिषेक करके सिंहासन पे उनको बिठाऊंगा और रोज मैं उनसे आज्ञा लूंगा और उनको रिपोर्ट करूंगा कि मैंने क्या किया है, उनको ही सब बताऊंगा क्या क्या हुआ है। दूसरी बात कि मैं यही सिंहासन जो है, आप अगर वन में रह रहे हो और आप मेरे ज्येष्ठ भ्राता हो और मैं आपका सेवक हूँ, और अगर आप वन में पत्थर में कांटों में जंगल में पर्णकुटी में सो रहे हो तो मैं भी अयोध्या नगरी के बाहर नंदीग्राम में गांव में रहूँगा, जंगल में देहात में रहूँगा और वहीं सिंहासन में आपके आसन को रखूँगा राज्याभिषेक करवा के, और मैं भी वलकल धारण करूँगा, मैं भी कंदमूल खाऊँगा, मैं भी वनवासी भेष पहनूँगा और आपके स्तर के नीचे जमीन पर 10 फुट का गड्ढा खोदकर आपके लेवल के नीचे सोऊंगा, क्योंकि अगर आप पृथ्वी पर सो रहे हो तो मैं आपके समान दर्जे पे कैसे सो सकता हूँ, इसलिए पृथ्वी के नीचे 10 फुट का गड्ढा बनाऊंगा और उसके नीचे जो भूमि है उसके नीचे उसके अंदर मैं सो जाऊंगा, वहीं पर निवास करूंगा। 14 साल में वैसे ही रहूंगा। कभी राम कुछ कह नहीं पाए इस बात को, क्योंकि ये उनके सम्मति से हो रहा है। तो प्रभु रामचंद्र ने कदम रखे पादुका में, वो पादुका को तुरंत उन्होंने शीश पर धारण किए, आंखों से अनंत अश्रुओं की नदियां बहीं और सब लोगों ने, आपने देखा ना, वशिष्ठ मुनि ने जो उनके गुरु हैं, कहते हैं कि बीच में क्या हुआ, जब ये वाद विवाद चल रहा था ना तो सारी जनता भी बोल रही थी बीच में, प्रभु चलो चलो आप चलो आप ही राजा हो। तो बीच में एक जबली मुनि आए, वो कह रहे हैं अरे किसने देखा है, आत्मा है कि नहीं है, आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती है, जो भी कुछ है शरीर है, आप युवराज हो, आप राजा होने के योग्य हो, जाओ अयोध्या का राज भोगना आपका कर्तव्य है, ये सब वनवास ये सब वचन, पिताजी जी ने वचन कहा वो भी कुछ भावना के वश में थे, उन्होंने कुछ गलत वचन कहे, अभी वो गुजर गए हैं, गुजरने के बाद में, क्योंकि आत्मा ही नहीं है तो गुजरने के बाद में आत्मा के वचन आत्मा ने क्या कहे थे उसका कोई मतलब नहीं होता है, ये सब बकवास है, इसलिए आप पिताजी ने क्या कहा था उन्होंने क्या आज्ञा दी थी वो चले गए, बोलते ना वो गए बात खत्म हो गई, वो अब आप चले जाओ और अपना राज्य भोग लो। तो बड़े से क्रोधित होकर राम ने उनको प्रचार किया है कि जो व्यक्ति सोचता है कि आत्मा नहीं है वो मूर्ख व्यक्ति है, ऐसे करके कठोर वचन से उनको उन्होंने प्रचार किया है कि कैसे मुनि हो आप, जो मूल सिद्धांत को जानते नहीं हो। तो वशिष्ठ मुनि ने कहा देखो राम, वो बड़े सिद्ध संत हैं, वो सब सिद्धांत जानते हैं, लेकिन इस वक्त वो भाव विभोर हैं, उनको ही पता नहीं चल रहा वो क्या बोल रहे हैं, उनको केवल एक ही इच्छा है कि आप सब छोड़कर अयोध्या में चले जाओ, आपको वनवासी रूप में देकर उसको असह्य हो रहा है, इसलिए असह्यता के भाव विभोरता में वो क्या कह रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तो जबली मुनि कहते हैं हाँ मैं इस बात को मानता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बड़ी केवल एक ही इच्छा है कि आप अयोध्या चले जाओ राजा बनो। ये बीच में हुई थी घटना हुई थी। इसके बाद में फिर वो लेकर अपने सर पे लेकर जाते हैं और वशिष्ठ मुनि भी बीच में भ्रमित हो गए थे। वशिष्ठ मुनि ने वो जो पंचायत बैठी थी ना, वशिष्ठ मुनि ने शास्त्र से बहुत सारे उदाहरण दिए, बहुत सारे संदर्भ दिए, बहुत सारे श्लोक बताए कि कैसे राम को अयोध्या में वापस लौट के जाना है। देखो वशिष्ठ मुनि गुरुजी है उनके, हाँ सदगुरु है उनके, जन्म जन्मांतर के कुलगुरु है उनके, ऐसे नहीं कि उनके कुलगुरु हैं, उनके बहुत पीढ़ियों के कुलगुरु हैं, बड़े सिद्ध संत हैं वो, उनको त्रिकालदर्शी है। लेकिन इसमें हमको समझना ये है कि त्रिकालदर्शी अंतर्यामी सिद्ध संत होने पर भी एक व्यक्ति है वो, इज अ पर्सन, उसको भी अपनी भावनाएं हैं, उनको भी बड़ा दुख हो रहा था कि राम के ऊपर ऐसे क्यों बीत रही है, मुझे ये दिन क्यों दिखाई पड़ रहा है कि मेरे शिष्य राम इतने योग्य व्यक्ति है, मर्यादा पुरुषोत्तम को जंगल में रहना क्यों पड़ रहा है, उनको भी ये बात असह्य हो रही थी, इसलिए वो शास्त्र में से ढूंढ ढूंढ के संदर्भ निकाल रहे थे कि गुरु के रूप में उनको बताएं तो प्रभु राम सुने। लेकिन गुरु होने पर उनको ये सिद्धांत संदर्भ देने के बाद भी प्रभु राम की जो व्यक्तित्व की गरिमा जो है वो देखकर वो भी दंग रह गए थे। अभी गुरु को सब पता है ना, पता होना चाहिए, पता भी था उनको, लेकिन गुरु भी भावनावश हो गए थे, यहाँ तक कि जनक महाराज भी बड़े भावनावश हो गए थे, बोले कि बड़ा विकट प्रसंग में आपने मुझे पंचायत में बिठाया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, क्योंकि सबके मन में एक ही भाव था कि सब वनवास वनवास का जो दुर्घटना हुई थी वो उसको मिटाया जाए, और सब कुछ ठीक करके सब लोग जाके लौट के राम को राजा बनाया जाए। लेकिन प्रभु रामचंद्र की दृढ़ता, दृढ़ निश्चय स्वभाव, अपनी मर्यादा को पालन करने का दृढ़ निश्चय, ये देखकर स्वयं गुरुदेव जनक महाराज, वशिष्ठ मुनि जनक महाराज, आर्य सम्बन्ध सभी मंत्रीगण भी दंग रह गए। अभी जनक महाराज के विषय में कुछ कहना जरूरी है। यहाँ पर जनक महाराज 12 दिक्पालों में से एक हैं, इनको महाजन कहते हैं, स्वयं एक सिद्ध पुरुष है वो। और महाजनक की व्याख्या ऐसी है कि जिनके द्वारा संप्रदाय का आरंभ होता है उसको महाजन कहते हैं, या लोकपाल या दिक्पाल भी कहते हैं। उनमें से एक है वो, संप्रदाय के प्रमुख है वो, एक संप्रदाय के। ये 12 संप्रदाय होते हैं जो 12 महाजनों से निर्माण होते हैं, उनमें से केवल 4 संप्रदाय कलयुग में प्रचलित हैं, बाकी 8 कलयुग में प्रचलित नहीं है। जो त्रेता में और अगले युगों में प्रचलित हुआ करते थे उसमें से एक जनक महाराज है, वो भी स्वयं सिद्ध पुरुष हैं, भले गृहस्थ है, राजा हैं, जनकपुरी के राजा हैं, वो भी इतने स्वयं सिद्ध साक्षात्कारी पुरुष होने पर भी भ्रमित हो गए थे भावना के कारण। ये भावना जो थी वो स्वार्थी भौतिक भावना नहीं थी, ऐहिक लोक की भावना नहीं थी, ये दिव्य प्रेम की भावना है, प्रभु के प्रति प्रेम की भावना है। इसलिए हमें यशोदा भी बेहोश होते नजर आती है, राधा रानी भी कभी बेहोश हो जाती है, कभी कुछ क्रोध में बोलती है, कभी कुछ बोलती है, कभी कुछ बोलती है, कभी कुछ स्वप्न देखते कुछ होता है। ये सब दिव्यात्मा होने पर भी ऐसी भावनाओं का अनुभव करते हैं क्योंकि वो प्रेम और भक्ति का विषय है। प्रेम और भक्ति के विषय में सिद्धांत बीच में नहीं आता है, प्रेम और भक्ति का विषय सिद्धांत के परे है, सारे शास्त्रों के परे हैं, और प्रेम में जो भावना आती है वो सब सही है। भरत लक्ष्मण ने जो क्रोध से कहा कि मैं भरत का वध कर दूंगा, वो भी सही है क्योंकि वो प्रेम के कारण कहा है, वो भरत का दुश्मन नहीं है। लेकिन प्रभु राम की अवस्था देखकर उनको क्रोध आया था, फिर पश्चाताप किया उन्होंने। ये सारा जो हुआ है ना, जितना भी ये सब हुआ है, इसमें सबका व्यवहार परिपूर्ण है क्योंकि रामायण मर्यादा शास्त्र है। सब प्रकार की मर्यादाओं का यहाँ पर संकलन है, एक जगह पर सभी अलग अलग किरदार जो हैं वो अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं, और उस स्थिति में उनका व्यवहार कैसे होना चाहिए वो सर्वश्रेष्ठ व्यवहार हमको वहाँ दिखाई पड़ता है। इसलिए रामायण जो है वो हमारे लिए हर समय का एक आदर्श उपदेशक ग्रंथ है, क्योंकि इस प्रकार के प्रसंग हमारे जीवन में भी आते हैं। सरल सीधे जीवन में क्या करना है सबको पता है, लेकिन विकट प्रसंग में, जैसे ही प्रसंग है इसमें राजा भी भ्रमित है, जनक राजा और गुरु भी भ्रमित है, क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे प्रसंग में कैसे आदर्श व्यवहार करना है वो हम रामायण में देखते हैं। इसलिए हर मनुष्य को जो पृथ्वी पर जन्म लिया हुआ है उनको रामायण पढ़ना बहुत जरूरी है। हमारे ब्रज में भी कृष्ण भगवान है लेकिन फिर भी लोग रामायण पढ़ते हैं, क्या कारण है उसका? भागवत में भी 9 स्कंदों का वर्णन किया है और सुखदेव जी रामायण का वर्णन शुरू करना शुरू करते हैं, बोलना शुरू कर देते हैं, तो सबको चिंता होती है। अभी 24,000 श्लोक लेकर बैठ गए तो कृष्ण की लीला कब बताएंगे? दशम स्कंद जो भागवत का हृदय है वो उसका आरंभ ही नहीं होगा, क्योंकि इतना बड़ा 18,000 श्लोक का भागवत है लेकिन 24,000 श्लोकों का रामायण शुरू कर दिया गया तो दशम स्कंद आएगा कब? तो फिर सुखदेव जी ने उनको एकदम जल्दी जल्दी में निपटा दिया, लेकिन कुछ श्लोकों में रामायण का वर्णन जरूर किया उन्होंने। भागवत में एक श्लोक है उसको कहते हैं एक श्लोकी रामायण, एक श्लोक में पूरा रामायण का वर्णन भी है उसके अंदर। कारण क्या उसका? कि जब तक प्रभु रामचंद्र ने अपने जीवन चरित्र में दी हुई मर्यादा का पालन हम नहीं कर सकते हैं तब तक कृष्ण की लीलाओं को समझने की योग्यता हमारे अंदर नहीं आ सकती है। इसलिए प्रभु की जो रामचंद्र भगवान की जो लीला है रामायण के रूप में प्रस्तुत है, सीता देवी का चरित्र है, लक्ष्मण का चरित्र है, भरत का चरित्र है, ये सब लोग महान 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 लोगों का एक संग्रह है पूरा, एक साथ आकर वो हमारे लिए, पूरी मनुष्य जाति के लिए, सारे भविष्य काल के लिए, अनंत काल तक के लिए एक मर्यादा देकर गए हैं। और आपके जीवन में, हमारे जीवन में जब भी कोई भी रोल है हमारा, कोई पति है, कोई पत्नी है, बच्चा है, बालक है, भाई है, ससुर है, नंदी है, देवर है, जो भी रिश्तेदारी के बहुत सारे व्यक्ति यहाँ रहते हैं, उन सब लोगों के लिए एक पारिवारिक आदर्श मार्गदर्शन रामायण के रूप में प्रस्तुत है। इसमें लक्ष्मण को उत्तम भक्त कहा गया है, लेकिन कई जगह पर ऐसा वर्णन है कि आचार्य वशिष्ठ भी कह रहे हैं कि लक्ष्मण से भी श्रेष्ठ भक्त आप हो, ऐसे भरत का वर्णन किया गया है। अभी देखिए आगे बताता हूं मैं, लेकिन इसमें भक्तोत्तम कौन है वो शत्रुघ्न है, वो कैसे मैं आपको बता दूंगा। हाँ, राम जो है और लक्ष्मण जो है वो राम के पास में रहे, तो राम का विरह नहीं हुआ उनको, वन में रहे वो, लेकिन राम का विरह उन्होंने स्वीकार नहीं किया, मैं राम के साथ ही रहूंगा। भरत ने विरह स्वीकार किया आज्ञा के अनुसार, लेकिन लक्ष्मण जी का विरह जो था ना वो उसके बहुत ऊपर का था। हाँ, अभी देखिए ये सब प्रसंग हुआ, वो सब लौट के गए गए और वशिष्ठ मुनि के नेतृत्व में अयोध्या में पूरा सागर संगीत राज्याभिषेक हुआ। उसके बीच में एक बात बताना भूल गया मैं, वो ये है कि जब ये सारी सामग्री लाए थे राज्याभिषेक के, मुकुट लाया था, माला लाई थी, सब जल लाया था, उसने पूरे विश्व के सारे तीर्थों का, कुंडों का, नदियों का जल लेकर गए थे वो, क्योंकि राज्याभिषेक में सबका राज्याभिषेक अभिषेक उस जल से होता है, पंचामृत का अभिषेक भी होता है, लेकिन नदियों का जल बहुत आवश्यक है उसके लिए। सारी सामग्री थी उसके अंदर, पूजा की अर्चा की सामग्री थी, राज्याभिषेक की विधि की सामग्री थी। तो प्रभु से उन्होंने पूछा कि इसका क्या करें, तो प्रभु रामचंद्र ने कहा कि आप सारे विश्व के नदियों का जल लेकर आए हो, ये कुआं है इसमें डाल दो, ताकि इस सारे नदियों का जल एक ही जगह पर मिलेगा तो जन कल्याण होगा, इसलिए आप उसको इसमें अर्पण करो। तो मुकुट और राज्याभिषेक की सारी सामग्री के साथ सारे नदियों का जल जो है उन्होंने उस कुएं में डाल दिया, उसका नाम है भरतकूप। भरतकूप आज भी है, भाग्य रहा, अनुकूलता रही तो हम दर्शन भी करेंगे भरतकूप का। तो भरत मिलाप जो हम आज गए थे उस जगह पर ये सारी लीला हुई थी, वहीं पर राम जी का निवास था कामतगिरी में, और वहीं पर ये सारा सुंदर वर्णन जो है वहीं पर है। प्रभु रामचंद्र रोज कामतगिरी की परिक्रमा चित्रकूट में जब भी रहे तब तक करते थे। लौट के गए, राज्याभिषेक हुआ पादुका का, और वो पादुका लेकर वो अयोध्या के बाहर आए, सिंहासन लेकर नगरी के बाहर जंगल में नंदीगार में अपना कुटिया बनाई, जमीन में छेद बनाया और वहाँ पर निवास करना शुरू किया। वलकल पहने, कंदमूल खाना शुरू किया। उसमें एक वाक्य रामायण में आता है कि तुमसे अधिक वनवास का कष्ट भरत ने भोगा है। तो प्रभु रामचंद्र लौट के आते हैं ना तो सबसे मिलते हैं, पहले मैया को मिलते हैं, पहले कैकेयी को मिलते हैं, फिर सुमित्रा को मिलते हैं, फिर अपनी मैया को बाद में मिलते हैं। फिर मैया कहती है, कौशल्या कहती है कि उससे मिलो, तुमसे अधिक वनवास का कष्ट उसने भोगा है। कि तुम तो पिता की आज्ञा पालन करने के लिए खुशी खुशी चले गए और वन में रहे तुम, लेकिन इसने क्या कहते हैं ना, उसको कहते हैं इंग्लिश में सेल्फ इम्पोज्ड, अपने आप अपने ऊपर तप सौंप लिया उसने, अपनी इच्छा से तपस्वी बन गया वो, कोई जरूरत नहीं थी उसको, लेकिन आपके प्रति आदर के कारण उसने आपसे भी अधिक वनवास का कष्ट भोगा है, ऐसे कौशल्या के वचन हैं। और उन्होंने कहा निकलते समय कि 14 वर्ष मैं आपके लिए आपका राज्य संभालूंगा, रोज आपकी आज्ञा लूंगा, आपका कृपा लूंगा और आपकी सेवा करूंगा और आपकी जनता को सुखी रखने का प्रयास करूंगा। राम भी कहते हैं मेरी प्रजा खुश रहनी चाहिए, जब नहीं भी हूं तब भी वो आनंदित रहनी चाहिए, वो आपका उत्तरदायित्व होगा। उन्होंने कहा कि 14 वर्ष के बाद में एक दिन भी मैं जी नहीं पाऊंगा, एक रात्रि एक्स्ट्रा जी नहीं पाऊंगा, मैं अग्नि में प्रवेश करूंगा और आत्मदहन कर लूंगा, ऐसे करके वो निकलते। अभी देखो मैं आगे आपको सुनाता हूं। शत्रुघ्न जो है ना वो उस हिस्से से उसका जन्म हुआ था जो कैकेयी ने सुमित्रा को दिया था, जो कौशल्या ने दिया था उस हिस्से से लक्ष्मण का जन्म हुआ सुमित्रा के गर्भ से, लेकिन जो हिस्सा कैकेयी ने दिया था उसके हिस्से से इसका जन्म हुआ शत्रुघ्न का। तो इसलिए स्वाभाविक था शत्रुघ्न का भरत से बहुत प्रेम था और लक्ष्मण का राम से बहुत प्रेम था। हाँ, एक बात हुई, लेकिन ऐसा मत समझना कि शत्रुघ्न का राम पर प्रेम नहीं था, शत्रुघ्न का राम पर अपार प्रेम था। और राम के विषय में एक ऐसा वर्णन आता है कि राम के सौंदर्य में ऐसी एक शक्ति थी कि जो भी कोई उनको देख लेता था वो सब कुछ छोड़कर उनका बन जाता था, ऐसी अद्भुत शक्ति राम के परम सौंदर्य में थी। तो शत्रुघ्न ने क्या किया, शत्रुघ्न ने प्रभु राम को कभी ही हृदय से संतुष्टिपूर्वक देखा ही नहीं, क्योंकि अगर देखते हृदयपूर्वक दिल भर के देखते तो शायद भरत की सेवा छोड़कर राम की सेवा में लग जाते, लेकिन कर्तव्यवश उनको भरत की सेवा करने की इच्छा थी, उसका हृदय राम की ओर आकर्षित है, लेकिन जो दिमाग है वो कह रहा है कि भरत की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि भरत राम दास है। राम के अधिक राम के दास की सेवा करना ज्यादा प्रभावशाली होता है। मद भक्ता पूजा व्याधिका, प्रभु बताते हैं अलग अलग जगह पर शास्त्र में बताते हैं कि मुझसे अधिक मेरे भक्त की सेवा मुझे ज्यादा पसंद है। मुझे सेवा करके जितना खुश करोगे उससे अधिक खुश करोगे मुझे अगर मेरी भक्त की सेवा करोगे। और भरत निर्विवाद दृष्टि से प्रभु राम के श्रेष्ठ भक्त थे, इसलिए उन्होंने कभी भी चरणों के ऊपर राम को देखा नहीं। ऐसा नहीं कि देखा ही नहीं कभी, लेकिन अधिकतर वो टालते थे उनको देखना, ताकि उनका जो आकर्षण है और समर्पण है वो भरत के प्रति बना रहे और उसी की सेवा से राम प्रसन्न होते रहे। शत्रुघ्न ने सोचा अगर मेरा दिल हृदय अगर राम के सौंदर्य के द्वारा चुराया जाता है तो मैं मेरी भक्त की सेवा भी खो बैठूंगा। इसलिए राम भक्त होने से अधिक रामदास का दास होना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए उसने ये दिव्य मोह के अंदर भी फंसना पसंद नहीं किया। हाँ, ही अवॉइडेड टू बी टेम्प्टेड बाई डिवाइन टेम्पटेशन। अभी दशरथ की शत्रुघ्न की अवस्था आप देखिए, अभी क्या हुआ, भरत ने क्या किया, भरत ने अपना निर्णय ले लिया कि मैं वलकल पहनूंगा और मैं वन में रहूंगा और वलकल पहन के कंदमूल खाऊंगा, जमीन के नीचे रहूंगा और पादुका का पूजन करूंगा, दिन भर तपस्वी वेश में रहूंगा। लेकिन क्या किया, शत्रुघ्न को बुलाया क्योंकि वो उसका सेवक है। उसने कहा आपको राजवस्त्र पहनना है, आपको राजा बन के अयोध्या में अंदर रहना है, मैं आपको दिन में केवल दो बार मिलूंगा कुछ क्षण के लिए, सुबह आना मेरी आज्ञा लेकर जाना, शाम को आना मुझे रिपोर्ट देना, बस दो बार कुछ क्षण के लिए मिलना है, बाद में मुझे मिलना नहीं है, आपको सब संभालना है। और अयोध्या में कोई आर्थिक स्थिति ना, इकोनॉमिक कंडीशन जो है ना, धन की अवस्था जो है वो क्षीण नहीं होनी चाहिए, सारे प्राणी सारे मनुष्य खुश रहने चाहिए, सारे व्यवहार अच्छे चलने चाहिए, सारी समृद्धि अच्छी होनी चाहिए, ताकि 14 वर्ष के बाद जब राम लौट के आएंगे तो उनको जैसा छोड़ के गए थे वैसा ही मिलना चाहिए या उससे अच्छा मिलना चाहिए। स्वयं निर्णय ले लिया कि मैं ऐसे रहूंगा और सारा काम उसको सौंप दिया शत्रुघ्न को। अभी जब वो चले गए ना वहाँ पर राम और लक्ष्मण, तो वो है ना हमारी गुफा, उसने वो बेल क्या कहते हैं बरगद के पेल का रस निकालकर उनके जटाजुट बना दिए, सुंदर घुंघराले बाल थे ना उसको जटा बना दिया, वैसे ही इन्होंने भी जटाजुट बना दिया। जैसे नंदीग्राम गए वो बरगद के पेड़ का रस निकालकर अपने बालों को जटा बना दिया, तो वैसे ही शत्रुघ्न को भी जटाजुट बनाने की बहुत इच्छा थी कि मैं भी वैसे ही रहूं जैसे मेरे आराध्य मेरे भैया भरत जी रह रहे हैं, मैं भी पसंद करूंगा कि मैं भी वैसे रहूं, वलकल पहनूं, कंदमूल खाऊं, जटाजुट बनाऊं और भजन करूं वन के बाहर जाकर, शहर के बाहर जाकर। लेकिन उनका त्याग भरत से भी बढ़कर है। हाँ, भक्तोत्तम है वो, क्यों, क्योंकि सब कुछ मन में वैसी इच्छा होने पर भी शत्रुघ्न ने राज अलंकार राज वस्त्र पहनना आदेश के अनुसार उसने पहना उसको। अब आगे देखिए उनके मन में कितने दुख थे। एक तो पिताजी के जाने का दुख था, ये भी दुख था कि हमारे अप्रोक्ष ये सब कुछ हुआ, हम तो नहीं थे वहाँ पर, लोगों की गलत फहमी हुई हमारे विषय में, लेकिन पिताजी का दुख जाने का दुख उसको भी था। ऊपर से हमारे कारण किसी कारण हम भी उसमें संबंध थे, हमारे कारण राम लक्ष्मण को वनवास हुआ, उनका भी विरह का उनका दुख हो रहा था, दूसरा दुख उनका वो भी हो रहा है। और बाद में अपने स्वामी भरत बड़े भाई जो है उनको इस अवस्था में देखकर भी उनको दुख हो रहा था। कितने दुख है उसके जीवन में, देखो एक के बाद तीन प्रकार के दुख हैं। तो उन्होंने कहा कि पादुका राजा है, राज्य राम राज्य है और इस राम राज्य में मेरा ये आपको आदेश है कोई व्यक्ति रोना नहीं चाहिए, क्योंकि राम ने वो आदेश भरत को दिया था, भरत ने आदेश शत्रुघ्न को दिया। तभी देखो ऐसे कहते हैं कि भरत ने या तो कंदमूल खाए या तो जौ है ना, जौ जौ पता है आपको, जौ बार्ली कहते हैं उसको, उसको गोमूत्र में भिगा कर खाया, उसके अलावा कुछ नहीं खाया 14 वर्ष तक। तो अभी क्या करते हैं, देखो भरत का शत्रुघ्न का जीवन देखिए, वो सुबह उठते थे, रात भर रोते थे और सुबह उठते थे। जब सुबह उठते थे तो गायक है ना, गायक, वो गायक रोज गीत गाते हैं राजा को बहलाने के लिए, उठाने के लिए गौरव गीत गाते हैं, तो वो गौरव गीत जो है उनके कान में जो है ना वो भालों की तरह घुसते थे, शूल की तरह घुसते थे, कोई कोई भोंक रहा है आपको, तलवार से कानों में घुसा रहा है कुछ, ऐसे उनको वो गीत सुनाए पड़ते थे जो उनको सुनने की इच्छा नहीं थी, लेकिन वो राज्य का नियम था। अगर भाट नहीं गाएंगे तो राज्य का राज्यपन कैसे रहेगा? तो भाटों को भी आगे जाकर राम के लिए गाने के लिए उत्साह देना जरूरी है, उनका अभ्यास होना जरूरी है। इसलिए आप बंद करो ऐसा बोल नहीं सकते। तो ऐसा कहते थे कि उनके कमरे में ना, शत्रुघ्न के कमरे में इतना इतना एक एक फुट भर पानी हुआ करता था, क्योंकि वो रात भर रोते थे दशरथ महाराज के विरह में, राम लक्ष्मण के विरह में और अपने भैया भरत के विरह में। ये सब विरह उनको बहुत कष्ट होता था। रात भर रोते थे एकांत में दरवाजा बंद करके, और कमरा पूरा पानी से भरता था और पानी बहता था अश्रुओं से, और उसमें सुबह उनको ये गीत सुनाए पड़ते थे। तो बाहर आते थे, थोड़ा चेहरा बनाकर मेकअप करके पूरा राजा वस्त्र पहनकर बाहर आते थे और सब भाटों को दक्षिणा देते थे, बोले गाते रहो अच्छी तरह से, ताकि आपको प्रभु राम आएंगे तो भी गाना है उनके लिए। फिर गौशाला जाते थे, गौशाला में गायें भी स्तब्ध खड़ी हैं, ना पानी पी रही है ना चारा खा रही है, सब क्षीण होते जा रही है, उनके तनों से दूध नहीं निकल रहा है, उनके बालक भी ऐसे ही खड़े हैं, वो क्षीण होते जा रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं पता है गाय को, बालकों को? देखो उनका रोज का हमाया ये, मैं आपको एक बार वर्णन करूंगा लेकिन आप समझ लेना कि ये उनका रोज का रूटीन था। 14 वर्ष तक हर दिन वो ये करते थे, क्योंकि वो आज बोल के जाते थे कल फिर वही अवस्था होती थी उनकी। देखो क्या बोल रहे हैं गायों को, आपको इतना कृश अवस्था में, कमजोर अवस्था में देखकर क्या लगता है आपको? राम को बड़ी खुशी होगी, राम बड़े दुखी हो जाएंगे, वो बेहोश हो जाएंगे। क्या आप चाहते हो कि आपको देखकर 14 वर्ष के वनवास के बाद राम आपको देखे और दुखी हो जाए? ये आपकी इच्छा है? एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर आप जल पीना और घास खाना छोड़ दोगे तो फिर आप राम आने तक अपना जीवन को बचा नहीं पाओगे, मर जाओगे। तो क्या लगता है आपको, आपको मरा हुआ देखकर और आपके मरने के बाद सुनकर राम बड़े खुश होंगे? इसलिए आप खाओ। तीसरी बात, राम जब आएंगे 14 साल के बाद तो उनका राज्याभिषेक होगा। राज्याभिषेक में पंचामृत की आवश्यकता होती है, पंचामृत में दूध की आवश्यकता होती है। और क्या लगता है आपको, अगर आप दुखी रहेंगे, खाना नहीं खाएंगे, दूध नहीं पैदा होगा, तो राज्याभिषेक के लिए दूध जो है वो स्वर्ग से कामधेनु को बुलाकर देना पड़ेगा। तो आप क्या चाहते हो, आपकी सेवा किसी और को मिले? इसलिए खाते पीते रहो, दूध बनाते रहो, बच्चों को दूध पिलाते रहो, ताकि दूध आने का अभ्यास बनता रहे आपका, ताकि जब राम आएंगे तो आपका ही दूध राज्याभिषेक में काम आएगा। क्या चाहते हो, आपकी सेवा किसी और को मिले? आप दुखी रहना पसंद करोगे कि आपकी सेवा बरकरार रखना पसंद करोगे? जब आप अच्छी तरह से खाओगे पियोगे, शरीर का जल पियोगे, तो आप बहुत हष्ट पुष्ट हो जाओगे। राम आपको देखेंगे आनंदी होंगे, और आपको देखकर कामधेनु भी लज्जित हो जाएगी, उनको संकोच होगा आपका सौंदर्य देखकर। कामधेनु बहुत श्रेष्ठ गौ है, लेकिन कामधेनु भी आपको देखकर संकुचित होनी चाहिए, ऐसा आपको सौंदर्यवती होना चाहिए। इसलिए खाओ पियो, दुगुना खाना खाओ, शरीर का जल पियो, बिना बछड़ा बछिया दिखाए अपने स्तनों से इतना दूध बहाओ कि शरीर के साथ समुद्र भी दुग्धमय होना चाहिए। देखो मन में इतना दुखों का सागर है उसके, लेकिन कितना सकारात्मक विचार गायों को दे रहा है, और गाय उनकी बात सुनकर खाने लगती है। लेकिन उनका जो उत्साह है ना, वो एक दिन टिकता है, रात तक पूरा मायूस हो जाती है। फिर सुबह आकर वही गाय से रोज बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि अरे कल तो बोला था ना फिर भूल गए क्या आप, नहीं, फिर वही उत्साह के साथ बोल रहे हैं, क्योंकि वो जानता है गायों के मन में क्या भाव है राम के प्रति। इसलिए निराश न होकर रोज अपने दुखों को दबाते हुए नए उत्साह के साथ गाय के साथ बात कर रहे हैं। अब आगे बढ़ता है तो यही बात अश्वों के साथ करता है। देखो राज्याभिषेक होगा, आप लोग रहेंगे तो आप उनका रथ खींचेंगे, हाँ आप उन्हें शोभा बढ़ाओगे, आप पर बैठकर वो राम जी सवारी करेंगे, युवराज के रूप में राज्य में घूमेंगे राजा बनकर। तो आप क्या चाहते हो कि बाहर से घोड़े मंगाएं, क्योंकि अंदर के घोड़े बीमार हैं, कमजोर हो गए, कुछ नहीं कर सकते, 14 साल में बहुत दुख होगा, खाओ पियो चलो। फिर वो खाना बनाना शुरू करते, यही कथा हाथियों की थी। उसके बाद सफाई कामगार, देखो अभी सबसे मिल रहे हैं वो, ऐसे नहीं कि बड़े लोगों से मिल रहे हैं, सफाई कामगार जो स्वच्छता नहीं कर रहे हैं, पूरा नगर गंदा पड़ा हुआ है, इनके घर गंदे पड़े हुए हैं। तो क्या कर रहे हैं वो, कह रहे देखो क्या आप ये चाहते हो क्या कि राम आएंगे और उनको गंदी अयोध्या दिखाई पड़े? क्या लगेगा उनको कि कितना स्वच्छ अयोध्या में छोड़ के गया था, मैंने आने के बाद देख रहा हूँ कितनी गंदी करके छोड़ी है, यही व्यवस्थापन है? जब प्रभु राम आएंगे तो उनको सफाई देखकर लगना चाहिए कि मैं जैसे छोड़ के गया था उससे कितनी गुना अधिक स्वच्छता यहाँ पर देख रहा हूँ मैं। तो वो स्थिति करने के लिए आपको रोज साफ करना पड़ेगा ताकि जब उनका आने का समय होगा तो अति स्वच्छ रूप में अयोध्या उनको दिखाई पड़ेगी। चलो काम पे लगो, फिर वो काम पे लगते थे। उसके बाद वशिष्ठ को मिल लेते, वो तो गुरु जी हैं उनके, गुरु जी को उनको सांत्वना देनी चाहिए। गुरु जी रो रहे हैं तो कह रहे महाराज जी आप ही धैर्य खो देंगे तो हम किसकी ओर देखें, इसलिए हमारे लिए हम सभी प्रजाजनों के लिए आपको हमें उपदेश देने के लिए तैयार रहना चाहिए, आप ऐसे धैर्य खोकर मत बैठिए। उनको भी उत्साह देते थे, शिष्य गुरु को उत्साह दे रहा है। फिर आगे जाके मैंने बताया आपको गायक नर्तक गाने वाले बजाने वाले, वो कहते हैं कि आगे जाकर राम आएंगे उनका राज्याभिषेक होगा, आपको गाना है, आपको नाचना है, आपको खुशियां मनानी है, अगर गाने की और नाचने की प्रैक्टिस छोड़ देंगे तो उस समय बाहर से गायक लाने पड़ेंगे, तो क्या लगता है आपको आप सेवा करोगे कि राज्याभिषेक में वो हमारे जीवन का सर्वोच्च उत्सव होगा, प्रभु रामचंद्र राजा बनेंगे। तो फिर वो तुरंत प्रैक्टिस करते थे सब लोग। फिर व्यापारी वो दुकान खोलते नहीं थे तो कहते हैं देखो अगर आप दुकान नहीं खोलोगे तो हमारी आर्थिक व्यवस्था सुधरेगी कैसे, आप क्या चाहते हो? राम ने मुझे आदेश दिया है कि जैसे मैंने अयोध्या छोड़ी थी उससे अधिक अवस्था में आपको अयोध्या को बनाना है। और व्यापार अर्थव्यवस्था कौन बनाता है? आप लोग बनाते हो। आप लोग व्यवहार नहीं करोगे तो अयोध्या की आर्थिक व्यवस्था नीचे चली जाएगी, बहुत नुकसान में जाएगी। तो आप लोगों को रोज़ व्यवहार करना है, रोज़ दुकान खोलना है और आर्थिक व्यवस्था को अभी से लेकर बहुत ज़्यादा बढ़ाना है। तब राम को लगेगा कि मेरे अपरोक्ष भी अयोध्या की आर्थिक व्यवस्था बहुत अच्छी बनाई रखी हुई है। उसके बाद दुकान खोलते थे और दिन भर का व्यवहार करते, शाम को फिर मायूस होकर बैठ जाते थे। फिर माताओं को मिलते थे, देखो माताओं का वर्णन ऐसे किया गया है, माताओं ने अन्न जल त्याग दिया था। तो शत्रुघ्न कहते हैं कैसी मैया हो आप, मुझे खिलाओगे नहीं आप, मैंने कुछ नहीं खाया है, मैं भी राम के दुख में हूं, आप मुझे खिलाइए। तो फिर वो कौशल्या देवी को भी कहते थे, उनके गोद में जाकर खिलाते थे, वो बाद में कहते थे आप मुझे खिलाने के पहले खुद खाओ फिर मैं खाऊंगा आपके हाथ से। उनके गोद में जाकर जब वो खिलाने जाती थी तो वो उनको खिलाते थे पहले और फिर खाते थे, उनको भी खाने की इच्छा नहीं है लेकिन माताएं खाएं इसलिए उनके हाथ से वो भी खाते थे और माताओं को खिलाते थे। और ये रोज का काम था, जब केवल शत्रुघ्न वहाँ जाया करते थे तभी केवल माताएं कुछ खाती थी, दिन भर फिर कुछ नहीं खाती थी। तो एक नहीं तीन तीन माताएं थी, हाँ सुमित्रा देवी भी है, कई कई देवी भी है और कौशल्या देवी भी है, सबकी सेवा करने का आदेश दिया है उनको, सबकी सेवा कर रहे हैं, सबको सांत्वना दे रहे हैं, सबको उत्साह दे रहे हैं और खिला पिला रहे ताकि उनका जीवन बना रहे। सिर्फ दशरथ जी का मृत्यु हुई केवल याद में स्मृति करते रोते रोते वो शरीर त्याग दिया, वैसे न हो कि मैयाओं भी शरीर को त्याग दें, उनको बनाए रखना जरूरी है। उसके बाद में फिर वो यज्ञशाला के पास जाते थे, ब्राह्मणों के पास। यज्ञशाला ठप है, कोई यज्ञ नहीं हो रहा है, कोई शास्त्र पठन नहीं हो रहा है, कोई मंत्रोच्चारण स्वस्ति वाचन कुछ नहीं हो रहा है, शांत है यशु पूरी यज्ञशाला। तो ब्राह्मणों को कहते थे जब प्रभु लौट कर आएंगे तो वशिष्ठ मुनि के नेतृत्व में उनका राज्याभिषेक होगा, तब कौन से ब्राह्मण श्लोकों का उच्चारण करेंगे, तब मंत्रों का उच्चारण कौन करेंगे, क्या आपकी ऐसी इच्छा है कि उस समय आप सब मंत्र भूल गए क्योंकि 14 वर्ष ने आपने पठन ही नहीं किया, सारा पठन आप भूल जाएंगे और जब वो राज्याभिषेक के मंत्रों का उच्चारण का समय आएगा तो आपको याद नहीं, इसलिए बाहर से पुरोहित ब्राह्मण बुलाएंगे, क्या आपको ये अच्छा लगेगा, जो आपकी सेवा है आपका अधिकार है, क्या आपको आपके हाथ से वो छीना हुआ देख अच्छा लगेगा, आप अभ्यास जारी रखिए क्योंकि आपको ही एक दिन राज्याभिषेक के मंत्रोच्चारण को करना है। फिर वो तुरंत मंत्रोच्चारण करना, अग्निहोत्र करना, सब करना शुरू कर देते थे। और ये सब करने के बाद सभा में जाते थे और मंत्री भी मायूस बैठते थे, उनको भी यही कहते थे अगर आपको राज्य चलाने का अभ्यास निकल गया तो अयोध्या का विश्व का संचालन कौन करेगा, आप ऐसे ही रोते बैठेंगे तो कर्तव्य कौन करेगा, राज्य की सुव्यवस्था कौन देखेगा, आपके मंत्रालय का कार्य कौन करेगा, वे सबको पदच्युत होना पड़ेगा, फिर नए मंत्री आएंगे, फिर प्रभु राम के राज्य होने के बाद राजा होने के बाद में सेवा करने का अवसर आपका निकल जाएगा। आपको अभी प्रभु राम है यही समझ के अपना कार्य करना है, ताकि आपका अभ्यास बना रहेगा। और प्रभु राम जब राजा बनने के लिए आएंगे, राजा बनेंगे तो उनकी सेवा में जीवन के अंत तक आप उनकी सेवा कर सकते हो। ये सब लोगों को हृदय में ऐसा लग रहा है कि मैं समुद्र बहा हूँ अश्रुओं के, इतना दुख मन में है, लेकिन वो सब दबा कर सबके सामने जाकर, हाँ क्या हम कहते हैं एचआर में, क्या कहते हैं, हाँ पॉजिटिव थिंकिंग, मोटिवेशन। वो तो कोई दुखी रहता नहीं है मोटिवेशनल स्पीकर, तो बंदा कर रहा है, वो तो आराम से सबको जाके मोटिवेट करता है, वो विशाली ओनली थिंग इज सॉल्व थियोरिटिकल रहता है। लेकिन इसके जीवन में, स्वयं के जीवन में इतना गहरा दुख है, वो सबको जा जाकर भविष्य की आशा दिखाकर सबको बहला रहा है, सबसे कार्य करवा रहा है। एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, 14 साल तक उसने किया हर रोज। और ये सब करने के बाद में जाकर भरत को रिपोर्ट देते थे कि आज का दिन में ये हुआ, 2 मिनट के अंदर फिर जमीन के गड्ढे में चले जाते थे भरत मुनि, भरत महाराज। और फिर ये श्रृंगार किए हुए, बड़े दुख से श्रृंगार करते थे, वो मालाएं पहन रहे हैं, हाँ मुकुट पहन रहे हैं, राज वस्त्र पहन रहे हैं, और सब गीत गाते हुए छत्र लेकर जा रहे हैं, बिल्कुल इच्छा के विरुद्ध जा रहे हैं, लेकिन सब कर्तव्य के रूप में कर रहे हैं कि अगर मैं भी वल्कल लेके घूमेगा तो सब लोग मेरे जैसे ही वैरागी बनेंगे, तो सबको रजोगुण में उत्साह देना है कि काम करते रहो। और रात को आकर बड़े दुख से उसको उतारते थे और अपने आप को बिस्तर में झोंक देते थे, और रात भर जगते थे और रोते थे, और कमरे को अश्रुओं के हौद से भर देते थे, जो अश्रु उनके कमरे से बाहर रात भर निकलते रहते थे। किसी को पता नहीं है, किसी को पता नहीं है कि शत्रुघ्न की क्या अवस्था है। इसलिए रामायणकार और आचार्यों ने शत्रुघ्न को सर्वोत्तम भक्त माना है। राम के बाद लक्ष्मण, लक्ष्मण के बाद, लक्ष्मण से भी श्रेष्ठ भरत, और भरत से भी श्रेष्ठ शत्रुघ्न, जिसका उल्लेख रामायण में और रामायण कथा में कहीं नहीं होता है, लेकिन ये हकीकत है, ये वास्तविकता है, ये ही चरित्र है शत्रुघ्न का। इस प्रकार से अनेक सुंदर सुंदर व्यक्तित्व से ये रामायण भरा हुआ है और हम लोगों के लिए अति प्रचंड प्रेरणा का ये स्रोत है। तो इस प्रकार से हमने भरत मिला का ये प्रसंग अपनी क्षमता के अनुसार कहने का प्रयास किया है। आशा है कि आप सब लोगों को इसमें आनंद आया होगा और बोध भी प्राप्त हुआ होगा। और ये सुंदर चरित्र जितना कहे उतना कम है, हमारी आत्मशुद्धि के लिए इन व्यक्तित्वों का गौरव जितना करे उतना कम है, क्योंकि इसमें हम सबकी आत्मशुद्धि, आत्म उद्धार होने वाला है, होता है, इसीलिए प्रभु ने ये अवतार लिया है। कहते हैं प्रभु जी का जो अवतार है इसमें सुख बहुत कम है और कठिनाइयाँ और परेशानियाँ और संघर्ष बहुत ज़्यादा है। केवल चित्रकूट का ही समय जो है वो आनंद का समय है, बाकी सारा जो 11 लाख वर्ष राज्य किया है उसमें भी सीता जी को वनवास भेज दिया है, फिर वो भी राज्य कर्तव्य जो है वो निजी कर्तव्य से श्रेष्ठ होता है, तो निजी भावनाओं को दबाकर त्याग करते हुए, निजी सब संबंधों की जो कर्तव्य है उसको आगे पीछे रखते हुए राज कर्तव्य को श्रेष्ठ मानते हुए उन्होंने अपने कार्य किए हैं, बहुत निजी भावनाओं को दबाकर उन्होंने अपने कार्य किए हैं। लाखों वर्ष प्रभु रामचंद्र का जीवन है, लेकिन देखिए उनका जीवन कैसे रहा है। तो कोई भी श्रेष्ठ वस्तु और श्रेष्ठ स्थिति जो है ना, वो आनंद में और सुख की स्थिति में उत्पन्न नहीं होती है। आप सोचिए इसके बारे में, ग्रेट थिंग्स डोंट कम इन हैप्पी कंडीशंस और पीसफुल कंडीशंस। जो महान घटनाएं होती है वो संघर्ष से उत्पन्न होती है। तो संघर्ष होता है तो महान घटनाएं होती है, महान आदर्शमय स्थितियां उत्पन्न होती है। अगर आपका चरित्र अगर प्रकट होना है तो वो सुख में प्रकट नहीं होगा। वास्तव में हम क्या है वो प्रकट होगा तब जब हमारा जीवन में संकट आएगा। संकट में हम वास्तविक में क्या है उसका परिचय होता है। खुशी खुशी में किसी को हम पहचान नहीं सकते कौन क्या है। जब संकट आता है तो हम वास्तविक में क्या है उसका परिचय होता है। इसलिए हमारे वो गुरु जी के गुरु भाई हैं, परम पूज्य भक्ति तीर्थ महाराज, वो कहते हैं कि हमको ना वो फल की तरह होना चाहिए, चाहे संतरा हो या आम हो, पका हुआ आम हो, संतरा हो या और कोई फल हो रस देने वाला, तो उस फल पे जब दबाव आता है, प्रेशर आता है, कष्ट होता है उसको, तो क्या करता है वो, आप संतरे को दबा दो, संतरे को बहुत कष्ट होता है लेकिन देता क्या है वो, संतरे का रस देता है। आम को दबा दो जोर से कभी गर्मी से दबा दो, कभी पत्थर से दबा दो, कभी हाथ से दबा दो, आम को कष्ट दो, आम क्या देगा आपको? रस देगा, मीठा, क्योंकि आम के अंदर, संतरे के अंदर वो मीठा रस है, इसलिए उसको कष्ट प्राप्त करते ही वो आपको देगा जो उसके अंदर है। उसी प्रकार से आपके अंदर अगर श्रेष्ठ चरित्र है तो संघर्ष में आपके अंदर से वो उच्च गुण प्रकट हो जाएंगे, अगर नहीं है तो आपके अंदर दुर्गुण है वो सब प्रकट हो जाएंगे। आपके अंदर क्रोध है, विकार है, काम वासना है, लोभ है, वो सब संकट आते ही, दबाव पड़ते ही सब बाहर निकलेंगे। इसलिए कहा है, ऐसे भी कहा गया है कि सच्चे मित्रों को पहचानना है तो संकट में आप पहचान सकते हो। सुख में आपके साथ में बहुत लोग घूमते रहते हैं, वो कौन मित्र है, कौन स्वार्थी है, कौन दुष्ट है, कौन प्रेम करने वाला है, कोई पहचानने का काम नहीं है उसमें। जब कष्ट आता है, संघर्ष आता है, तो सब जो आपके हितैषी नहीं है वो सब भाग जाते हैं और वही बचते हैं जो आपके हितैषी हैं। तो अभी आप बताइए कि सुख की स्थिति अच्छी है कि दुख की स्थिति अच्छी है, आप मुझे स्वयं बताइए। क्योंकि सुख की स्थिति में हमारी आध्यात्मिक प्रगति भी नहीं होती है, हम लोग सुख में रममाण रहते हैं, अच्छा चल रहा है, बहुत मजे से चल रहा है, क्यों कष्ट ले ले। लेकिन दुख की स्थिति में, संघर्ष में, चुनौती में जितनी आध्यात्मिक प्रगति हम करते हैं, भक्ति में प्रगति करते हैं, उसमें कभी भी नहीं होती है। सबसे अधिक प्रेम का अनुभव गोपियों ने विरह में किया, कष्ट में किया, दुख में किया, कृष्ण के ना होते हुए किया। जितना उनके मिलन में उनको आनंद हुआ, उससे करोड़ों गुना अधिक आनंद जो है, आध्यात्मिक उन्नति उनकी जो है वो विरह में हुई। तो लगता है बाहर से कष्ट हो रहा है, लेकिन कष्ट में जो भगवान से समर्पित रहता है, भगवान की आज्ञा से, आज्ञा पालन से समर्पित रहता है, जुड़ा रहता है, अपने ब्रीद को, अपने निश्चय को छोड़ता नहीं है, वही व्यक्ति कष्ट के समय पर हजारों गुना अधिक प्रगति करता है, भगवान के अधिक निकट चला जाता है। इसलिए कुंती माता क्या कहती है, विपदा संतुता शश्वत, मुझे कष्ट के दिन आने दो, और कष्ट दो, और कष्ट दो। दुखों का वर्णन भी करती है, कभी अग्नि हुआ था, कभी आगजनी हुई थी, कभी विष दिया गया था, कभी ये हुआ था, कभी वो हुआ था, ये सारे उसका लिस्ट बना के बोलती है कि ये सब हुआ था, उसको बार बार देते रहो। क्योंकि जब वो कष्ट थे तब हम आपकी स्मृति में थे, आपको पुकारते थे, आपकी शरण में थे, आपकी शरण ग्रहण करते थे, इसलिए मुझे लगता है कि वो कष्ट ही अच्छे हैं। क्योंकि कष्ट है तो आप हैं, कष्ट नहीं है, सुख है तो आप नहीं रहते, वहां आपको भूल जाते हैं। तो रामायण भी यही है, सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक स्थितियों का प्राकट्य उन संघर्षमय स्थितियों से हुआ है, इसलिए वो प्रेरणादायक है। रामायण बड़ा दुख भरा शास्त्र है, एक तरह से पूरा दुख का वर्णन है उसके अंदर, लेकिन वो देखकर आपके हृदय में कभी ऐसा नकारात्मक भावना निर्माण नहीं होती है। आपके मन में, आपके चेतना में उच्च आध्यात्मिक भावनाओं का विकास होता है जब वो दुख भरी घटना भी आप देख रहे हो, भरत रो रहे हैं, राम रो रहे हैं, पादुका लेकर जा रहे हैं, सबके आंखों में आंसू आ रहे हैं, लेकिन वो आंसू जो है वो आपकी आध्यात्मिक उन्नति कराते हैं, सकारात्मक आध्यात्मिक उन्नति का प्रेरणा देते हैं वो आपको। सीता का हरण हो रहा है, जटायु का वर्णन आप सुन रहे हो, रावण का वध हो रहा है, हनुमान जी का भक्ति आप देख रहे हो, वो भी संघर्ष कर रहे हैं, सब लोग संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अपने अपने संघर्ष में अपने अपने दिव्य चरित्र का प्राकट्य हो रहा है, भक्ति का प्राकट्य हो रहा है, हम सबको उसमें प्रेरणा मिल रही है कि ऐसे कष्ट के समय में कैसे चलना है और अपने आप को कैसे बनाए रखना है भक्ति जीवन में। इसका श्रेष्ठ उदाहरण रामायण है। इसलिए हम कृष्ण भक्त जरूर हैं, लेकिन कृष्ण भक्त करने के पहले रामायण की हमारी नींव मजबूत होनी चाहिए, रामायण के सिद्धांत और रामायण के व्यक्तित्व का परिचय पूर्णता से होना चाहिए, तब जाकर हमारी कृष्ण भक्ति अर्थपूर्ण होगी और सफलता की ओर चलेगी और हमारा जीवन भी धन्य होगा। जय श्री राम, जय जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।